be seated.
आप कृपया बैठ जाइए। सभी को सुप्रभात। आज की सुबह फिर से प्रभु की सेवा में हाजिर होकर मुझे खुशी हो रही है। हमें ये नहीं पता था कि हम वापस आ पाएंगे या नहीं, मगर प्रभु ने मार्ग निकाला और हम फिर से यहाँ प्रार्थना के लिए आने पाए। आज की सुबह इस संडे स्कूल पाठ में हमें आशा है कि वचन के द्वारा बड़ा उपयोगी समय बीतेगा, और आज रात फिर चंगाई सभा होगी और उसके बाद प्रभु भोज होगा। अभी भाई नेवल शायद कह रहे थे कि किसी भाई के बच्चे को प्रभु को समर्पित करना है, अगर वो बच्चे को अभी यहाँ ला सकें और कोई भाई पियानो को संभाल ले तो बच्चे को यहाँ इस समय ले आए तो हम अभी से उसे समर्पित करने की प्रार्थना करके अतिशीघ्र वचन में जा सकेंगे। क्योंकि हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के वचन को दें, क्योंकि वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अतः हम इस अवसर के लिए आपके अत्यंत आभारी हैं कि आज हम इस प्रार्थना सभा में आपसे मिल पा रहे हैं। अरे मुझसे गलती हो गई, ठीक है बहन, मैंने सोचा कि कोई एक बच्चा, ओ ये गलती है, ठीक है गलती हो गई। आपका धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो सकता है कि ये सूचना किसी और के द्वारा यहाँ मुझ तक पहुँची थी और मैं ठीक से समझ नहीं पाया। अब सभी लोग ठीक ठाक हैं, परमेश्वर की प्रशंसा हो। ओ हाँ, यहाँ ये प्यारे बच्चे आ गए हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है एल्डर सेवक, आप कृपया आइए। ठीक है, कितनी प्यारी दो बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी भूरी आँखों वाली, बड़ी सुंदर बात है। इनका नाम क्या है, इधर देखो, जेनिफर ली। आखिरी नाम क्या है, सरेप। बहन ली आप कहाँ रहती हैं? वर्सिलीज, इलिनॉइस। बहुत सुंदर। अब पवित्र शास्त्र में देखें। अब साधारणतया लोग बच्चों के बपतिस्मे कराया करते हैं, लेकिन हम बच्चों के बपतिस्मों को सही नहीं मानते क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं और उन्होंने पाप नहीं किए, लेकिन हम उनको प्रभु को समर्पित करते हैं। अब एल्डर सेवक तथा मैं अपने हाथ बच्चों पर रखेंगे। आपने इसका क्या नाम बताया था, जेनी, जेनिफर। अच्छा ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जबकि आज सुबह इस बच्ची जेनिफर को हम आपके पास लाए हैं और इसकी माँ तथा सभी प्रियजन इसे बहुत दूर से आपको समर्पित करने आए हैं, हम जानते हैं कि अपने धरती पर देहदारी समय में आपने अपने हाथ छोटे बच्चों पर रखकर कहा था कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। अब इसको हम यीशु मसीह के नाम में जीवन भर आपकी सेवा में समर्पित करते हैं, आमीन। दूसरी छोटी बच्ची का क्या नाम है, कोनी लिन। ठीक है, छोटी सी कोनी, तुमको गोदी लेकर मुझे खुद छोटे से होने का एहसास हो रहा है। ओ, तुम किस बात से डर रही हो, मुझे लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा, आप ले लें इसे। ठीक है आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, यह माँ इस छोटी बच्ची कोनी को आज प्रात हमारे पास लेकर आई है कि इसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समर्पित किया जा सके। आप ही ने ये बच्ची उन्हें दी है कि वह इसको लालन पालन करें इसका, और वह इसे इसकी छोटी बहन सहित आपके पास लाई है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय पिता आप इन पर दया कीजिए, परिवार और छोटी बच्ची को आशीष दीजिए। हमने अपने हाथ इन पर रखे हैं, आप आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में हम इसे इसके जीवन को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आपके छोटे बच्चे को आशीष दे। ओ यहाँ तो अनेक छोटे छोटे बच्चे लाए गए हैं। इस छोटे बालक का क्या नाम है, योएल वाटसन, योएल ली वाटसन। कितना सुंदर बच्चा है, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, नीली आंखें हैं। आप कहाँ से आए हैं, जॉर्जिया से आए हैं, मैं सोच रहा था कि आप दक्षिण से हैं, मुझे पता नहीं था। ओ हाँ, ये अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, जॉर्जिया का छोटा सा बच्चा हुआ ये। ओ तब ठीक है श्रीमान। हाँ भाई, ये सुंदर बात है कि ये बोल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कर सकते हो ना। आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हम इस प्रिय बच्चे को आपके पास लाए हैं जबकि इसके माता पिता अपने विवाह की सहभागिता में यहाँ खड़े हैं। आपने इस छोटे बच्चे को उन्हें दिया है कि वे इसे पालें और बड़ा करें, और वही इसे वापस आपके पास लाए हैं। पुराने समय की हन्ना की तरह से ये दृश्य कितना सुंदर है, जिसने एक बच्चे के लिए आपसे प्रार्थना करी थी और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया था और वह उसे वापस परमेश्वर के भवन में समर्पित करने लाई थी। प्रभु विनती स्वीकार कीजिए कि ये छोटा बालक आपका सेवक बने और ये भी कि इसके माता पिता को आशीष मिले और स्वस्थ और शक्ति मिले कि वह इसे पाल कर बड़ा कर सकें और काश ये लंबा सुखी जीवन पाए और आपका सेवक बने, क्योंकि हम इसे यीशु मसीह के नाम में आपको सौंप रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, इसे भला मनुष्य बनाए, हो सकता है एक और भविष्यद्वक्ता सैमुएल की तरह से बने। अब यहाँ दो बड़े प्यारे बच्चे, अरे तीन है भाई, पूरा परिवार है। माइकल, और आपका पॉल, कितने अच्छे नाम है। और आपका डेबरा, ये बड़ी अच्छी बात है, माइकल, पॉल और डेबरा। और आपका फैमिली नाम क्या है? एलिस। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कितना सुंदर बढ़िया छोटा सा परिवार है ये। जब भी मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब मैं खुद बच्चा था। और आप जानते हैं कि पुरानी कहावत है कि बच्चे पहले आपके पैरों पर चलना सीखते हैं और फिर दिल तोड़कर चलते हुए गुजरते हैं, किंतु मैं नहीं समझता कि यदि उन्हें प्रभु को समर्पित किया जाए तो भी वे ऐसा ही करेंगे। ये बच्चे परमेश्वर के दिए हैं और इनकी जिम्मेदारी उसने आपके हाथों में सौंपी है। वह आप में से ही प्रचारक चुनता है। महिला प्रचारक के बारे में मैंने आपको बताया है कि वे कलीसिया में प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन प्रत्येक माँ एक उपदेशक है और ये बच्चे उसकी कलीसिया हैं। देखिए, जबकि इनके पिता काम करते हैं तो माँ इन बच्चों को ठीक रीति से पालती है। आपके पास ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, आपके पास एक बड़ा सुंदर परिवार है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास माइकल को लेकर आए हैं जो कि पहलौठा लगता है। यीशु मसीह को उसे समर्पित करने के लिए हमने अपने हाथ उस पर रखे हैं। इसके माता पिता इसे आपके सम्मुख लाए हैं क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आपने उन्हें सौंपी है और वो जानते हैं कि आपकी मदद के बिना वे ऐसा करने में योग्य नहीं है। इसलिए वो अपने छोटे से परिवार को आपको समर्पित करने के लिए लाए हैं। अब मैं इस छोटे माइकल को यीशु मसीह के नाम में जीवन भर के लिए आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। इसी तरह से हम इस छोटे पॉल के ऊपर अपने हाथ रखकर इसे जीवन भर यीशु की सेवा करने और परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करते हैं। इस छोटी डेबोरा के ऊपर भी हम अपने हाथ रखकर, पिता हम इसे यीशु मसीह के नाम में आपको समर्पित करते हैं। हमने इन्हें उस यीशु के नाम में समर्पित किया है जिसने कहा था कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो। होने दीजिए कि परमेश्वर के राज्य में इस छोटी बच्ची का जीवन आशीषित हो। इनके माता पिता को आशीष दीजिए और काश वो लंबा सुखी जीवन पाएं और अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा करता दे। जबकि हम उन्हें यीशु मसीह के नाम में आपको समर्पित कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए इन आशीषों को मांग लेते हैं। आमीन। आशीष हो, आपको आशीष मिले, आपको आशीष मिले। आपका बहुत सुंदर छोटा सा परिवार है। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ? ये छोटी लड़कियाँ आज जितनी प्यारी हैं, उतनी सुंदर उस जमाने में नहीं थी जब मैं छोटा लगा था। जी हाँ श्रीमान, कितनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखें हैं। क्या नाम है तुम्हारा और अंतिम नाम क्या है? ब्लेयर, जोना ब्लेयर। आप जो इसे देख पा रहे हैं, कहिए क्या ये गुड़िया सी नहीं दिखती? जी हाँ, वैसी ही है श्रीमान। और जोना तुम कैसी हो? ओ जोना शर्मा रही है, शर्मीली है। कितनी छोटी प्यारी सी चीज है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, ब्लेयर्स परिवार के माँ बाप मिलकर इस छोटी जोना को यहाँ आपके पास लाए हैं और आप जानते हैं कि दिन बहुत बुरे हैं और शैतान हर तरीके से छोटी छोटी लड़कियों को बहकाने में लगा है और इसके माँ बाप जानते हैं कि वे स्वयं इसको सही दिशा में पालने में काफी नहीं है और वो चाहते हैं कि ये बड़ी होकर आपकी सेवा करे और वो उसे आपकी महिमा और आदर के लिए बड़ा करना चाहते हैं। अब वो इसे आपको समर्पित करने के लिए लाए हैं। जबकि हम उस जोना ब्लेयर पर हाथ रखकर उसे यीशु मसीह के नाम में आपको परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए समर्पित करते हैं, प्रभु उसे ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको आशीष मिले, प्रभु आपके साथ रहे। श्रीमान गुड मॉर्निंग। ये कितना प्यारा बच्चा है। अरे तुम कैसे हो बेटा? ठीक हो? जरा सा इधर घूम जाओ थोड़ा सा। आप देखो कितने अच्छे दिख रहे हो। कितना प्यारा छोटा सा चेहरा और मुखड़ा है। इसका क्या नाम है? डेनियल मार्क। और अंतिम अक्षर हार्डिन, डेनियल मार्क हार्डिन। बाय हार्डिन, आप यहाँ कहाँ के हैं? अच्छा श्रीमान, मूल रूप से आप कहाँ से हैं? न्यूयॉर्क प्रांत से हैं, तो आप यांकी हैं। भाई वो तो बड़ा प्रांत है और मेरे भी कुछ लोग वहाँ रहते हैं। मेरे चाचा वही प्लॉट्सबर्ग में रहते हैं। भाई न्यूयॉर्क में मुझे बड़ा मजा आया था जब मैं वहाँ गया था। अपनी अगली सभा में मैं वहीं जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क शहर के स्टोन चर्च में। ठीक है, तो इनका नाम आपने मार्क बताया, डेनियल मार्क। क्या ही छोटा सा अच्छा सा बच्चा है। आइए हम अपने सिरों को दुआ में झुकाएं। प्रभु यीशु, हम डेनियल मार्क का जीवन आपको समर्पित करने आए हैं। इसको इसके माँ बाप को दिया गया है कि आपकी चेतावनी के साए में बड़ा किया जाए, और चूंकि वो जानते हैं कि वे यह स्वयं नहीं कर सकते, अतः इसके जीवन के लिए आपसे आशीष चाहते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं जिनमें आज हम रह रहे हैं। जब हम इन छोटे बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो, इनके लिए हमें आपके हाथों की सुरक्षा पर भरोसा है। हम इस छोटे बच्चे पर हाथ रखकर इसके जीवन को आपको सौंप रहे हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य की सेवा व महिमा में इसका जीवन लगे। इसको यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे, ये बड़ा अच्छा बच्चा है। और छोटे मार, तुमको परमेश्वर आशीष दे। बहन धन्यवाद, बड़ा सुंदर गीत है। पिछले रविवार कितने लोग थे जो अब यहाँ हैं, जिनके लिए प्रार्थना करी गई थी? आपकी चंगाई का परिणाम क्या रहा? क्या आप चंगाई अनुभव कर पाए? कितने ऐसे हैं जिनके लिए प्रार्थना करी गई थी? अपने हाथ उठाएं। देखिए सभी के हाथ उठे हैं। जी हाँ, मैंने भी सुनी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि बैठा इनकी गवाहियाँ सुनता रहूँ। देखिए कि कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, देखिए कि ये कितना शानदार, कितना अद्भुत समय है। हम इसके बारे में किसी समय किसी सभा में बात करेंगे। यह तो अभी दौर शुरू ही हुआ है और हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि मैं हर साल जाता हूँ, मैं वहाँ कंटकी प्रांत में अपने कुछ मित्रों के साथ था, और ये केवल गिलहरी का शिकार खेलने ही तक सीमित बात नहीं थी, और ये बात आप जानते हैं। अतः हम एक महान और शानदार समय में आ पहुँचे हैं, और इसके लिए प्रभु के धन्यवादी हैं। अब इस सभा के बाद मुझे भी घर जाना है, और कुछ समय बाद न्यूयॉर्क में एक सभा में मुझे जाना है, और अगर समय मिला तो बीच में रुककर हम यहाँ एक सभा और कर सकेंगे, और फिर मुझे वापस आकर श्रीवपोर्ट जाना है। वहाँ से लौटकर घर आना है, और तब इरादा है कि छुट्टियों में प्रभु चाहेगा तो अपने परिवार को लेकर वापस आऊंगा, और उसके बाद मैं चाहता हूँ तब मेरी सभाएं फोनिक्स में जनवरी में होंगी, और ये क्रिश्चियन बिजनेसमैन की ओर से उनकी सालाना सभा होगी। उससे लगभग हफ्ता 10 दिन पहले मैं जीसस नेम वालों की वह बड़ी जगह किराए पर लेने का प्रयास करूंगा। वहाँ पर भाई गार्सिया और एक अन्य फ्रांसीसी भाई के पास बड़ी शानदार जगह है। उन्होंने इसे अभी बनाया है, एकदम नया भवन है, और उसमें कई हजार व्यक्तियों के बैठने का स्थान है। उनकी अपनी सभा संख्या में थोड़ी सी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जब भी चाहूँ वो जगह किराए पर ले सकता हूँ। इसके बजाय कि सुंदर घाटी में विभिन्न जगहों पर छोटी छोटी कलीसियाओं के मध्य सभा हो, ये मेरा उद्देश्य है कि सभी के साथ एक स्थान पर बड़ी सभा के रूप में हमारी सहभागिता हो सके, और ऐसा स्थान मिल जाए तो वहीं पर सभा करें, और अगर मिल जाए तो हम किसी आराधना भवन को किराए पर ले लें, ताकि उसमें क्रिश्चियन बिजनेसमैन कन्वेंशन हो सके। उसके बाद समुद्र पार से कार्यक्रम बन सके तो कोशिश करेंगे कि जनवरी, फरवरी और मार्च में साउथ लैंड्स में सभाएं करेंगे, और उसके बाद अफ्रीका में सभाएं करने का विचार है, क्योंकि इस समय का क्रिसमस मौसम तो उनके यहाँ जुलाई का समझिए। देखिए कि इस समय वहाँ इस कदर वर्षा और खराब मौसम होता है कि आप वहाँ जा नहीं सकते, अतः वहाँ जाने का समय बाद में ही उपयुक्त है। और उसके बाद हम नॉर्वे को जाएंगे, और अगर संभव हुआ और पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए अफ्रीका में इस भ्रमण को समाप्त करने का विचार करेंगे, अगर प्रभु चाहेगा। लेकिन आप अब हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, हम आपको प्यार करते हैं और आप जानते हैं, अतः हम जितना जानते व सोच सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए करेगा आगे हमें उससे भी कहीं अधिक उसके अनुग्रह की आशा है और हमें विश्वास है कि आज रात बड़ी महान चंगाई हमारी सभा में दी जाएगी। शायद आज मैं अधिक देर तक नहीं प्रचार कर पाऊंगा क्योंकि आज रात प्रभु भोज भी होना है, इसलिए बस 20 या 30 मिनट के बाद हम प्रार्थनाएं करेंगे और उसके तुरंत बाद हम प्रभु भोज लेंगे और आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। आपका स्वागत है। हमें खुशी होगी अगर हमारे यहाँ प्रभु भोज सीमित लोगों के लिए नहीं होता। हमें खुशी होगी कि आप होंगे। ये प्रत्येक विश्वासी के लिए खुला है। इससे पहले कि मैं पवित्र शास्त्र में से पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना में सिरों को झुकाएं। मैं अपने अच्छे मित्र भाई ली वेली से कहना चाहूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें ताकि परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। भाई वेली, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।
Knowing, Lord, that He can say to us as Paul said, what came the word of God out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. And I, for one, Lord, and believe all of us want to hear it and receive it.
Amen.
In such a way, Lord, that we just won't be a knowledge added to us, but it'll be light.
Granted
the power to magnify Jesus Christ, who is our life. May He be our eternal joy.
Granted
everything that in His person, the Holy Spirit, He in us and then through us unto a lost and dying world.
Granted, Lord.
Grant us this morning, we pray, Jesus, Thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
Yes.
आमीन। प्रभु से स्वीकार करें, प्रभु स्वीकार करें। हाँ प्रभु, आमीन। अब आदर और भक्ति सहित हम वचन में चलें। अब आज सुबह मैं निर्गमन 12 अध्याय में से 12वां और 13वां पद पढ़ने जा रहा हूँ।
Listen close now. And then before communion tonight,
और अब ध्यान से सुनिए तथा बाद में प्रभु भोज से पहले पूरा निर्गमन का पूरा 12वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। यहाँ 11वीं आयत में यात्रा की तैयारी है और यात्रा से पहले प्रभु भोज है और इसी बात को हम अत्यंत भक्तिभाव से देखेंगे। और अब निर्गमन 12 अध्याय की 12वां पद। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम ठहरोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। प्रभु अपने पवित्र वचन पर आशीष दे। अब इसमें से मैं एक छोटा सा केवल पांच अक्षरों वाला एक पाठ ले रहा हूँ, यानी टोकन, TOKEN, यानी टोकन चिन्ह। मैं इस शब्द टोकन या चिन्ह पर बोलना चाहता हूँ या ये संडे स्कूल पाठ को इसको सिखलाना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बता रहा है कि लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा और हम इसी शब्द टोकन या चिन्ह पर विचार करेंगे। और अब देखिए कि मैं कब तक घड़ी पर निगाह रख पाऊंगा और कितना समय हुआ है ये देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वचन में से आपको बताने के लिए असंख्य संदर्भ है। और फिर ये भी है कि मैं कुछ समय के लिए आपके साथ बाद में नहीं भी हूँगा। और फिर कौन जानता है कि हम में से कौन कौन यहाँ अंतिम बार साथ साथ बैठे हैं। इसलिए इस वचन को हम बहुत भक्ति और निष्ठा से इस समय देखेंगे। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल काम है। प्रभु ने हमें इस सभा के लिए कितनी अच्छी सुबह दी है, कितनी बढ़िया सुबह है। और अब हम उस बात पर पूरी तन्मयता लगाएं, उसे सुने जो कुछ भी बोला जाता है, ताकि प्रभु यदि कुछ आपसे कहना चाहता है तो वो आप ग्रहण कर सकें। और हम यहाँ खुद को दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम कभी दूसरों को ये दिखाने नहीं आते कि हम कैसे वस्त्र पहने हैं, नहीं। जैसा कि भाई ने प्रार्थना में कहा था, हम यहाँ केवल एक चीज के लिए आते हैं, केवल वचन सुनने, कि वचन हमारे पास आ रहा है। हमें वचन ही चाहिए, क्योंकि वही एक बात है जिससे हमें मतलब है, और यही एक वो चीज है जो हमारे लिए ठोस और सहायक साबित होगी। और हम मृत प्राय लोग हैं, सभी मानव प्राणी अनंतता में प्रवेश करने जा रहे हैं, और हमारे पास बस थोड़ा सा समय है जिसमें हमें फैसला करना है कि हमें किधर जाना है। और मार्ग हमारे सामने है, हम जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और मार्ग हमारे सामने है, हम जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इसी स्थिति में उसने आदम और हव्वा को रखा था, और इसी में हमें रखा है कि हम कुछ भी सुनने को, करने को, चुनने को स्वतंत्र हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन में हम क्या करते हैं और कितने सफल हैं, यदि मसीह हमारे पास नहीं है तो हमने सब कुछ पूरी तरह गंवाया है। तब यदि मसीह सब कुछ है जिसकी ओर देखना है, तो हमसे मूर्ख कोई न होगा जो उसे ग्रहण न करे और उसके आनंद का भागीदार न बने। उस मसीह को केवल स्वीकार ही नहीं, वरन उससे भी बढ़कर कुछ हमें करना है। जब आप उसे पा लें तो उठाकर अलमारी में नहीं सजाना है, बल्कि उसके वचन को अपने लिए प्रयोग में लाना है। वैसा ही है जैसे डॉक्टर के पास दवा लेने जाएं और दवा लाकर उसे अलमारी में रख दें। यदि आप दवा लेने गए थे तो फिर उस दवाई को खाइए। अगर कोई बीमारी आपको तंग कर रही है और ये दवाई उसका उपाय बताई जाती है जिससे मदद मिलेगी, तो जो कुछ डॉक्टर ने दिया है उसे खाइए, और जिस तरह से उसने उसका सेवन करने को कहा है वैसे ही कीजिए। क्योंकि कभी कभी अपने बनाए तरीके से उसे खा लेने में जो थोड़े से क्षण बीतते हैं उनका बुरा परिणाम हो जाता है। और हम कैसे जान सकते हैं कि आज के इस मामले में आपके निर्णय में एक क्षण की भी देरी आपकी आखिरी मंजिल तय कर सकती है कि आप कहां पहुंचेंगे। उसे उसी प्रकार से लीजिए जैसे वे आपको लेने को देता है। एक चिन्ह, लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। अब पहले देखिए कि चिन्ह किसे कहते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो हम अंग्रेजी भाषी लोग, खासकर अमरीकी लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। शब्दकोश के अनुसार वास्तव में चिन्ह या टोकन बताता है कि किसी चीज का मूल्य, किराया अदा किया जा चुका है। समझ गया? किराया, एक मूल्य जो देना था वो दिया जा चुका है। जैसे कि रेलगाड़ी या बस में हमको किराया देना होता है, और आप उसमें जाने के लिए उन्हें किराया देते हैं और वो आपको टोकन देते हैं, और उस टोकन यानी चिन्ह का प्रयोग आप केवल उसी के द्वारा उसी सफर में कर सकते हैं। वो रेलगाड़ी की कंपनी का है और उसका किराया अदा किया जा चुका है। एक खास टोकन का रेलगाड़ी का है, ये अर्थ है। वो एक चिन्ह है और उस टोकन से आप कुछ और नहीं कर सकते। उस टोकन से आप उस यात्रा के अलावा कहीं और की यात्रा नहीं कर सकते, और वह एक चिन्ह है। अब यहाँ जहाँ से हमारा विषय शुरू हुआ है, यहाँ परमेश्वर इजरायली लोगों से कह रहा है कि मेमने का लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरा है। इजरायली लोगों द्वारा वध किया मेमना यहोवा के उपयुक्त टोकन बनाया गया था। वहाँ लहू होना जरूरी था। परमेश्वर ने एक चिन्ह बनाया और उसे इजरायल को दिया। इसके अलावा दूसरा कोई चिन्ह न था जो उनके लिए काम आ सकता, या देखिए कि उसे यहोवा मान लेता। दुनिया के निकट ये मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यही एकमात्र बचने का तरीका था। और उसे तो बस एक चीज देखनी जरूरी थी, और वह यही लहू का चिन्ह था। और जब तक मूल्य चुका न दिया जाए, आपको चिन्ह नहीं दिया जा सकता। और चिन्ह मिलने के बाद आप आजाद हैं, और कोई आपको नहीं रोक सकता। आप पास शुदा यात्री हैं। मैं लहू को देखकर तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या सुयोग्य समय और विशेषाधिकार होता है जब हम जानते हैं कि हमारे पास चिन्ह है। जब मैं लहू को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा, यही वो चिन्ह है जिसे वो पहचानेगा। ऐसा कुछ और नहीं है जो उस चिन्ह का स्थान ले सके। कोई विकल्प नहीं, कोई डिनोमिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, केवल वही चिन्ह। परमेश्वर ने कहा था मैं केवल उसी चिन्ह को देखूंगा। इससे कोई मतलब नहीं कि वे लोग कितने धार्मिक हैं या कितने अच्छे थे या कितने पढ़े लिखे थे, कितने अच्छे वस्त्र पहनते थे, परंतु वो लहू का चिन्ह ही सब कुछ। जब मैं उस चिन्ह को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। वह लहू ही चिन्ह था जिसका मतलब था कि यहोवा की मांग पूरी हो चुकी है। लहू से अभिप्राय उस चिन्ह से था, वह खून ही चिन्ह था। आपने देखा, परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे मर जाओगे। तब पाप के बाद वहाँ विश्वासी का जीवन बचाने के लिए एक और वैकल्पिक जीवन बलि किया गया। परमेश्वर ने दया करके उस वैकल्पिक बलिदान को ग्रहण किया, क्योंकि उसका पुत्र आदम वचन पर अविश्वास करके पाप में फंस गया। तब परमेश्वर ने, जो कि दया से भरा है, उसने उनके लिए एक उपाय निकाला, और वो ये था कि किसी को उनके बदले अपने प्राण देने थे। इसके अतिरिक्त कोई भी चारा न था। यही कारण था कि कैन की वे फल फूलों वाली भेंट अस्वीकार करी गई और कोई काम की साबित नहीं हुई। वहाँ तो एक जीवन ऐसा बलि होना था जिसमें लहू हो, और बलिवेदी पर एक प्राण दिया गया, और खून इस बात का प्रतीक चिन्ह बना कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया गया है। अब देखिए कि परमेश्वर की मांग क्या थी। जीवन था, और खून का अर्थ था कि कोई जीवन समाप्त हुआ है। अतः परमेश्वर की मांग थी कि खून वहाँ हो, जिसका मतलब था कि कोई जीवन बलिदान हुआ है। परमेश्वर चाहता था कि कोई प्राण बलि हो और खून बहाया जाए, और वही खून वो चिन्ह था कि प्राण बलि किया गया है। परमेश्वर ने पशु की बलि का आदेश दिया था जिसका लहू ही वो चिन्ह था। देखा आपने, वो चिन्ह ही सच्ची उपासना करने वाले विश्वासी की पहचान था। मैं इन छोटे छोटे संदर्भों पर अधिक समय नहीं लेना चाहता, पर एक बात जरूर है जिस पर आप पूरी तरह से विचार करें। और मैं यहाँ थोड़ा सा रुक कर ये कहना चाहता हूँ कि एक विश्वासी अपने लिए हुए बलिदान के द्वारा ही पहचाना जाता है। और मैं यहाँ थोड़ा सा रुक कर ये कहना चाहता हूँ कि एक विश्वासी अपने दिए हुए बलिदान के द्वारा ही पहचाना जाता है। साफ बात तो ये है कि पहले तो उसे अपने हाथ उस बलि पशु के ऊपर रखने पड़ते हैं ताकि वह स्वयं को उससे जोड़ ले, और तब वहाँ खून छिड़का जाता है जिस लहू के दायरे में वो खड़ा होता है। खून उसके ऊपर होना जरूरी है। इस रीति से यह एक चिन्ह बनता है कि उसने स्वयं को पापी समझा, माना, और लहू ये चिन्ह बना कि उसकी जगह एक मासूम जान बलि करी गई है। आह, कितना सुंदर चित्र है। उद्धार पाने के बाद का कैसा अच्छा चित्र है, समझे। परमेश्वर के न्याय, पवित्र न्याय की मांग पूरी हो चुकी है। परमेश्वर ने कहा था कि मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, और जब उसी जीवन ने बजाय इसके कि वह परमेश्वर को मिलता गुनाह किया, तब एक मासूम ने उसके स्थान पर अपने प्राण बलि दिए। और ये एक पशु का जीवन था, कोई सेब या आड़ू आदि फल नहीं था। इससे सर्प वंश सिद्धांत सब की दृष्टि के सामने एकदम साफ होकर उभरता है कि वह लहू ही था, और वह लहू किसी फल में से नहीं आ सकता था, इसे मासूम प्राण में से आना था, और उस पापी के लिए प्राण भी गंवाना था। और वही लहू एक चिन्ह था कि एक मासूम मारा गया है और उसका लहू बहा है, और आराधना करने वाला उस लहू को अपने ऊपर छिड़क कर स्वयं को उस उद्धार से जोड़कर अपनी पहचान प्रकट करता था कि उसने पापों से छुटकारा पाना चाहा है, क्योंकि उस बलिदान में वह स्वयं को बलि प्रतीक से संबंधित करता था, और वह लहू ही उस बात का चिन्ह बन जाता था। ये सब प्रतीक कितने अद्भुत थे। कैसा अच्छा चित्र था जो एकदम मसीह का प्रतीक था। आज विश्वासी उसी मसीह के लहू के साए में उस बलिदान से जुड़ते हैं, यह कितना ठीक ठीक एकदम उपयुक्त नमूना था। देखिए किस प्रकार मसीह ने, जो कि पशु नहीं था, बल्कि वो तो एक सबसे अधिक मासूम मेमना था जिसने अपना प्राण हमारे लिए दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह की पहचान मेमने के द्वारा हमें दी है और उसने स्वयं की पहचान किसी पक्षी या फाख्ता से दी है, और वो फाख्ता या कबूतर सारी चिड़ियों में सबसे अधिक मासूम और शुद्ध होता है, और मेमना सारे पशुओं में सबसे ज्यादा भोला और शुद्ध माना जाता है। अतः आप देखिए कि यीशु को यूहन्ना ने जब नदी में बपतिस्मा दिया था तो उसने परमेश्वर के आत्मा को उस पर कबूतर की तरह उतरते देखा था। अगर ये बात नहीं होती कि कबूतर इतना पवित्र व मासूम न माना जाता तो वहाँ कोई भेड़िया या कोई अन्य पशु उतरता दिखाई देता, लेकिन कबूतर की प्रकृति भेड़िये से मेल नहीं खाती है और न ही उसकी प्रकृति किसी अन्य पशु से मेल खाती है, लेकिन मेमने से उसकी मासूमियत व शुद्धता एकदम मिलती है। जब दो एक ही प्रकृति मिलती हैं, तो वे आपस में एक मत हो जाती हैं। अब आप क्या पहले से चुने जाने वाली बात को देख पा रहे हैं? मेमना जब आया तो देखिए कि वो पूरी तरह से मेमना था। मेमने के रूप में उसकी प्रकृति थी, उसका जन्म मेमने के रूप में हुआ था और मेमने के रूप में ही वे पल कर बड़ा हुआ था। आप समझे इस बात को? और इसी तरह से हमारा आत्मा है, हमारी आत्मा है, यदि वो सच्ची आत्मा है, पहले से वैसे ही रची गई है, तभी वह वचन को, मसीह को ग्रहण कर सकती है। बाकी लोग कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि परमेश्वर का आत्मा भेड़िए जैसी आदत वाले प्राणी पर उतरे, लेकिन वो भेड़िया जो क्रोधी, नीच और मानसिक रूप से बीमार होता है, पवित्र आत्मा वहाँ नहीं ठहरता, वो वहाँ से दूर चला जाता है और ये विधि काम नहीं कर पाती। क्या होता अगर वो कबूतर यानी पवित्र आत्मा उतर कर आता और वहाँ मेमने की जगह पर कोई दूसरा पशु होता? तब वह शीघ्रता से वापस लौट जाता, लेकिन जब वो अपनी प्रकृति से मेल खाती प्रकृति को पाता है तो उसके साथ एकमत हो जाता है, और तब उस कबूतर ने मेमने का मार्गदर्शन किया। और ध्यान दें कि वो उसे बलिवेदी तक ले गया। वो मेमना उसके प्रति आज्ञाकारी रहा, आपने देखा, जहाँ चाहे वो उसे ले गया, लेकिन उसने उससे सहमति रखी। आज मैं देखता हूँ कि जब परमेश्वर हमें प्रेरित करता है कि हम अपना जीवन और पूरी सेवाएं उसे समर्पित करें, तो कभी कभी हमारी आत्माएं इस प्रकार से विद्रोह करती हैं, मानो हम मेमने हैं भी या नहीं, ये शक हो जाता है। देखा, समझे, मेमना आज्ञाकारी होता है, एक मेमना आत्म बलिदानी होता है, वह अपनी किसी चीज पर भी कोई दावा नहीं करता, अपने आप चुपचाप लेट कर अपना सारा ऊन कतरने देता है, और उसके पास एक वही ऊन ही होता है, वो अपना मुंह नहीं खोलता और सब कुछ बलिदान करता है। मेमना ऐसा होता है, वो अपना सब कुछ स्वयं को भी दूसरों के लिए देता है। इसी तरह से एक सच्चा मसीही होता है, अपना सब कुछ जो भी उसके पास है वह परमेश्वर के लिए दे देता है और दुनिया की कोई परवाह नहीं करता। मसीह पूरी तरह से सिद्ध मेमना था। मिस्र में जब वहाँ मेमने का लहू बहाया गया और उसे द्वार पर लगाया गया तो वह चिन्ह गिना गया था। तब इस सिद्ध मेमने के खून का क्या मतलब है? का अर्थ है कि हम अपने लिए मर चुके हैं और अब उस बलिदान यानी मसीह के साथ पहचाने जाते हैं। देखिए कि अब मेमना, लहू और वो व्यक्ति तीनों एक साथ पहचाने जाते हैं, यानी विश्वासी और बलिदान एक हो जाते हैं। देखिए कि आप अपनी कुर्बानी के साथ पहचाने जाते हैं और पता चलता है कि आप क्या हैं। तब वो लहू ही चिन्ह या पहचान बनता है, खून ही इस बात की पहचान देता है कि उपासक ने मेमने की बलि चढ़ाई है और उसको ग्रहण कर लिया है और उस चिन्ह को अपने ऊपर लगाया है कि अब वह अपने आप से शर्मिंदा नहीं होता। वो शर्मिंदा नहीं होता कि कोई उस चिन्ह को देखकर क्या कहेगा, वरन वो चाहता है कि हर कोई उस चिन्ह को देखे। और वो चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है कि प्रत्येक वहाँ से गुजरने वाला उसे देख सके। देखिए कि बहुत से लोग मसीही बनना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि वो छिपे रहें और कोई न जाने कि वे मसीह हैं। उनके आसपास के लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर वो कहते हैं कि हम मसीही तो बनना चाहते हैं, मगर फला फला साहब को पता नहीं चलना चाहिए। दिस इज पैरा 70। देखिए कि मसीहत को अपना चिन्ह दिखाना पड़ता है लोगों को, ऑफिस में, सड़कों पर, जब कभी खतरे में हो तब, गिरजों में, कुछ भी हो, कहीं भी हो, चिन्ह दिखाना पड़ता है कि हम मसीह हैं। खून ही चिन्ह है और इसे अपने ऊपर लगाना है, वरना देखिए कि आप व्यवस्था के घेरे से बाहर खड़े हैं। लहू ही एक बिंदु था, एक चिन्ह था, पहचान थी कि अमुक व्यक्ति छुटकारा पा गया है। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि उनका छुटकारा पहले ही हो गया था, यानी तब तक कुछ भी घटित न हुआ था, विश्वास के द्वारा उन्होंने लहू को अपनाया था। इससे पूर्व कि कुछ होता, उन्होंने उस लहू को विश्वास सहित वहाँ लगा दिया था कि परमेश्वर के वचन अनुसार मृत्यु आने वाली है। इससे पहले कि परमेश्वर के क्रोध की दलदलाहट वहाँ उस देश से गुजरती, उनके लिए उस लहू को लगाना जरूरी था। अगर उसके बाद वे लहू लगाते तो बहुत देर हो चुकती। और अब यहाँ एक पाठ हमें मिलता है जिसको मैं शायद आपको समझा सकूं। देखें कि लहू पहले लगाना है, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है कि फिर लहू नहीं लगाया जा सकेगा। मेमने को 14 दिन तक रखने के बाद सांझ के समय बलि किया जाता था, और फिर उसे मारकर उसके लहू को सांझ के समय लगाया जाता था। क्या आप इसका अर्थ समझे? सांझ के समय से पहले चिन्ह वहाँ नहीं था, और ये हमारे समय का जिसमें हम रह रहे हैं सांझ का समय है। कलीसिया के लिए ये सांझ का समय है, मेरे लिए भी ये सांझ का समय है, मेरे सुसमाचार का भी ये सांझ का समय है। मैं समाप्त हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, और सुसमाचार के शाम के समय में बाहर जाने वाला हूँ। हम न्यायोचित ठहरने आदि से गुजर कर आगे आ चुके हैं, और अब यही समय है जबकि चिन्ह को अपने ऊपर लगाना है। पिछले रविवार मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो यही बात है। ये वो समय है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि कभी कुछ करना था तो यही वो समय है जबकि हमें कुछ महत्वपूर्ण करना है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध अब इस दुनिया में आने वाला है, और जो भी उस चिन्ह के साय में न होगा वो सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। केवल लहू ही आपकी पहचान बनेगा और आप उससे बच सकेंगे। ध्यान दें कि पशु का जीवन फिर से मनुष्य के जीवन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था। हालांकि जब बलि पशु का लहू बहता था तो प्राण निकलते थे, क्योंकि जीवन व लहू एक ही इकाई है। जब प्राण और लहू दिए जाते थे तो जीवन लहू से अलग हो जाता था। अब देखिए कि लहू जीवन की रसायन पद्धति है, लेकिन जीवन या प्राण लहू से भिन्न होता है, लेकिन जीवन होता ही लहू में है। बलि किए पशु का जीवन मनुष्य को नहीं दिया जा सकता। जब मेमना बलि किया जाता था तो उसका लहू, जो कि मात्र रासायनिक पद्धति थी, वो ही लगाया जा सकता था, क्योंकि उसका जीवन समाप्त तो होता था लेकिन मनुष्य को नहीं दिया जा सकता था। वो जीवन इसलिए मनुष्य को नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती थी। पशु में आत्मा नहीं होती और उन्हें नहीं पता होता कि वो नंगे हैं, और वो पाप को नहीं जान सकते कि पाप क्या होता है, क्योंकि उन्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है। अतः वे जीवित प्राणी तो हैं, परंतु जीवित आत्मा नहीं है। इसी वजह से पशु का जीवन मनुष्य को नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती थी। यहाँ खून में जीवन है और जीवन में प्राण होता है, पशुओं में सोल नहीं होती। आत्मा ही से जीवन की प्रकृति बनती है, इसलिए पशु होने के कारण उसमें कोई निश्चित प्रकृति नहीं होती थी। अतः वहाँ बलि पशु चढ़ाने में केवल लहू इस बात का चिन्ह होता था कि कोई जीवन मारा गया है। लेकिन इस वर्तमान शानदार महान व्यवस्था में या वाचा में लहू व उसके जीवन में एक अंतर है। आज विश्वासियों के लिए चिन्ह वो पवित्र आत्मा है। ये कोई रासायनिक प्रक्रिया या लहू नहीं है, वरन परमेश्वर का अपना आत्मा है। आज यही वो चिन्ह है जो परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर को यही चिन्ह देखना है, उसे यही चिन्ह हम में से प्रत्येक के पास देखना है।
इसलिए अब सांझ का उजियारा ढल रहा है और परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से धरती पर उंडेला जाने वाला है और वो इस ईश्वर रहित देश व ईश्वर रहित विश्वासियों पर गिरने वाला है और उन पर गिरने वाला है जिनके पास धर्माध्यक्ष होते हुए भी कोई धर्म नहीं है। मैंने इन स्थितियों में कोशिश करी है कि मैं सही रहकर खुद को सही ढंग से प्रकट कर सकूं ताकि देख सकूं कि वो समय अब कितनी दूर है और सब कुछ देखभाल कर ही मैं ये सब कह रहा हूं। और अब देखिए कि हम छाया में रह रहे हैं और परमेश्वर का प्रकोप आने को तैयार है। और वो देखना चाहता है कि आपने उसका चिन्ह यानी पवित्र आत्मा ग्रहण कर लिया है या नहीं। और यही केवल यही वो चिन्ह है जिसको देखकर परमेश्वर आपको छोड़ देगा और नाश न करेगा, क्योंकि यही वास्तव में मसीह का अपना जीवन है जो वापस विश्वासी के पास पवित्र आत्मा के रूप में आता है। पशु का जीवन वापस नहीं आ पाता था, इसीलिए उसका लहू द्वार और चौखट पर लगाना होता था ताकि प्रत्येक आने जाने वाले को वो लहू का चिन्ह दिखाई दे और ये प्रमाणित हो कि एक जीवन मारा गया है और इस घर में पापों से प्रायश्चित हुआ है। आमीन। यही सब आज प्रत्येक विश्वासी के साथ होना है कि उसे पवित्र आत्मा से भर जाना है, जिसका ये चिन्ह है कि एक जीवन जो मेमने का जीवन दिया गया है और लहू बहाया गया है, वही मेमने का मसीह का जीवन वापस विश्वासी में आ गया है और ये चिन्ह सारी दुनिया पर प्रकट है। प्रत्येक गुजरने वाला, आपके साथ संगति करने वाला, बातचीत करने वाला उस लहू की छाप को देखकर कह सकता है कि इसके जीवन में मसीह का लहू है और लहू की छाप लगी है और मसीह के जीवन के लहू की छाप अब आप पर लग गई है। अब आप उसके प्रकोप से मुक्त हैं। इसी प्रकार से आप बच सकते हैं श्रीमान, केवल गिरजों की सदस्यता लेने से नहीं। बलि पशु का जीवन होने के कारण विश्वासी को नहीं मिल सकता था और ये केवल एक ऐसे विवेक को प्रकट करता था कि एक सिद्ध बलिदान आगे दिया जाने वाला है। और इससे अधिक सिद्ध कुर्बानी और क्या हो सकती थी कि परमेश्वर स्वयं हमारे लिए प्रायश्चित बन गया। वो हमारे पापों के लिए तब प्रायश्चित बन गया जब वह अपने स्वयं रचे खून के द्वारा देहधारी हुआ। यही एकमात्र विधि थी कि परमेश्वर का अपना जीवन हमें मिल सके, क्योंकि हम सभी का जन्म दुनियावी रीति से होता है और हमारे अंदर दुनियावी जीवन है जिससे काम नहीं चल सकता था, क्योंकि इस प्रकार का जीवन पाप में होने की वजह से पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था। इस जीवन पर आप किसी प्रकार की लीपा पोती करके इसे पवित्र नहीं बना सकते थे। कोई तरीका नहीं था कि इसे शुद्ध किया जा सकता या और अच्छा बनाया जा सकता। इसको तो मरना ही था, यही अंजाम होना था, इसे मरना था। और इसके बदले में परमेश्वर के पुत्र के लहू को ग्रहण करके, जो कि यीशु मसीह का जीवन है, उसे पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर के चिन्ह के रूप में पाना है। इसीलिए वेस्ली या लूथर के दिनों में यही विचार किया गया या यही संदेश दिया गया कि विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा। वेस्ली के समय में लहू की रासायनिक प्रक्रिया स्वरूप लहू से पवित्रीकरण सिखाया गया, किंतु अभी अंत समय है जब टोकन या चिन्ह पाना जरूरी है। और आप देखिए कि इन तीनों तथ्यों के द्वारा ही दुल्हन स्वर्ग पर उठाई जा सकेगी। एक बच्चे को जब एक माँ जन्म देती है तो वहाँ जल, खून व प्राण इसी प्रक्रिया से आते हैं। शारीरिक रीति से जन्म में पहले जल, दूसरे खून और उसके बाद जीवन का जन्म होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से भी सलीब पर पहले जल, फिर लहू, फिर जीवन निकला और पूरी कलीसिया यानी संपूर्ण दुल्हन इन्हीं तीन प्रक्रियाओं से गुजरी है, यानी न्यायोचित ठहरना, जस्टिफिकेशन, पवित्रीकरण और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो कि चिन्ह या टोकन है। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में लिखा है कि वे लोग कंगाली में व कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। और आज के इन गिरजों ने ये चिन्ह देखा है जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और उन्होंने जाना है कि लहू बहाया गया है और पवित्र आत्मा गिरजों के ऊपर मंडला रहा है, लेकिन दुल्हन में शामिल हुए बिना वे उसे नहीं पा सकते। उनको इस सच्ची कलीसिया पर निर्भर रहना है, लेकिन परमेश्वर ने इसका वायदा किया था कि वो अपना आत्मा उंडेलेगा और उसको ग्रहण करने के लिए कोई ना कोई वहाँ जरूर होगा। मुझे ये नहीं पता कि कौन जन वहाँ है, लेकिन कोई ना कोई अवश्य इसे ग्रहण करेगा। मेरा उत्तरदायित्व तो बस इतना है कि मैं वचन प्रचार करूं। परमेश्वर का काम है कि वो पहले से चुने हुए बीज को ढूंढे। वहाँ उन्हें होना जरूर है, इसलिए पवित्र आत्मा वहाँ उन्हें खोजता है, उनमें से प्रत्येक को ढूंढता है। उसने प्रत्येक काल में, जल काल में, लहू द्वारा पवित्रीकरण काल में यानी सैंक्टिफिकेशन में, और अब इस पवित्र आत्मा रूपी चिन्ह काल में अपने बंदों को खोजा है। याद रखिए कि इसराइल बहुत सी बातों से गुजरा, पर वो सांझ का समय था जब उन्हें लहू का चिन्ह लेना पड़ा था। उन्हें ये चिन्ह सुबह नहीं, ना ही उन 14 तैयारी के दिनों में मिला, परंतु सांझ के समय दिया गया था। इसराइल को पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। प्रकार से लूथर को ये पता था, वेस्ली, फिनी, नॉक्स, कैल्विन सभी जानते थे कि आगे कुछ घटित होगा। वे सभी जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि पवित्र आत्मा वैयाक का सतून अपनी कलीसिया पर उड़ेला जाएगा। उन्हें पता था कि समय जरूर आएगा जब ये सारी बातें पूरी होंगी। इस समय इन बातों को पूरा होते नहीं देख सके, पर उन्होंने इन बातों की घटने की पूरी बात जोही थी। इसराइल को भी पता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन वो सांझ का समय था जब मेमने का लहू यानी वो चिन्ह द्वार पर लगाया गया था। जी हाँ, मेमने को बलि किया गया था। पूरी कलीसियाई काल में मेमना ही उपस्थित रहा है। लूथर के समय में भी मेमना ही था और वही वेस्ली के समय में था। लेकिन अब चिन्ह लगाने का समय है कि प्रत्येक घर पर वह चिन्ह पाया जाए। परमेश्वर के प्रत्येक घर को उसी चिन्ह या छाप के साए में पाया जाना है। उसके अंदर जो कुछ भी है उस पर वो चिन्ह होना है। परमेश्वर का घर यीशु मसीह की देह है, और एक ही आत्मा के द्वारा इस देह में, इस चिन्ह में हमारा बपतिस्मा किया जाता है और हम इस देह के एक भाग बन जाते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि इस चिन्ह को देखकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओ, ये कैसा अद्भुत समय है जिसमें हम रह रहे हैं। लहू विश्वासी की पहचान है कि कोई जीवन बलि किया गया है, और उसी का ये लहू है और वो जीवन मारा गया है। विश्वासी को रसायन पद्धति पर आधारित वो लहू को जाहिर करना है, उसकी छाप लेनी है कि कोई जीवन मारा गया है। आत्मा ही वो चिन्ह है, वास्तविक चिन्ह पवित्र आत्मा ही है। वह मेमने का लहू वास्तविक चिन्ह नहीं था, वह तो प्रतीक था। कलवरी क्रूस पर यीशु का लहू बहाया गया, ये सच है, लेकिन लहू तो वापस उन्हीं तत्वों में मिल गया जिनसे उत्पन्न हुआ था, यानी वो भोजन जो उसने खाया था। लेकिन आप देखिए कि खून के भीतर रक्त कोशिकाओं में जीवन था, जिनके द्वारा खून में हरारत थी। मात्र रसायन पद्धति में कोई जीवन नहीं होता, और खून दौड़ नहीं सकता, हलचल पैदा नहीं कर सकता। लेकिन जब जीवन उस लहू की रासायनिक प्रक्रिया में आता है तो रक्त कोशिकाओं को बनाता है। जीवन अपनी कोशिका बनाता है तथा फिर एक के बाद एक कोशिकाओं का निर्माण होता चला जाता है, तब वो मानव शरीर बनता है। और वो मानव शरीर परमेश्वर स्वयं था, वही इमैनुअल था, परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ था। लेकिन जब यीशु की देह में जीवन वापस आया तो लहू की वही रासायनिक प्रक्रिया उसमें वापस लौट गई। लेकिन चिन्ह पवित्र आत्मा है जो कलीसिया के ऊपर उंडेला जाता है ताकि वे लोग मसीह को पहचान सकें।
उसे पहचानना ही है क्योंकि स्त्री और उसका पति एक हैं, वे एक देह हो जाते हैं। इसी तरह से दुल्हन और मसीह एक हो जाते हैं। दुल्हन और मसीह की सेवकाई एक ही है। और याद रखिए कि लूका अपनी पुस्तक में कहता है कि हे श्रीमान थियोफिलुस, जो बातें हमारे बीच में बीती हैं, उन्होंने जो पहले ही से देखने वाले और वचन के सेवक थे उन्हें हम तक पहुंचाया, यानी यीशु का काम रुका नहीं परंतु निरंतर आगे को बढ़ता रहा है। मौत उसे रोक नहीं सकी और वो फिर से जीवित हो गया। प्रेरितों की पुस्तक बताती है कि कोई दूसरा नहीं वरन वही यीशु पवित्र आत्मा के रूप में वापस लौट आया कि उसका काम आगे और आगे बढ़ता रहे। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है, और यही चिन्ह है, यही टोकन या छाप। जब पतरस और यूहन्ना उस सुंदर नामक दरवाजे से गुजर रहे थे तो वहाँ एक जन्म का लंगड़ा मनुष्य था। तब पतरस ने उससे कहा था कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा और चल फिर। देखा आपने, लोगों ने पतरस यूहन्ना से बातें करी और देखा कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे, लेकिन वे ऐसा आश्चर्य कर्म कर पाए क्योंकि वे यीशु के संग रहे थे। देखिए कि उनके पास वो चिन्ह था और वो उसे प्रकट कर रहे। देखिए कि उन्होंने क्या कहा, जो कुछ मेरे पास है, यानी मसीह का जीवन उनके पास था। जब उन्होंने अपने एक भाई को निर्धन गिरी दशा में लंगड़ा और दयनीय स्थिति में पाया तो उसे वह जो उनके पास था दिया। वही जीवन जो मसीह में था उनके अंदर भी था। यीशु ने कहा था कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, यानी कहा था कि मैं वरन तुम स्वयं ये काम करोगे। यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे कि वहाँ चला जा तो चला जाएगा, मैं नहीं, तुम ऐसा करोगे। ए भाई, उस चिन्ह को दिखाने की घड़ी आ पहुंची है। हम इसे देख पा रहे हैं और जानते हैं कि हम अंत की ओर आ पहुंचे हैं।
हमने सभी तरह के सुसमाचार सुन लिए, अद्भुत काम देख लिए, चिन्ह देख लिए हैं और अब इस बात तक आ पहुंचे हैं जब कलीसियाओं को चिन्ह दिखाना है, उसी चिन्ह को हमें प्रकट करना है। उसने कहा था कि लहू देखकर तुम्हें छोड़ता हुआ गुजर जाऊंगा और नाश न करूंगा, किसी और चीज से काम न चलेगा, लहू वहाँ होना चाहिए। अब देखिए, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वो लहू का चिन्ह है। एक बड़े ज्ञानी, पवित्र शास्त्र के पंडित, बैप्टिस्ट भाई जो कि बड़े भले और अच्छे चरित्र के हैं, एक समय वो मेरे पास आया और पूछा कि भाई ब्रनम, आप पवित्र आत्मा पाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, इसमें नई बात क्या है, इसके बाबत तो हम सदियों से लोगों को बताते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम तो पवित्र आत्मा पा चुके हैं। मैंने पूछा कि आपने पवित्र आत्मा कब पाया। उन्होंने उत्तर दिया कि जब मैंने विश्वास किया था। मैं ये बात जानता था क्योंकि बैप्टिस्ट लोगों का यही मत है कि जब आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। मैंने उत्तर दिया कि प्रेरितों के काम अध्याय 19 में पौलुस ने उन बैप्टिस्ट प्रचारकों से पूछा था जो यूहन्ना के चेले थे और जो यही प्रचार कर रहे थे और पवित्र शास्त्र से यही साबित करते थे कि यीशु ही मसीह है। जब पौलुस इफिसुस में ऊपर के देशों से गुजरता हुआ पहुंचा तो उसे कुछ चेले मिले जिनसे उसने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने उत्तर दिया, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तब पौलुस ने पूछा था कि उनका बपतिस्मा किस प्रकार से हुआ था और पता चला था कि उनका बपतिस्मा उस बलि की मेमने यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ था। वे यीशु के संग बपतिस्मे द्वारा पहचाने नहीं गए थे, उन्होंने केवल विश्वास किया था। और ये वही बात हुई मानो रोगी ने दवाई खाने के बजाय अलमारी में रखी हो। पौलुस ने उन्हें फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए कहा। जब ऐसा किया गया तो उनके ऊपर वह पवित्र आत्मा का चिन्ह उतर आया। तब वे पवित्र आत्मा के चिन्हों, भविष्यवाणी करने, अन्य भाषाएं बोलने और अद्भुत काम करने, परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा मसीह यीशु में पहचाने गए। तब वे उस अपने यीशु के बलिदान के संग पहचाने गए। पवित्र आत्मा ही हमारी पहचान है, वही एक मसीही जन के रूप में हमारी पहचान कराता है। हमारी पहचान हमारे पवित्र शास्त्र के ज्ञान या गिरजों की सदस्यता के आधार पर नहीं होती। पहचान इससे नहीं होती कि आप कितनी पवित्र शास्त्र की जानकारी रखते हैं, वरन इससे होती है कि आप पवित्र शास्त्र के रचयिता से कितना परिचित हैं, उस लेखक का कितना अंश आपके जीवन में है। क्या आपने अपने आप को समाप्त कर दिया और अब आप अपने लिए कुछ नहीं रहे और अपने लिए मृत हो गए हैं, और चिन्ह वही है जो अब आपके अंदर रह रहा है, और वो जीवन अब आपका जीवन नहीं है वरन यीशु मसीह का जीवन है। पौलुस कहता है कि अब जो जीवन मैं जी रहा हूँ, यानी उसका ये जीवन उससे भिन्न है जो वो पहले जी रहा था। उसने कहा था कि ये मैं नहीं हूँ वरन मसीह उसमें जी रहा है, रह रहा है। यही वह पहचान का चिन्ह है जिसे परमेश्वर हमसे चाहता है, यानी हमारे बलिदान, उस उद्धारकर्ता का जीवन हमारे अंदर आ जाए, वही पवित्र आत्मा पाना है, वही चिन्ह है। कितना निश्चित टोकन है, चिन्ह है, और किसी प्रकार के चिन्ह की जरूरत नहीं है। हे प्रभु, यदि लोग इस बात की गहराई को पकड़ पाए, आज इस सुबह अगर मेरे पास वो शक्ति होती कि मैं इस बात को, चिन्ह को शब्दों के द्वारा प्रकट करके आपके आत्मा में बिठा सकता, इसकी अंदर की बात को वहाँ जज्ब कर पाता तो कर देता, मात्र कानों के सुनने की बात नहीं है। और फिर आप उस जमानत या गारंटी को महसूस कर पाते और आपको बड़ी शांति व आराम मिलता। यदि आपने कोई अपराध किया हो और अदालत में आप पर मुकदमा चलाए जाने वाला हो और आप जानते हो कि अगर दोषी पाए गए तो मृत्यु दंड मिलेगा, या तो गैस चैम्बर में या विधि अनुसार आपको फांसी पर चढ़ाकर मौत का दंड सहना पड़ेगा, चाहे किसी और तरह से हो, पर मौत पानी ही होगी। और आप ये भी जानते हो कि वास्तव में आप ही दोषी हैं और दंड मिलना निश्चित है। और यदि आपकी ओर से कोई वकील पैरवी न करेगा तो आप मारे जाएंगे, और इस हालत से बचने के लिए आप सबसे विख्यात वकील ढूंढना चाहेंगे। तब जब आपको कोई तेज तर्रार बढ़िया वकील मिल जाता है तो आपको थोड़ी बहुत शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बचाने के लिए एक नामी वकील आपके पास आ गया है। फिर भी एक संदेह आपको रहेगा कि यह वकील क्या न्यायाधीश या खंडपीठ के विचारों को आपके पक्ष में बदल पाएगा। वह वकील अपनी तेज तकरीरों व कानून की अच्छी जानकारी के कारण क्या न्यायाधीशों के विचार बदल पाएगा? क्या आपके मुकदमे की पैरवी अच्छी तरह से करके ये साबित कर देगा कि आप जीवित रहें? इन सारी बातों यानी वकील की योग्यता और उसकी क्षमता कि वह आपको बचा सकता है और न्यायाधीशों पर उचित प्रभाव डाल सकता है। इससे कुछ क्षण के लिए आपको तसल्ली तो मिलेगी कि वो ऐसा कर पाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न आपके दिमाग में उभरता रहेगा कि क्या वह ऐसा करने में सफल होगा। लेकिन हमारे इस मामले में तो न्यायाधीश खुद ही हमारा वकील बना है। परमेश्वर मनुष्य बन गया है। कोई भी वकील हमारी मदद नहीं कर सकता था। मूसा या व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता, कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। इसीलिए हमारे लिए न्यायाधीश स्वयं पैरोकार व वकील और जज बन गया। उसने अपने कानून व व्यवस्था का न्याय का काम खुद किया और उस न्याय का मूल्य स्वयं चुका दिया। और अब हम कितना अधिक सुरक्षित हो गए हैं। उसने अपना प्राण देकर न्याय चुकाया और पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन हमें दे दिया और ये गवाही दी कि हमारे पापों का चुकाया गया न्याय ग्रहण कर लिया गया। कितनी सुरक्षा है। चाहे मैं मौत की वादी में से होकर गुजरूं, तो भी मुझे कुछ हानि न होगी क्योंकि तू मेरे संग है। जब वह हमारा वकील और न्यायाधीश दोनों ही बन गया तो उसने हमारा मुकदमा लड़ा। उसकी अपनी व्यवस्था के अनुसार हम दोषी पाए गए थे और वह स्वयं आया और आकर उसने दोषी व्यक्ति की जगह स्वयं को रखा जो कि कब्र है और उसने उसका पाप अपने ऊपर ले लिया। उसने उसके अपराध को अपने ऊपर लेकर उसकी जगह मौत से ही पाप का मूल्य चुकाया, अपना लहू बहाया और उस व्यक्ति को उसका टोकन यानी चिन्ह दे दिया जो कि उसका अपना जीवन है। हम कैसे सिद्ध किए गए हैं? हमारा मुकदमा खारिज कर दिया गया है। अब विश्वास करने वाला पापी नहीं रहा है। हे परमेश्वर, उन पर करुणा कर दो जो नहीं देख पा रहे हैं कि अब उन पर कोई मुकदमा नहीं रहा, कोई दोष नहीं लग सकता। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसके पास है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है।
यही बात है कि मुकदमा खारिज किया जा चुका है, अब कोई मुकदमा बाकी नहीं रहा। आमीन। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि आपके पास अनंत जीवन का चिन्ह है। जब मृत्यु वहाँ दरवाजे पर आएगी तो उसका कोई अधिकार आप पर न होगा। देखा आपने? जी हाँ, यही बात है। चिन्ह दिया जा चुका है, अब केवल उसी चिन्ह को पहचाना जाएगा। देखिए कि उसने ये सब इस कारण किया कि वह चिन्ह आप तक आ सके, आपको मिल सके। चिन्ह ही परमेश्वर का अपना जीवन है। जब परमेश्वर ने पहला आदम बनाया तो उसे अपना पुत्र करके बनाया और वो पुत्र इतना भ्रष्ट हो गया कि उसने परमेश्वर के बजाय अपनी पत्नी की बात सुनी और स्त्री ने अपने पति की बात सुनने के बजाय शैतान की बात सुनी और ऐसा हुआ तो इस कदर भ्रष्टाचार पैदा हुआ कि सभी कुछ जहरीला हो गया। और परमेश्वर जानता था कि जब उन्होंने वैसा किया है तो उनकी संतान भी उत्पन्न होगी जो कि दुनिया में आएगी। वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को तो छुआ नहीं जा सकता था और उस फल को खाकर अब वो पापी हो गए थे और इस तरह से पूरी मानव जाति जो पैदा हुई वे पाप में फंसी थी। पाप से मुक्त होने का कोई तरीका बाकी नहीं रहा था। तब परमेश्वर स्वयं नीचे आ गया और वापस जाने का तब केवल एक ही मार्ग बचा था कि उसका पुत्र उसे वापस मिल जाए और वो ऐसा कर नहीं सकता था जबकि उसकी अपनी व्यवस्था वहाँ खड़ी उसे दोषी ठहरा रही थी। और तब पिता स्वयं हमारी तरह से एक मनुष्य बन गया। वही वास्तविक मेमना है और यही उसकी समस्त इच्छा थी जो उसके मस्तिष्क में थी। यही कारण है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मेमने की पहचान उन्हें दी थी, क्योंकि उसे पता था कि एक समय मेमना और कबूतर मिलेंगे और इस धरती पर एक साथ डेरा करेंगे। उसे पता था कि इसी तरह से हम सब उसके साथ फिर से सहभागिता कर पाएंगे। और परमेश्वर एक ऐसा सर्वोत्तम बलिदान देना चाहता था जिसके द्वारा हमें एक चिन्ह मिल सके, उसका आत्मा मिल सके, ताकि हम अब परमेश्वर के लिए अनजाने ना रहें, अजनबी या विदेशी ना रहें, परंतु उसकी संतान बन जाएं। अब आदम और हव्वा, स्त्री और पुरुष मिलकर एक साथ मसीह में उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर की संतान यानी उसके पुत्र व पुत्रियां बन गए हैं। और इसके बाद हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। इसीलिए इस वर्तमान जीवन का बीज इस धरती की मिट्टी से रचा ये हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और ये वर्तमान नाशवान जीवन अपने बीज सहित बुराइयों सहित नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब वह हमें अपने अनंत जीवन का बीज डालता है और अपनी संतान के रूप में हमारी पहचान बना देता है, ताकि जी उठने के बाद वो हमें हमेशा का अनंत जीवन देता है और हम नाश नहीं किए जाएंगे। आप समझ गए मेरा मतलब क्या है? यही बात है कि अब हमारा जीवन नाशमान नहीं रहा, का जीवन वो चिन्ह अब हमारे पास है। वह चिन्ह उस व्यक्ति की देह आत्मा पर लग गया है। वहाँ पर पवित्र आत्मा का चिन्ह लग जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये व्यक्ति परमेश्वर का है, उसकी संपत्ति है। उसने कहा है कि जब मैं वो चिन्ह देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। एक निश्चित चिन्ह हमारा वो पवित्र आत्मा ही है। अच्छा, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर अनंत जीवन है। अब आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। पवित्र शास्त्र बताता है कि जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। वो पाप किस प्रकार कर सकता है? जबकि उसके अंदर पवित्र परमेश्वर वास करता है। जब वो पाप रहित परमेश्वर है तो पाप कैसे कर पाएगा? कोई बात नहीं कि उसने पहले क्या किया था, सब कुछ उसके लहू ने धो दिया है। समझे आप, वो अब एक नई सृष्टि बन गया है। अब उसकी इच्छाएं और आशाएं स्वर्गीय चीजों पर टिकी हैं, क्योंकि वो अब खंगना नहीं वरन गेहूं का असली दाना बन गया है। उसकी इच्छाएं अब पहले जैसी नहीं रही, और वह अब यह बात अपने व्यवहार से प्रकट करता है। आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ और फिर भी पाप किए जा रहे हैं? नहीं, आप धोखे में हैं, क्योंकि विश्वासी कुछ और नहीं वरन पवित्र आत्मा का चिन्ह ही प्रकट करेगा। जब तक इसराइल को मिस्र छोड़कर जाने का आदेश नहीं मिला था, वह उसी लहू के साए में रहने के आदेश का पालन करता रहा था। तो बाहर न जाना, यही आदेश था। एक बार उस लहू की छाप के द्वारा उन पर मोहर लगा दी गई थी, उससे बाहर मत जाना। वे उसी के अंदर उस समय तक रहे जब तक कि मध्यरात्रि का समय न आया और तुरहियां बज न उठी। और जब तुरही बजी, नरसिंगे फूके गए, तो वह अपने माल असबाब के साथ प्रतिज्ञा की देश की यात्रा पर निकल चले। किसी प्रकार से प्रत्येक स्त्री और पुरुष जो पवित्र आत्मा से भरा जाता है, उस पर मोहर लगा दी जाती है, और फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती, कोई खतरा नहीं होता, वो सुरक्षित हो जाता है। सारा जीवन यही जाहिर करता है कि वो अब क्या है। की बातचीत, व्यवहार, चाल चलन सबसे यही जाहिर होता है। जब वो स्त्री पुरुष सहयोगियों और अन्य सभी के संपर्क में आता है तो उस पर लगा चिन्ह ही जाहिर होता है। आमीन। जब मृत्यु का समय आता है तो वो कहता है, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। वह चिन्ह उसके साथ होता है। जब जी उठने का समय आएगा तो वो जी उठेगा, परमेश्वर उसे अंतिम दिन फिर जिला देगा। यीशु ने यही कहा था। परमेश्वर कहता है, जब मैं उस लहू को चिन्ह को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ता हुआ गुजर जाऊंगा और नष्ट न करूंगा। याद रखिए कि अगर चिन्ह न पेश किया गया तो परमेश्वर की वाचा भी रद्द मानी जाएगी। ये बात ठीक है कि अगर आप उस चिन्ह को प्रकट नहीं करते हैं तो परमेश्वर की सभी वाचाएं आपके लिए रद्द हैं। चिन्ह वाचा के बने रहने का प्रतीक है। परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी। जी हाँ, लेकिन शर्त ये थी कि वो चिन्ह वहाँ हो। यदि वो वहाँ नहीं है तो वाचा भी नहीं है। हो सकता है वहाँ कुछ यहूदी ये कहना चाहते हों कि आइए देखिए, यहाँ द्वार पर लहू तो नहीं है, मगर मैं खतना किया हुआ यहूदी हूँ, खतना किया हुआ यहूदी हूँ, इससे कुछ मतलब नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि मैं लहू का चिन्ह देखकर तुम्हें छोड़ूंगा। आप कह सकते हैं कि मैं बैप्टिस्ट हूँ, प्रेस्बिटेरियन हूँ, मेथोडिस्ट हूँ या और जो भी हूँ, लेकिन कहा गया है जब मैं वो चिन्ह देखूंगा। मैं विश्वासी हूँ, आप कहेंगे मेरी माँ मेरे पिता अमुक गिरजे के सदस्य थे, मैं बचपन से इस गिरजे का सदस्य हूँ, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। मैं चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये बातें अर्थहीन है। मैं ब्रनम टबरनिकल में आराधना करता हूँ, यह वो वगैरह वगैरह करता हूँ, सारे वचन पर विश्वास करता हूँ, कुछ नहीं है। वो यहूदी कह सकते थे कि हम यहोवा पर विश्वास करते हैं, लेकिन देखना ये था कि क्या उन्होंने उस समय के सुसमाचार पर विश्वास किया। उनके पास अनेक प्रकार के सुसमाचार भले ही रहे हों, समझे आप, लेकिन क्या वह ये कह सके कि मैंने इस समय के सुसमाचार पर विश्वास किया? जी हाँ, लहू सांझ के समय ही लगाया गया था। वो भी कह सकते थे कि लहू की क्या जरूरत है, हम यहूदी हैं। आज लोग कहते हैं कि मैं मसीह हूँ। मैं आपको अपनी लंबी अवधि की सदस्यता दिखा सकता हूँ। मैंने कभी कोई चीज नहीं चुराई और कभी भी अदालत में घसीटा नहीं गया, कह सकते हैं। बताइए कि कब मैंने व्यभिचार किया, एक बार भी बताइए कि कब मैंने इस प्रकार का कोई काम किया, आप यही कहेंगे। देखिए कि इन बातों से कुछ भी काम नहीं चलेगा, नहीं कुछ भी नहीं। चाहे कितनी भी वाचाएं हों, चिन्ह के बिना वे प्रभावहीन हैं, रद्द हैं। आप कहेंगे कि मैं तो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता हूँ, मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या हैं। बिना परमेश्वर की वाचा के उसका प्रकोप आप पर आ पड़ेगा, समझे आप। ये सच है, आपका गुनाह आपको पकड़वाएगा। आप क्या है? अविश्वास करना। आपने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, वचन पर अविश्वास किया है। आपने उस चिन्ह की गवाही पर अविश्वास किया है जिसने स्वयं को हमारे मध्य में प्रकट किया। आपने भले ही उस पर विश्वास न किया हो, परंतु पवित्र आत्मा के उसी चिन्ह को लेना ही होगा। यही इस समय की वाचा है।
आप भले ही कहते रहिए कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि सच्चाई यही है, मैं मानता हूँ कि ये बात सच है, इससे कुछ भी भला ना होगा। ऐसा कहना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बचने के लिए उस चिन्ह को लगाना होगा। माना एक यहूदी वहाँ खड़ा है और मरते हुए मेमने के ऊपर अपने हाथ रखे लहू की गर्माहट को अनुभव करते हुए कह रहा है कि यही यहोवा है, और वहीं पर एक याजक खड़ा यह देखकर कहता है कि मुझे विश्वास है कि यह मनुष्य सत्य कह रहा है, लेकिन वो लहू को अपने घर के द्वार पर नहीं लगाता है। वो अपनी सहभागिता, अपनी पहचान उस झुंड के साथ नहीं करना चाहता है जिन्होंने की मतवाले से होकर वो लहू अपने द्वार पर लगाया है। वो नहीं चाहता कि वो उनमें गिना जाए। इस हालत में भले ही वो कितना बड़ा याजक हो, कितना अधिक वचन का ज्ञान चाहे अपने पास रखता हो, कितना बढ़िया उसका जीवन रहा हो, कितने ही काम उसने किए हों, उसका कुछ भला ना होगा। उसने कितने ही बलिदान चढ़ाए हों, कितने ही गरीबों को दान दिए हों, बिना चिन्ह पाए वो नाश हो जाएगा। पौलुस कहता है, चाहे मैं अपना बदन जलाने को दे दूं और अपना सब कुछ कंगालों को दान कर दूं, और मुझमें विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं और आदमियों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं और दूसरे दूसरे काम करूं, मैं कुछ भी नहीं हूं अगर वो चिन्ह मेरे पास ना हो, चिन्ह मुझ पर ना लगा हो। आज रात मैं इसी बात को कह रहा हूं कि प्रेम ही अव्वल है। जब तक प्रेम ना हो, मैं कुछ भी नहीं। हो सकता है आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला हो, विश्वास की प्रार्थना से बीमारों को चंगा किया हो, आपने भले ही ये सब काम किए हों, लेकिन अगर वो चिन्ह नहीं है तो आप परमेश्वर के प्रकोप की सीमा में खड़े हैं। आप चाहे विश्वासी हों और वचन का प्रचार भी करते हों। लिखा है कि वे उस दिन बहुत से आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरा वचन प्रचार नहीं किया, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? ये मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटेकोस्टल लोग हैं जो ऐसा कहेंगे। यीशु उनसे कहेगा, हे अधर्मियों, कुकर्मियों, मुझसे दूर हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब मैं वो चिन्ह देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। परमेश्वर उस समय बस चिन्ह ही देखना चाहेगा। सांझ के समय का संदेशा यही है कि चिन्ह अपनाया जाए। शैतान ने बहुत सा धोखा देने वाली बातें, झूठी गवाहियां, झूठे संकेत की पवित्र आत्मा मिल गया आदि आदि फैला रखे हैं। उन्हें भूल जाइए। वो समय आ गया है अल्पविश्वासी बने रहकर या झूठे चिन्ह लेकर आप नहीं बच सकते। आपको सच्चे चिन्ह को अपने ऊपर दिखाना जरूरी है। आज वो समय है जब वो चिन्ह समय हमारे मध्य में अपने को सत्य प्रकट कर रहा है, अपनी पहचान दे रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि वही यीशु है जो कल आज और युगानुयुग एकता है, और वो एकदम परमेश्वर के वचन का सत्य प्रकाशन है। इसी चिन्ह को लेना है। आप उस मनुष्य के बारे में क्या कहेंगे जो ये कहे कि मैंने चिन्ह पा लिया है और इस वचन का इनकार करे? आप चिन्ह पाकर ऐसा कर ही नहीं सकते। चिन्ह का होना बहुत जरूरी है। लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, यही कहा गया था। अब लहू में का वो जीवन, वो पवित्र आत्मा ही आपके लिए चिन्ह है। जरा सी भी देर किए बिना उसे ग्रहण कीजिए। पवित्र आत्मा ही चिन्ह है। मुकदमा खारिज हो चुका है। जी हाँ श्रीमान। अब याद रखिए कि इससे कुछ मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं, कितने गिरजे आपके हैं, कितनी बार आपने जय जयकार करके उछली कूद मचाई है, कितने अच्छे अच्छे काम आपने किए हैं। इन सब से कुछ भी ना होगा अगर चिन्ह ना लिया गया। ये सांझ का समय है। वैसा सब करना लूथर के समय में और वेस्ली के समय में ठीक था, लेकिन इस समय से काम नहीं चलेगा। नहीं श्रीमान, मेमने को बलि से पूर्व संवारने का समय अपनी जगह ठीक था। जो लोग मेमने की कुर्बानी देने व लहू उपलब्ध होने से पूर्व मर गए, उनकी बात और है। हाँ श्रीमान, वे लोग अपने अच्छे विवेक के साथ, कॉन्शियस के साथ जिए और चले गए। उनका न्याय उसी के आधार पर होगा। अगर वो पहले से चुने लोग थे तो उनके समय के सुसमाचार ने उन्हें बेदार किया होगा, वरना नहीं किया होगा। यही बात है, परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी इच्छा अनुसार लोगों का न्याय करता है, करुणा करता है, उन्हें दंडित करता है। वो परमेश्वर है, बस यही बात है। वो जिस पर चाहे करुणा करता है और जिसको चाहे उसे दंड देता है। एक यहूदी तो खतने के द्वारा सीधे सीधे बता सकता है कि वो विश्वासी है। यहाँ बहुत से ऐसे सिद्धांतवादी मनुष्य हैं जो पवित्र शास्त्र उठाकर कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं, क्योंकि यीशु ने कहा था कि विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे वाली बात बकवास है। अगर ऐसे ऐसे विचार हैं तो अभी उन्हें चिन्ह नहीं मिला है। चाहे कितना भी विश्वास हो, वो बेकार है। यहूदी लोगों के खतने की तरह बेकार है। वो कहते हैं कि मैं तो यहूदी हूँ, मैं क्यों वहाँ जाकर उन लोगों के झुंड में शामिल हूँ, वहाँ उनकी तरह से व्यवहार करूँ। वो ऐसा कह सकते हैं। मूसा सड़कों पर इधर उधर प्रचार कर रहा था, सांझ के समय का सुसमाचार सुनो। 14 दिन के बाद तुम सब एक जगह जमा होना और मेमने को मारकर उसकी बलि चढ़ाना। पूरा इसराइल यही करेगा, मेमने को मारेगा, उस पर अपने हाथ रखकर स्वयं को उससे उस बलि से जोड़ेगा और उसका लहू द्वार पर लगाया जाएगा। और जब मैं उस लहू के चिन्ह को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा और नाश न करूंगा, क्योंकि लहू का चिन्ह इस बात का प्रतीक ठहरेगा कि तुमने उस मेमने की मृत्यु को अपने प्रति ग्रहण कर लिया है जो मैंने तुम्हें दिया है। लहू ही चिन्ह ठहरा था और अब पवित्र आत्मा ही चिन्ह है। उसी समय बाद तुम पवित्र आत्मा से भर दिए जाओगे। जब यीशु का लहू बहा तो उसके बाद पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का चिन्ह बड़े वेग से सनसनाती हवा की तरह उनको दिया गया। प्रत्येक चेले और प्रेरितों का यही उद्देश्य था कि वे इस चिन्ह को पाएं। इसीलिए वहाँ पौलुस ने उनसे पूछा था, क्या तुमको विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा मिला? पत्रस ने यही कहा था कि तुम में से हर एक अपने पापों के लिए पश्चाताप करे और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान में पाओगे।
आमीन। यही बात है कि आप पवित्र आत्मा पाकर मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। जब यहूदी गिरजों की बेदारी और धूमिल हो गई तो हम अन्य जातियों को परमेश्वर ने अवसर दिया और आज हम उनकी तरह से कुछ भी सुन नहीं पा रहे हैं। अब पवित्र आत्मा बचे हुए लोगों और दुल्हन को अन्य जातियों में से इकट्ठा करने और अपने नाम के लिए दुल्हन को लेने आ पहुँचाए।
देखिए कि मेरा अभिप्राय क्या है, वचन यहाँ पर क्या समझाना चाहता है। अगर चिन्ह नहीं पाया और दिखाया गया तो परमेश्वर की वाचा प्रभावी नहीं होगी। चिन्ह का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप ये कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं और वचन का पालन नहीं करते तो आप विश्वास नहीं करते हैं। चाहे आपका खतना हुआ हो, बपतिस्मा लिया हो, किसी भी कलीसिया के आप रहे हों, आपने भले ही कितने ही अच्छे अद्भुत काम किए हों, अगर पवित्र आत्मा रूपी चिन्ह वहाँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक बड़े बढ़िया पवित्र शास्त्र के अध्ययनकर्ता ने मुझसे पूछा था, बिली इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया, आदमी इससे अधिक और क्या कर सकता है कि उस पर विश्वास करे। मैंने कहा ये सच है डॉक्टर, ये ठीक है, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, पवित्र शास्त्र यही बताता है। आप ठीक कह रहे हैं, जहाँ तक आप पहुँचे हैं ये बात ठीक है। वो 12 जन जो प्रतिज्ञा किए देश कनान की टोह लेने गए थे, जब तक वो कनान की ओर बढ़ते रहे तब तक उनके विश्वास वगैरह बलवती रहे थे, परंतु जब वे सीमा पर पहुंचे तब उनके अविश्वास के कारण उन्हें अस्वीकार कर लिया गया। मैंने कहा आप बैप्टिस्ट लोग जहां तक पहुंचे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन क्या विश्वास करते हुए तुमने पवित्र आत्मा पाया? याद रखिए कि परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को मान्यता दी। ये सच है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसे खतना रूपी चिन्ह दिया। ये अर्थ नहीं था कि उसके शरीर के खतने से उसकी आत्मा का कुछ संबंध था, लेकिन वह चिन्ह था जो ये प्रकट करता था कि उसका विश्वास, उसकी धार्मिकता परमेश्वर के निकट कबूल कर ली गई है। और वह हमें आज पवित्र आत्मा का चिन्ह देता है कि उसने हमें विश्वासी के रूप में ग्रहण कर लिया है, क्योंकि कहा गया है कि पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दान में मिलेगा। ये प्रतिज्ञा आपके लिए दी गई है। अब इस खास बात को पकड़ लीजिए, चाहे वे यहूदी लोग कितने ही खतना किए इत्यादि रहे हों, उन्हें उस लहू के चिन्ह को दिखाना ही था। अगर वो चिन्ह वहाँ नहीं था तो उनके लिए परमेश्वर की वाचा प्रभावी नहीं थी। आज भी वैसी ही बात है, वही बात है। इससे कुछ मतलब नहीं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं या आपको पवित्र शास्त्र का कितना ज्ञान है। आप पवित्र शास्त्र के एक अच्छे अध्ययनकर्ता हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप एक विश्वासी हैं और बहुत कुछ हैं, लेकिन वो चिन्ह आपके पास होना जरूरी है। आप कहेंगे कि भाई ब्रनम मैं एक अच्छा व्यक्ति रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि वो आदमी एक ऐसा बढ़िया व्यक्ति है जिसका कोई सानी नहीं है, मैंने उसे कभी कोई गलत काम करते नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर के यहाँ बस एक चीज चाहिए और वह उसका चिन्ह है, पवित्र आत्मा है। और आप अपनी ओर से इसका कोई और विकल्प नहीं ढूंढ सकते। आप बिना मेमने को जमा किए द्वार पर लहू का चिन्ह नहीं लगा सकते और ना ही वो चिन्ह प्रदर्शित कर सकते हैं। लहू इस बात का पक्का चिन्ह है कि मेमने की बलि दी गई है। झूठ मूठ विश्वास नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा ही वो पक्का चिन्ह है कि आपके लिए आपका मेमना कुर्बान किया गया है और आपने उसका चिन्ह अपने ऊपर ले लिया है और उसका जीवन अब आप में है। देखिए कि इसमें दिखावटी बात नहीं है, इसकी कोई नकल नहीं चलेगी और ना ही बस यूं ही मानने से काम चलेगा। आप में उसका जीवन होना जरूरी है और आप स्वयं जानेंगे कि वो चिन्ह आप में है। सारी दुनिया जान जाएगी कि आपके पास वो चिन्ह है। इस बात से कुछ मतलब नहीं कि अमुक व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना ही पवित्र शास्त्र का ज्ञाता हो, कितना ही अच्छा सदस्य हो, कैसा ही बढ़िया जन हो, अपने नामधारी गिरजे का बड़ा आदमी हो, रोमन गिरजे का शासकीय अधिकारी हो, कोई भी क्यों ना हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि इसराइल आज की कलीसिया की प्रतिछाया या नमूना ही था जो प्रतिज्ञा किए देश को पाने के लिए चला था। आज भी ये कलीसिया अपनी यात्रा में है, लेकिन जब सांझ का समय आया और यात्रा शुरू हुई तो वहाँ एक ही मांग थी कि चिन्ह है या नहीं। उस समय यह नहीं देखा जाना था कि अमुक यहूदी कितना धार्मिक है और वो अपनी फसल कितनी बढ़िया उगाता है या पड़ोसियों के साथ उसका व्यवहार कितना अच्छा है। तब यह नहीं देखा जाना था कि उसने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं या वो कलीसिया का कितना बढ़िया सदस्य है या कि वह कितना दशमांश देता है। ये सारी बातें ठीक हैं, अच्छी हैं। वो अच्छा भला जन था, सभी उसकी अच्छाइयों को मानते थे, लेकिन लहू के उस चिन्ह के बिना वो नाश कर दिया गया। काश परमेश्वर मेरी सहायता करे, ये मूल तथ्य मैं आपको समझा सकूं और टेप में भी ये बात लोगों की समझ में आ सके। आपने चाहे कितना वचन क्यों ना प्रचार किया हो, चाहे कितनी दुष्ट आत्माओं को क्यों ना निकाला हो, अन्य भाषाएं बोली हो, कितना ही जय जयकार किया हो, नृत्य किया हो, आत्मा में उछले कूदे हो, मगर चिन्ह के बिना सब बेकार है। आप पूछेंगे क्या ये संभव है? पौलुस कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और अपना सारा धन कंगालों को दे दूं, अपनी देह जलाने को दे दूं, और चाहे मुझे इतना विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा सकूं, फिर भी मैं कुछ भी नहीं अगर वो चिन्ह ना हो। इन बातों पर नहीं, मगर चिन्ह पर ही भरोसा कीजिए। उससे कुछ सरोकार नहीं कि आपने क्या कुछ किया है या आप कितने अच्छे हैं। जब परमेश्वर का प्रकोप या जलजलाहट उन्हें ली जाएगी तो वो सिर्फ चिन्ह को देखेगी, पहचानेगी। वो तो चिन्ह ही है जो चाहिए और उसी का मूल्य चुकाया गया है। वो मूल्य यीशु मसीह का अपना जीवन था जो उसने हमारे लिए दिया है, और उसका आत्मा वो चिन्ह बनकर आपके पास आता है कि आपने उसके जीवन को ग्रहण कर लिया है। और वह चिन्ह न केवल प्रत्येक रविवार को वरन दिन रात आपके पास रहना है, हर समय वो चिन्ह आपको रखना है। परमेश्वर कहता है कि जब मैं आऊँ तो लहू का चिन्ह जरूर होना चाहिए। आप कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप चिन्ह को नकारते हैं तो फिर विश्वासी कैसे रहेंगे? ये बात आपके खिलाफ जाएगी। देखिए कि चिन्ह का इनकार करना आपकी गवाही के खिलाफ जाएगा कि आप विश्वास करते हैं। पवित्र शास्त्र का ज्ञाता हो, गिरजे का सदस्य हो, जो भी आप हो श्रीमान, सब कुछ बेकार रहेगा। चाहे आपके पिता प्रचारक और माता संत हो, ये सब काम ना आएगा, उन्हें खुद इसका जवाब देना होगा। कोशिश करके देखिए कि लोग परमेश्वर को बड़ा, प्राचीन, बूढ़ा, कुछ दादा समझते हैं और स्वयं को समझते हैं कि वो उसकी संतान है, और वो कहते हैं कि रिकी एल्विस वगैरह बनने में कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, परमेश्वर के कोई पोते पोती नहीं है, वो पिता है। उसकी संतान बनने के लिए नया जन्म पाना जरूरी है। वह कोई बूढ़ा प्राचीन किस्म का परमेश्वर नहीं है कि आप खुद को उसके पोते पोती मान लें। वह न्याय करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बताता है कि वो न्यायी है, उसका प्रकोप भयंकर है। इस बुलावे में मत रहिए कि परमेश्वर चूंकि भला है, वो एक दिन आएगा और पाप की हालत में आपको स्वर्ग में उठाकर ले जाएगा। अगर अब वो ऐसा कर सके तो उसे फिर हवा को ही ले जाना था। क्या तो आपको उसके वचन पर विश्वास करना है या नाश होना है? और जब आप उसके वचन पर विश्वास करेंगे तो चिन्ह आप पर उतर आएगा। रात मिस्र में मौत किसी भी क्षण आने वाली थी। बड़ा भयानक समय था। उनके सारे पर्वों के मनाए जाने और उपवास रखने का समय था। परमेश्वर ने स्वयं उनके मध्य में आकर अद्भुत चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाए थे। ये क्या था? एक क्षण रुकिए। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उन पर प्रकट किया था और बचने का अवसर दिया था। अब उन समस्त अद्भुत चिन्हों को देखकर वो कह नहीं सकते थे कि इनमें कुछ नहीं है, ये बकवास है, ये तो आंखों का भ्रम है। वहाँ समुद्र में से लाल मिट्टी का विस्फोट हुआ था जिससे समुद्र लाल रंग का बन गया था, और वो ओलों का बरसना और मेंढकों का चले आना। परमेश्वर ने स्वयं अपने लिए जगह बनाकर अपना वचन अपने भविष्यद्वक्ता के मुंह में डाला था, और जब उसने वही वचन कहा तो वैसा ही हुआ। उन्होंने वो सब देखा था, वो उससे इनकार नहीं कर सकते थे। मूसा ने जो कहा था वह वचन उसे परमेश्वर ने दिया था और वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसे परमेश्वर सा बनाया था, मूसा उनके लिए परमेश्वर सा था। परमेश्वर ने कहा था कि मूसा तू परमेश्वर सा होगा और हारून तेरा भविष्यद्वक्ता होगा। तू परमेश्वर सा होगा क्योंकि तेरी आवाज के द्वारा सारी कही गई आपदाओं को मैं उत्पन्न करूंगा, मैं स्वयं बोलूंगा और वैसा ही होगा, और लोग इसका इनकार नहीं कर पाएंगे। जो कुछ तू कहेगा वैसा ही होगा। हे परमेश्वर, इसी में मूल तथ्य छिपा है, मैं तुझे वैसा ही करके दिखाऊंगा। हे प्रभु, मिस्री लोगों ने वैसा ही होता देखा,
उन्होंने वे सब चमत्कार और अद्भुत काम सांझ के समय से पूर्व या सांझ के समय में देखे थे। परमेश्वर ने मिस्रवासियों को अपनी भलाई दिखाई थी और ये दिखा दिया था कि वो सब कुछ वापस लेने में और चंगाई देने में सामर्थी हैं। वहाँ पर उस समय नकल करने वाले जादूगर मौजूद थे जो हर कहीं पर मिल ही जाते हैं। वहाँ पर येंस और यम्ब्रेज नामक जादूगर थे जिन्होंने मूसा की नकल करी, लेकिन वास्तविकता की बात आई तो वह उसकी नकल न कर सके। ठीक यही बात है। वे कुछ दूर तक तो साथ साथ चले, पर थोड़े समय बाद उनकी नकल की कलाई खुल गई। और क्या पवित्र शास्त्र ये नहीं बताता कि अंत के दिनों में फिर वैसा ही होगा जैसे कि येंस और यम्ब्रेज ने मूसा का सामना किया और कुछ समय तक चलते रहे, फिर उनकी बेवकूफी प्रकट हो गई थी, वैसा ही अब फिर से होगा। आज भी विकृत दिमागों और दूषित प्रवृत्ति के लोग सत्य को अपनी दूषित दृष्टि से देखते हैं। उनके पास आज बड़ी बड़ी सभाएं हैं, लोग हैं, साधन हैं, बड़ी सुंदरतम बातें हैं, परंतु उनके अंत का समय भी आ पहुंचेगा। इस चिन्ह को पाकर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, इसके वचन को थामे रहिए, उससे इधर उधर मत होना, पूरी रीति से वचन में बने रहना। पवित्र शास्त्र यही बताता है, वहाँ मृत्यु आ पहुंची थी। परमेश्वर उन पर दया, सामर्थ्य और अपने चिन्ह प्रकट कर चुका था। अब यहाँ थोड़ी देर कुछ क्षणों के लिए रुक कर हम विचार करें, अपने विचारों को जरा पीछे की ओर ले जाकर ये देखें कि परमेश्वर ने अंत के दिनों के लिए क्या प्रतिज्ञा करी थी। मैं असमंजस में हूँ कि हमने उनको देखा भी है या नहीं कि अंत समय में क्या क्या घटित होगा। उसने वहाँ पर वो सभी आश्चर्य कर्म कर दिखाए थे, परंतु लोगों ने पश्चाताप करने या अपने इस समय के सुसमाचार पर विश्वास करने की कोई इच्छा जाहिर नहीं करी थी। आज भी लोग वचन पर विश्वास नहीं करना चाहते, हालांकि सारी बातें पूरी तरह से उन पर प्रकट कर दी गई हैं और सभी कुछ बता दिया गया है। और जब आप ऐसी बातों और हालातों को देख रहे हैं तो ये एक चिन्ह है कि अब इसके बाद न्याय का समय आ पहुंचने वाला है। हमेशा से यही होता आया है और ये समय भी कोई अपवाद नहीं है। करुणा के बाद न्याय ही आता है। जब दया व करुणा व अनुग्रह को ठुकरा दिया जाता है तब न्याय के सिवा कुछ बाकी नहीं रह जाता। अब दृश्य ये है और देखिए कि प्रत्येक आत्मिक घटनाएं परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह है। सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिए, देखिए, सजग रहिए। प्रत्येक आत्मिक घटना जो कुछ भी घटित होता है वह एक चिन्ह है। हम संयोगवश यहाँ जमा नहीं हैं। ऐसी बातें संयोगवश नहीं होती, यह सब चिन्ह है। चिन्ह है कि शीघ्रता से सुरक्षित स्थान में हम जा सकें। नूह अपने समय में एक चिन्ह था। एलिया और यूहन्ना अपने अपने समय में चिन्ह थे। हर समय का सुसमाचार या वचन जो होता है वही चिन्ह होता है। देखिए कि क्या हो रहा है। सुसमाचार पर ध्यान दीजिए, एक चिन्ह है। ये चिन्ह है, जो कुछ भी होता है उसका एक अर्थ होता है। पहले कभी भी इस तरह का सुसमाचार नहीं दिया गया। इस प्रकार का सुसमाचार या वचन लूथर, वेस्ली व पेंटेकोस्टल काल में भी नहीं दिया जा सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं व आश्चर्य कर्म नहीं हो सकते थे। हालांकि पवित्र शास्त्र में इनके होने की प्रतिज्ञा दी गई है। देखिए कि हम बिल्कुल अंत समय में आ पहुंचे हैं। पहले ये बातें, ये घटनाएं नहीं हो सकती थीं। इस आज के समय से पहले ऐसा नहीं हो सकता था और अब उनका होना एक चिन्ह है। कितना अद्भुत चिन्ह है। हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अति शीघ्र इस चिन्ह के तले आ जाओ। देखिए कि कोई दूसरा नकली चिन्ह मत लीजिए। देखो, कोई भी दूसरा चिन्ह कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं लेना है। ये कल्पना करने की बात नहीं है। आप वचन को थामे रहिए जब तक कि वे चिन्ह ना पालें, यानी जब तक मसीह का पूरा दिमाग, संपूर्ण सामर्थ्य पूरी तरह से आप में ना आ पाए, जब तक दुनियावी सारे गंदे विचार आप में से ना निकल जाएं, और जब तक आपके हृदय की संपूर्णता मसीह के लिए इच्छा न बन जाए। देखिए, तब आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है। यीशु ने कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ये बात अल्प विश्वासी या अविश्वासी के बारे में नहीं कही गई थी। इस बारे में जरा सा भी जोखिम नहीं उठाना है कि हम यूं ही कुछ भ्रम पूर्वक मान लें। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय का ये सुसमाचार गिरजों व लोगों के लिए एक चिन्ह है। क्या आप मेरी इस बात की गहराई समझ पा रहे हैं? देखिए कि टेपों के द्वारा ये वचन दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। देखिए कि ये समय स्वयं एक चिन्ह है। यही वो समय है जब पवित्र आत्मा का चिन्ह आपको उसकी परिपूर्णता के साथ पाना है। पहले किसी भी समय में यह नहीं होना था। उस मिस्र के समय के आने से पहले परमेश्वर ने जो तैयारी उन्हें दी थी उसे देखिए। अब पवित्र शास्त्र कहता है कि वो सारी बातें हमारे लिए उदाहरण थी। देखिए कि मिस्र का न्याय करने से पहले परमेश्वर ने वहाँ तैयारी करी थी। वहाँ उसने क्या तैयारी करी थी? वह अपना काम करने का ढंग कभी नहीं बदलता। पहली बार पहली तैयारी के रूप में उसने वहाँ अपना एक नबी भेजा जिसके पास एक वचन था अपने लोगों के लिए। पहले उसने नबी को अपने वचन सहित वहाँ भेजा था। उसके बाद उसने उस भविष्यद्वक्ता को मान्यता देने के लिए आग के सतून को उस पर प्रकट किया। और तीसरी बात ये करी कि वहाँ चिन्ह दिया गया, यह एकदम सत्य बात है। उस टोकन का क्या मतलब था? पूरा आश्वासन जिसमें पूरी सुरक्षा है। देखिए, पहले वचन सहित भविष्यद्वक्ता आया जिसे उसने आग के सतून से मान्यता दी, फिर चिन्ह दिया कि लहू का चिन्ह लगाओ तो ये तुम्हारी मृत्यु के बदले में मुझे स्वीकार होगा। तब परमेश्वर उस लहू के चिन्ह को देख रहा था जिसका अर्थ था उस चिन्ह लगाने वाले ने उस आग यानी उस भविष्यद्वक्ता व उसके वचन को ग्रहण कर लिया है। और यह कि आपके लिए जो विकल्प परमेश्वर ने दिया है आपने उसे ग्रहण किया है। और तब आप उस बलिदान किए लहू की रासायनिक जीवन प्रक्रिया के साय में सुरक्षित हुए जो आपके लिए बहाया गया। प्रभु, क्या ही सिद्ध नमूना है। आप लहू के अंदर हैं, आज आप पवित्र आत्मा के चिन्ह के अंदर हैं। देखा आपने, आपने अपने समय का वचन ग्रहण कर लिया, चिन्ह पा लिया। और ये कि आपने उसकी सामर्थ, उस आग का सतून, उस पिलर ऑफ फायर पर विश्वास कर लिया, या चिन्ह पाने का यही अर्थ है। अब देखिए कि केवल विश्वास करना ही काफी नहीं है, केवल वहाँ सभाओं में जाकर यूँ चले आना जहाँ ये चिन्ह है आपके लिए ना काफी है। इस तरह के व्यवहार से आप और बुरी दशा में चले जाएंगे, क्योंकि जो कोई जानता है कि भलाई क्या है और नहीं करता वह पाप करता है। यह बात यीशु ने किनारे किनारे कट कर चलने वाले अल्प विश्वासियों के लिए कही थी। इब्रानियों की पुस्तक के छठे अध्याय में लिखा है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थों का स्वाद चख चुके हैं, अगर वो भटक जाएं तो फिर उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। जिस लहू से उन्हें नया बनाया गया था उसी पर वे कलंक लगाते हैं जिसमें जीवन है। अब चिन्ह मात्र लहू नहीं रहा, वरन उसमें रासायनिक प्रक्रिया से जुड़ा जीवन चिन्ह है। वहाँ पहले उस पशु के लहू में जीवन नहीं था, तब चिन्ह और लहू स्वयं बना। वास्तव में लहू द्वार पर लगाना पड़ा था, परंतु अब चिन्ह पवित्र आत्मा है। हम अभी इस बारे में गौर करेंगे कि अब लहू में छिपा जीवन जो यीशु के लहू में था वही चिन्ह है। हम अब ये साबित करेंगे, अब आपका अपना पुराना जीवन मृत हो गया है और आप मसीह यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की छाप से परमेश्वर में जा छुपते हैं। मसीह में जो बुद्धि थी वह अब आप में आ जाती है, और मसीह और पवित्र शास्त्र व वचन एक ही हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तब इस प्रकार आप वचन परमेश्वर व मसीह एक हो जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो कहोगे तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। आप समझे, वहाँ पर मूसा के मुंह में परमेश्वर का वचन उसकी सामर्थ दी गई थी कि वे उन्हें फिरौन के सामने बोले। जब उसने कहा मेंढक आए तो आए, कहा जाए तो चले गए, कुटकियां आए तो आईं, चली जाएं, कहा तो चली गईं। आमीन। तब समस्त इसराइल से कहा गया था कि वे उस लहू के चिन्ह को लें। सारे इसराइल को चिन्ह ग्रहण करना था। कहा गया था कि जब मैं इस चिन्ह को देखूंगा तो तुम्हें छोड़कर गुजर जाऊंगा। हे प्रभु, कैसा बड़ा इत्मीनान यकीन उन्हें मिला था। मिस्र से इसराइल का बाहर आना एक नमूना और आज के लिए एक प्रति नमूना था। मिस्र आज के गिरजों का व इसराइल दुल्हन का प्रतीक था। जिस प्रकार इसराइल मिस्र से बाहर आया, उसी प्रकार आज दुल्हन गिरजों से बाहर चली आई है। कुछ ऐसा वहां होना था कि इसराइल मिस्र से बाहर आ सके, उसे वहां से बाहर आना था, और उसका बाहर आना एक उदाहरण था। वहाँ मिस्र रूपी गिरजे दुनियावी बातों वो पाप में लिप्त थे और उस चिन्ह आदि की कोई परवाह नहीं कर रहे थे। उन्होंने उस पर विश्वास तक न किया था, परंतु इसराइल ने उस चिन्ह से प्रेम किया क्योंकि वह उसके लिए उद्धार था। ओ, इससे हमारे मन अब आनंदित होने चाहिए। एक गिरजो अपना लो, क्या तुम ऐसा न करोगे? सूरज को छिपने नहीं दीजिए, नहीं 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 नहीं, रात दिन एक कर दीजिए, नहीं पूरी ताकत लगा कर ये चिन्ह ग्रहण कीजिए। कोई जोखिम मत उठाना, कोई विकल्प काम नहीं देगा। मेरे बच्चों, आपको चिन्ह रूपी पवित्र आत्मा लेना ही होगा। आप कहते हैं जी हाँ, मैं सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ, जी ये ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, मगर आपके पास चिन्ह होना जरूरी है। हे ब्रैनम टैबरनेकल, क्या तू सुन पा रहा है? आपको वह चिन्ह दिखाना जरूरी है। इस चिन्ह के बिना आपका सारा विश्वास करना बेकार है, समझे आप? आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, वचन जो कहता है उसे आप सुनते हैं, सभाओं में जाते हैं, ठीक तरह से वचनानुसार जीने का प्रयत्न करते हैं, यह सब बहुत अच्छा है, परंतु काफी नहीं है, चिन्ह चाहिए। जब मैं वो चिन्ह देखूंगा, ऐसा ही कहा गया था, वही चिन्ह था। अब मात्र लहू का चिन्ह लगाना काफी नहीं है, लहू की रासायनिक वास्तविक प्रक्रिया में छिपा जीवन वहाँ मृत हो जाता था, क्योंकि वह पशु का जीवन था, लेकिन अब यहाँ पर उसका अपना जीवन जो लहू में था मौजूद है। लहू की रासायनिक प्रक्रिया पवित्रीकरण का चिन्ह मात्र है, परंतु उसके लहू का जीवन ही अब चिन्ह है, क्योंकि बिना खतना किए, बिना चिन्ह पाए, आप उसकी वाचा में शामिल नहीं गिने जाएंगे। सभी बातें एक साथ लागू होती हैं। यदि आप कहते हैं कि आपका खतना वचन से हुआ है, तो आप वचन पर विश्वास करेंगे, और यदि आप वचन पर विश्वास करेंगे तो चिन्ह अवश्य आपको मिलेगा, तो चिन्ह आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि पश्चाताप करो, तुम में से प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। यही बात है। हे मेरे प्रभु, वादा किए देश के लोगों के लिए क्या तैयारी करी गई थी उसे देखिए। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने क्या किया था। पहले तो उसके अपने लोग थे जिनके लिए उसने एक देश तैयार किया था, और अब प्रतिज्ञा किए हुए देश में उन्हें ले जाने से पहले उसने कुछ तैयारियां करी, और ये सब उनके लिए थी जो उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने के लिए पहले से चुने गए थे। परमेश्वर की तैयारी क्या थी? उसने वचन सहित एक नबी को भेजा, और आग के सतून से उसको लोगों के समक्ष मान्यता दी, पहचान दी, और एक चिन्ह दिया, ताकि लोग निश्चिंत हो सकें कि यह सब सत्य है। ये सच बात है कि वह चिन्ह उस कलीसिया के लिए शांतिदायक और संतोषप्रद बना। इस प्रकार इसराइल का मिस्र से बाहर आना हमारे लिए नमूना था। यह डिनोमिनेशन से बाहर आ रही आज की कलीसिया की प्रतिछाया थी। सभी गिरजे नहीं जो गिरजों से बाहर आए, या लोग जो गिरजों से बाहर आए, वरन मेरा मतलब दुल्हन से है, आप समझे। कुछ लोग जो गिरजों में नहीं हैं, गिरजों में रहने वालों की तरह बुरे हैं, वरन कुछ की हालत तो उनसे भी बदतर है। मेरा कथन यह है कि वे लोग जो इस चिन्ह को पा रहे हैं, चिन्ह प्रत्येक वचन से सहमति रखता है, वह सहमति रखेगा क्योंकि वह स्वयं वचन है। यह वह जीवन है जो वचन में था। यीशु ने कहा था कि मेरी बातें आत्मा हैं और यही जीवन है। जब मूसा ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म व चिन्हों सहित मिस्र में अपनी सेवकाई शुरू करी, तो आप देखिए इसराइल सारे मिस्र देश में से अपने गृह स्थान गोशेन में जमा होने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ घटित होने वाला है। आहा, ये क्या ही सुंदर नमूना है। आहा, वो पूर्व व पश्चिम से आए हैं, वे दूर दूर से यहाँ आए हैं। शायद आपने गीत सुना है, ताकि अपने महाराजा के साथ उसके अतिथि बनकर भोजन करें। ये यात्री कितने आशीषित हैं, ये प्रभु के पवित्र मुख को देख रहे हैं जो दिव्य प्रेम से चमक रहा है। वे उसकी महिमा और अनुग्रह के आशीषित भागीदार बनकर उसके ताज में जड़े हैं। यीशु शीघ्र आ रहा है, हमारी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाएगी। जो लोग पाप से छूट गए हैं, क्या ही अच्छा हो कि प्रभु उन्हें लेने आ जाए। तब उन्हें क्या मिलेगा, असीम आनंद या दुख निराशा? जब हमारा प्रभु अपनी महिमा में आएगा, तो हम उसके साथ हवा में ऊपर मिलेंगे। चिन्ह को लेकर उसे दिखाना। यीशु ने कहा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वास्तव में हम अंतिम दिनों में हैं। लोग गोशेन में जमा हो गए थे, वे तैयार थे, उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ घटित होने जा रहा है। वे ठीक उनकी तरह से थे। आप जानते हैं कि जब बत्तखों के झुंड में इकट्ठा होने का समय आता है, तो वे एक स्थान की ओर दौड़ पड़ती हैं। मधुमक्खियां आदि सभी तुरंत तैयार होकर एक जगह जमा होने लगती हैं। कोई सहज ज्ञान उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा लोगों को अपनी ओर खींचता है। जब परमेश्वर का क्रोध व प्रकोप उंडेले जाने का समय आने वाला होता है, तब नर व मादा करके बत्तखें जमा होती हैं। नर और मादा के रूप में कलहंस पक्षी जमा होते हैं, नर व मादा घोड़े जमा होते हैं। कोई ताकत उन्हें खींच रही होती है, क्योंकि वो पहले से चुने हुए हैं। इनके अलावा बाकी सभी नाश हो जाते हैं, और बाकी सभी नाश हो जाते हैं, नूह के समय में जिन्होंने इस खिंचाव को अनुभव किया उन्हें पता था कि नौका तैयार करी गई है, यकीन था कि वर्षा होने वाली है। उन जानवरों को आभास हो गया था कि बारिश आने वाली है। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि दिखाई क्या दे रहा है या लोग क्या कह रहे हैं, परंतु उन्हें पता था कि वर्षा आने वाली है। उनके अंदर से कोई उनसे कह रहा था कि जल्दी से उस नौका में चले जाओ। वह नौका ही एकमात्र जगह होगी जहाँ सुरक्षा होगी, क्योंकि परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा वचन देकर कहा था कि वह नौका ही एक चिन्ह है, उसमें चले आओ क्योंकि वर्षा होनी है। और जोड़ा जोड़ा करके वे सभी जानवर उसमें चले गए, सारे पशु पक्षी दो दो करके उस नौका में चले गए। इससे क्या कि लोग क्या कहते हैं, वे उसमें जा चुके और बाकी सभी नाश किए गए। लोगों के चिन्ह के बाहर जितने थे सभी नाश हुए। कहा पवित्र आत्मा के चिन्ह के बाहर जितने लोग होंगे वे सभी नाश होंगे, चाहे गिरजों के कितने भी बढ़िया सदस्य हों, कितने ही भले क्यों ना हों। नूह के और मूसा के समय में भी कितने ही भले व अच्छे लोग थे, किंतु जो उस लहू के चिन्ह को पाने में असफल रहा था वह नाश हो गया था। जो उस कश्ती में आने में असफल रहा वो नाश हुआ, जो उस कश्ती में नहीं आ पाए नाश हुए, क्योंकि वो कश्ती मसीह था। पहले कुरिन्थियों 12 बाब में कहा गया है कि एक आत्मा के द्वारा एक ही देह में हमारा बपतिस्मा हुआ है। नामदारी गिरजे या डिनोमिनेशन में नहीं, वरन यीशु मसीह की देह में हमारा बपतिस्मा हुआ है, एक आत्मा के द्वारा। बड़े वर्णों में SPIRIT स्पिरिट, एक आत्मा के द्वारा हमको एक देह में डुबोकर बपतिस्मा मिला है। अगर ऐसा है तो चिन्ह द्वार पर लगा है, क्योंकि आप मसीह में शामिल हैं और मसीह स्वयं आपके लिए बलिदान बना और आप पर पड़ने वाला न्याय उसने चुका दिया। जब परमेश्वर इस चिन्ह को आप पर देखेगा तो कुछ न कह सकेगा। आप तब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर व मसीह एक ही हैं। आत्मा ने देहधारी होकर हमारे मध्य डेरा किया था, और वहाँ परमेश्वर है जो अपना स्वामी स्वयं है, और अब आप उसकी अपनी संतान हैं जो मसीह की उस देह में है। यही बात है, ये कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, वरन उसका पवित्र आत्मा है जो चिन्ह के रूप में पाना है, जिसे देखकर परमेश्वर आपको छोड़ देगा और नाश न करेगा। ये इसराइली लोग पूरे मिस्र देश में से एक जगह जमा हुए ताकि वे उस चिन्ह के तले आ सकें। इसी तरह से आज लोग मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकोस्टल आदि में से बाहर आकर एक जगह जमा हो रहे हैं ताकि इस चिन्ह के तले आ सकें। पहले की तरह से फिर से लोग जमा हो रहे हैं। सबसे पहले वहाँ आग का सतून दिखाई दिया, जिसके बारे में एक ने दूसरे को, उसने तीसरे को, और इसी तरह सबको संदेश पहुँचा, और उन्होंने एक जगह जमा होना शुरू किया। उन्होंने आना शुरू किया और परमेश्वर के चिन्ह को पहचाना और कहा कि न्याय द्वार पर आ पहुँचा है। तब उस भविष्यद्वक्ता ने कहा कि मैंने परमेश्वर से वचन सुना है और वो कहता है कि एक चिन्ह दिया गया है, लहू को द्वार पर लगाना है। मेमने को ज़बह करो और उसका लहू द्वार पर लगाओ, और यही चिन्ह होगा, क्योंकि मृत्यु आ पहुँचने वाली है। परमेश्वर का दास होने के नाते आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि पवित्र आत्मा का चिन्ह आपके देह रूपी द्वार पर नहीं है तो आत्मिक मृत्यु आप पर आ पड़ेगी। सारे गिरजे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में जमा हो रहे हैं, वे सब फिर से वापस कैथोलिक मत में जा रहे हैं, मगर जो सच्चे नए जन्म प्राप्त लोग हैं, दुल्हन हैं, बाहर आ रहे हैं। पेंटेकोस्टल डिनोमिनेशन की बात छोड़िए, क्योंकि वे तो पहले से इनमें शामिल हैं, मतलब वे मृत हैं, नाश होंगे। वे बाहर आए, कुर्बानी दी, परंतु वापस उन्हीं में चले गए। उन्होंने मसीह को द्वार से बाहर कर दिया, परंतु परमेश्वर तो चिन्ह देख रहा है, क्योंकि इन लोगों ने तो केवल अनन्य भाषाएं बोलने तक पर ही विश्वास किया और पीछे लौट गए। आप अन्य भाषाएं बोलने पर ही भरोसा मत कीजिए, कुछ नहीं, अगर वो चिन्ह यानी यीशु मसीह का अपना जीवन आप में होना चाहिए, इसका उसका खतना नहीं, मगर अपने पूरे व्यक्तित्व का खतना करिए, जब तक कि आप और मसीह एक ना हो जाएं, मसीह आप में हो और उसका जीवन आपके द्वारा जिया जा सके। अब देखिए कि समस्त मिस्र में से वे लोग वहां जमा हुए, देखिए कि उन्होंने क्या किया, और अब जबकि वैसा ही समय फिर आया है तो हमारे लिए भी यही आदेश है कि हम उनकी तरह से करें। क्या आप इस तथ्य को जानते हैं? देखिए कि भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा था, पैरा 226 स्टार्ट। अब हम इब्रानियों की पुस्तक के 10वें अध्याय में से पढ़ेंगे। यदि आप चाहें तो मेरे साथ इस अध्याय की एक या दो आयतें पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों 10:26 निकाल कर पढ़िए। जी हाँ, इब्रानियों 10वें अध्याय की 26वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम पाप करते रहें
मैं देख लूं क्या मैं ठीक पढ़ रहा हूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हाँ, दंड का एक भयानक बाण चूहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। सेवक महोदय, अच्छे मनुष्यों, सिद्धांतिक मनुष्यों, आप जो भी हैं आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे धूम्रपान छुड़ाया है। प्रियो, आप जानती हैं कि उसने आपसे छोटे बाल रखना और मर्दाने वस्त्र पहनना छुड़ाया है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया है। इतने पर भी यदि आप पीछे मुड़कर उसके लहू की वाचा को जिसके द्वारा आप पवित्र किए गए और यहाँ तक लाए गए हैं यदि अपवित्र ठहराए तो क्या होगा? ये तो उन खोजियों की तरह से होगा जो कनान देश की टोले ने भेजे गए थे और उन्होंने वहाँ देखकर ये कहा था, भाई ठीक है, देश अच्छा है परंतु उसे पाने में मुश्किलें हैं, हम उनके सामने टिड्डियों की तरह से दिखाई देते हैं। ये सभी लोग जंगल में मर गए क्योंकि वे किनारे किनारे चलने वाले विश्वासी थे। इतनी दूर आने के बाद केवल ये मत कहिए कि मैं सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ, परंतु वचन का पालन कीजिए, मसीह में आइए। आप कहेंगे कि भाई ब्रणम में प्रत्येक वचन पर जो सुनाया जाता है विश्वास करता हूँ, ये अच्छा है, ठीक है, पढ़ने सुनने में ये बात भली लगती है। वचन को ग्रहण कीजिए और हृदय में जगह दीजिए ताकि आपको वो चिन्ह अवश्य दिया जा सके, ताकि जो जीवन मसीह में था वह आप में आ सके। आ गया था कि जब मैं उस चिन्ह को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा और नाश न करूंगा। आज जब हम पृथ्वी पर बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह देखते हैं तो जानते हैं कि ये सब सत्य है। अब देखिए कि मैं काफी समय तक रुका रहा कि यह सुसमाचार आपको प्रचार करूं, और आपने अंत समय के चिन्ह देख लिए हैं और मैं वह सब कुछ जो मसीह ने बताया आपको प्रचार कर चुका हूं और दिखा चुका हूं। क्या ये बात सच है? आपको ये मानना होगा। हम अंत समय में हैं और मैं नहीं समझता कि कुछ होना बाकी रह गया है। आप कहेंगे कि उस पशु की छाप के बारे में क्या होगा जिन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं किया है और उसका इनकार कर रहे हैं, उन पर पशु की छाप लग चुकी है। देखिए कि उनको दंड बाद में दिया जाएगा। इसराइल में जुबली वर्ष में जब तुरी फूकी जाती थी तो प्रत्येक मनुष्य, आपने ध्यान दिया कि यीशु मसीह ने इस बारे में पढ़ते हुए केवल इसका आधा भाग ही पढ़ा था क्योंकि उस समय यह आधा भाग ही लागू था, समझे आप? और क्या लिखा था कि मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का। यीशु ने यहीं तक पढ़कर बंद कर दिया और बाद में का भाग कभी नहीं पढ़ा क्योंकि वह भाग आज के दिन के लिए था, आप समझ गए। उसने उसके एक भाग को ही पढ़ा जो उसके समय के लिए था और अब यही बात है जो आज करने जा रहा है। यही वह बात है जो वो अपने अभिषिक्त आत्मा के द्वारा गिरजों से कह रहा है। अब वो समय है जो आ पहुंचा है, भाइयों इस बात को ग्रहण करिए, लोगों इसे ग्रहण कीजिए। हम आज बड़ी घटनाएं समय की तेज लाल चमकती खतरे की रोशनी सभी जगह देख रहे हैं। प्रकृति में देखिए, वहाँ भी खतरे की बत्ती चमक रही है कि समय समाप्ति पर है। हम गिरजों पर यही बत्ती चमकती देख रहे हैं कि उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है, फिर से दुनियावी हो गए हैं, समय समाप्त हो रहा है। हम ये संकेत समुद्र पर, आकाश में, राष्ट्रों में, सभी ओर, सूर्य चांद सितारों में, सभी ओर ये चिन्ह देख रहे हैं। अंत समय का चिन्ह की पवित्र आत्मा लोगों पर उंडेला जाएगा, हम देख पा रहे हैं। वैसा ही आज है जैसा लूत के दिनों में था जबकि परमेश्वर मनुष्य की देह में प्रकट हुआ था, यानी पवित्र आत्मा मनुष्य की देह में उतर आया था। किस प्रकार से परमेश्वर फिर से अपनी दुल्हन में अपने दिन में मनुष्यों की देहों में उतर रहा है, वैसा ही चिन्ह है जैसा लूत के दिनों में हुआ था। यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों में होगा और हम इसे देख रहे हैं। हमने आज के सतून को देखा है, वरन विज्ञान ने उसका चित्र भी खींचा है, वगैरह वगैरह बातें होती हमने देखी हैं। अंत समय के चिन्हों को हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि समय का अंत आ पहुंचा है। और ये सब देखकर अगर आप मुझ पर विश्वास करें, अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते तो वचन का इन चिन्हों का विश्वास कीजिए क्योंकि वे उसी की गवाही देते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो सच ना होता तो वे इसकी गवाही नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर झूठ की नहीं वरन सत्य वचन की गवाही देता और उसकी तस्दीक करता है। ये वचन प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। यही वे हैं जो इस वचन की जो मैं प्रचार कर रहा हूँ गवाही दे रहे हैं। उस दिन नदी के किनारे पर उस स्वर्गदूत ने कहा था कि तुम्हारा सुसमाचार मसीह की दूसरी आमद के आगे आगे चलेगा, और यही नहीं, वे काम जो किए गए
स्वयं में गवाही हैं। यदि आप इतना यकीन नहीं कर सकते कि स्वर्गदूत ने सत्य कहा था तो इन कामों का विश्वास कीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि अंत समय में ऐसी घटनाएं व काम किए जाएंगे। वे मेरी गवाही देते हैं, ये काम जो किए जा रहे हैं मेरी या किसी की भी आवाज से अधिक जोर से गवाही दे रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन हैं जो इस समय की गवाही दे रहे हैं कि अंत समय है, और हम अंत समय के इन बड़े व भयानक अंत चिन्हों को देख रहे हैं जो लोगों के ऊपर प्रकट किए गए हैं। समय के चिन्ह जो पृथ्वी के ऊपर हैं और राष्ट्रों में जो विपत्तियां आई हुई हैं उन्हें देख रहे हैं। हम इज़राइल को अपने घर अपने देश में देख रहे हैं। छह कोने वाला दाऊद का झंडा लहरा रहा है जो कि दुनिया का सबसे पुराना झंडा है। अब इज़राइल एक राष्ट्र है, उसके अपने लोग व अपनी सरकार है, तथा वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। अब वो एक संपूर्ण देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, उसकी अपनी मुद्रा है, सब कुछ उसके पास है। कहा था कि ये पीढ़ी जाती न रहेगी जब तक कि सब कुछ पूर्ण न हो जाए। याद रखिए कि जिस रात इसराइल एक देश बना, प्रभु का स्वर्गदूत मेरे पास आया था, मैंने ठीक उसे पास से देखा था। ये सच है, ठीक यही बात है। सभी कुछ सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहा है, सच्चाई बयान करी है, और परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित किया है कि मैंने आपसे सच कहा है। याद रखिए कि मैं एक मनुष्य हूँ, आपका भाई हूँ, मैं भी आप ही की तरह से एक मनुष्य हूँ, किंतु किसी न किसी को तो इस सच्चाई को लेकर आना ही था, किसी न किसी को तो ये सब करना ही था, कहना ही था। ऐसा करना मेरी मर्जी नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा से हुआ है, और मैंने आपको सच्चाई बता दी है। परमेश्वर ने ठीक उसकी गवाही दे दी है कि यही सच है। जब हम ऐसी बातें पृथ्वी पर होती देख रहे हैं तो भाइयों ये अंतिम क्षण है। जितना शीघ्र हो सके उस चिन्ह को लें या उस चिन्ह में चले जाइए, क्योंकि हम अंत समय के बड़े बड़े चिन्ह देख रहे हैं। समय समाप्ति पर आ पहुंचा है और हमें चेतावनी दे रहा है। इस बात को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें एक दूसरे के प्रेम में बने रहना है। प्रभु किसी के लिए भी कभी बुरी बात मत कहना, अगर कोई गलती करे तो फौरन उसके लिए प्रार्थना करना। इसी प्रेम में हम सभी भाई बहन परमेश्वर के साथ सहभागिता में हैं। परमेश्वर की भोली भाली प्यारी सीधी बेटियां बनकर व बेटे बनकर रहिए, जो कि दयालु प्यारे व नम्र हों। किसी भी बुरे विचार को हृदय या मस्तिष्क में मत आने दीजिए, उसे तुरंत दूर कीजिए। यदि कोई बुरा विचार द्वार पर खटखटाए तो उसे भगा दीजिए। तुरंत अपना चिन्ह से दिखाइए और आगे बढ़ते चलिए और कहिए कि मैं उस खून के साए में हूँ। याद रखिए कि मिस्र में उस रात अनेक स्त्रियों ने आकर कहा था, हाय गलती लिली, आप आइए, हम आज रात एक पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, मैं उसके लहू के चिन्ह के तले हूँ और यही मुझे रहना है, मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ। मृत्यु आज रात इस देश की धरती पर है, आज फिर से मृत्यु आ पहुँची है, न्याय प्रतीक्षा कर रहा है, न्याय होने जा रहा है। अणु परमाणु हथियार, हाइड्रोजन हथियार और सभी प्रकार के नाशमान तत्व राष्ट्रों को दुनिया को नष्ट करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बाहर निकालकर उसमें अपने को सभी पर प्रकट कर दिया है। हम मेमने को काफी समय तक अपने साथ रख चुके, हम देख चुके हैं कि उसका मिजाज व्यवहार कैसा है, परंतु वो चिन्ह हमें पाना है, पवित्र आत्मा पाना है, इसे हर हाल में पाना होगा। केवल यही बात है कि जब तक मनुष्य जलवा आत्मा से नया जन्म न ले, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, विश्वासियों को स्वयं को दुनिया से अलग रखना है। इस बात को आप हल्के फुल्के ढंग से मत लीजिए। अब वह स्त्री पुरुष जो इस वचन के टेप को सुन रहे हैं या वचन को टेप के द्वारा सुन रहे हैं, एक क्षण के लिए सुनिए। यदि आपने कभी भी मुझ पर विश्वास किया है, जरा भी भरोसा है, तो अब विश्वास कीजिए। ये वह समय है कि हमें मजाक के मूड में नहीं रहना है, और इस शास्त्र के सुसमाचार पर विश्वास करिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, और एक दूसरे को आदर सम्मान दीजिए और प्रेम रखिए। पुरुषों अपनी पत्नियों को सम्मान दो, आप अपने घरों को सम्मान दीजिए, टूटे हुए घरों को जोड़िए, क्योंकि याद रखिए कि वह मेमना सारे घराने के लिए था, केवल एक दो के लिए नहीं, वरन सारे घराने को एक साथ मिलकर खाना था। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, और विश्वासी लोग स्वयं को दुनिया से पूरी तरह से अलग रखें। ध्यान दीजिए कि वे लोग केवल सुसमाचार के विषय में बातें करने को जमा नहीं हुए थे, वे जमा हुए थे कि लहू लगाएं, वह चिन्ह पाएं। यही ठीक आपको भी करना है। मैं पास्टर नेविल, ट्रस्टीज, डीकंस और इस पूरी सभा के भाइयों से कह रहा हूँ, यह समय है कि हम दुनिया की सभी मूर्खतापूर्ण बातों को अलग छोड़ दें। यह समय है कि हम सभी कुछ अलग छोड़ दें। हम बहुत कुछ देख चुके हैं और अब बिल्कुल निश्चित रूप से जान गए हैं कि बात क्या है। इस चिन्ह को जरूर अपनाना है, इसके बिना आप सब नाश हो जाएंगे, नाश होना ही चाहिए। यदि यह चिन्ह न हुआ, यह एकमात्र तथ्य है। ओ, एक साथ बैठ कर ये मत कहिए कि मैं विश्वास करता हूँ, वरन इस चिन्ह के तले आ जाइए।
ये कैसे होगा? एक ही आत्मा के द्वारा हमने मसीह यीशु की देह में बपतिस्मा पाया है। इस बात को आप सभी पूरे हृदय से विश्वास करें, समझ गए? अगर कोई इससे बाहर रहेगा तो परमेश्वर उसका उत्तरदायी न होगा। ये कौन क्या कह रहा था? शॉर्टवेव की आवाज थी, ऊपर से आई थी। अच्छा, यहाँ शॉर्टवेव पर भी सुना जा रहा है। मैंने कोई आवाज सुनी थी। अच्छा, शॉर्टवेव। अच्छा, उन्होंने जो कारों में बाहर बैठे हैं उनके लिए प्रबंध है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे लगा कि कोई कुछ कह रहा है। मैंने सोचा कि मुझसे कोई कुछ कहना चाह रहा है और मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ, इसलिए मैंने पूछताछ करी थी। मैंने आपको चारों ओर दृष्टि घुमाते देखा था और मैंने एक आवाज सुनी थी। मैंने सोचा कि सभा में कोई खड़ा हुआ है और मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये आवाज कहाँ से आई है। आपका धन्यवाद भाई, लेकिन आप विश्वास कीजिए और चिन्ह के तले आ जाइए। इजरायली लोग वहाँ ये कहते हुए जमा नहीं हुए थे कि आओ भाइयों, हम गोशेन को चलें, हम गोशेन की यात्रा पर निकलेंगे, आप नाउट ले लीजिए और हम बैलगाड़ी पर चलेंगे। ऐसा नहीं था कि हम अपनी जोनेसेस और वे गोल्ड्स बर्गर्स लेकर गोशेन जाएंगे और क्या आपको पता है कि मूसा आज प्रचार करने वाला है, ऐसा कहेंगे। ऐसा नहीं था भाई, नहीं श्रीमान, लहू के चिन्ह के तले आना था। जी हाँ, वास्तव में इसके बारे में बातें नहीं, वरन इसके तले आना है। उनमें से एक ने कहा होगा, श्रीमान गोल्ड्सबर्गर, मैं जानता हूँ कि ये वचन सत्य है। जी हाँ भाई, मुझे पता है कि सच्चाई यही है। श्रीमान लेवेंसकी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये एकदम सत्य है। मैंने यहोवा परमेश्वर की सामर्थ को बोलते सुना है। मैंने उन मेंढकों को वहाँ उत्पन्न होते देखा है। जब तक मूसा ने वचन नहीं कहा, मेंढक वहाँ नहीं आए थे और मैं जानता हूँ ये यहोवा परमेश्वर की सामर्थ से हुआ है। अब ऐसा कहना बड़ी अच्छी बात लगती है। क्या तुम्हारा खतना हुआ है? जी हाँ श्रीमान। क्या तुम विश्वासी हो? जी हाँ श्रीमान। और उस दिन महाशय ने पादरी मूसा को कहते हुए सुना कि लेकिन आपको लहू को तले आना है और इस चिन्ह को लगाना है, परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। इससे कुछ मतलब नहीं कि आपका खतना हुआ है और आप विश्वासी हैं। खतना तो परमेश्वर की वाचा थी जो उसने बहन से बांधी थी और आगे तक चली आ रही है, वह तो एक वाचा है। लेकिन अब आपको उस लहू के तले आना है, वो चिन्ह लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब मैं उस चिन्ह को वहाँ देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। इजरायली हो या कोई और चिन्ह वहाँ होगा तो छोड़ दूंगा। यानी कि डिनोमिनेशन हो या नहीं हो, आपको लहू के तले आना है। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेसबिटेरियन, पेंटिकोस्टल या बिना डिनोमिनेशन के, चाहे कोई भी हो, ये चिन्ह लेना है, क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से देखा जाएगा। आपको लहू के तले आना ही होगा। अब इसके बारे में बातें मत कीजिए, इसे ग्रहण कर लीजिए। देखिए, मेरी सुनिए, मेरी सुनिए, प्रभु के नाम का वास्ता मेरी बात सुन लीजिए। लहू के तले आना ही होगा। जो लहू के तले नहीं थे, उनके नाश होने के लिए परमेश्वर उत्तरदायी नहीं था। परमेश्वर ने पहले ही साफ कर दिया था, कह दिया था कि लहू के चिन्ह से बाहर हर कोई नाश कर दिया जाएगा। क्या मैं मसीह के शब्दों में बताऊं? जो भी मसीह से बाहर रहेंगे नाश हो जाएंगे। मसीह में आप फिर कैसे आए? पहला कुरिन्थियों 12 के अनुसार एक आत्मा के द्वारा हम मसीह की देह में शामिल होते हैं। किसी डिनोमिनेशन में जाकर, उसकी सदस्यता लेकर, हाथ मिलाकर नहीं। यही तो वे लोग कर रहे हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। एक ही आत्मा के द्वारा हम मसीह की देह में बपतिस्मा पाते हैं। और उस कहता है कि अगर स्वर्ग में से कोई स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार दे तो वह श्रापित हो। सुसमाचार यही है कि मसीह में आ जाओ। ध्यान दीजिए कि उस चिन्ह से बाहर किसी भी मनुष्य के नाश होने की कोई जिम्मेदारी परमेश्वर पर नहीं थी। यदि कोई आज चिन्ह से बाहर रहता है तो परमेश्वर उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह अमीर, गरीब, दास, स्वतंत्र, जाना पहचाना, यशस्वी या अनजाना, बड़ा छोटा, स्त्री पुरुष, कोई भी क्यों ना हो। वो ऐसे किसी भी जन के लिए उत्तरदायी नहीं है जो चिन्ह की वाचा में नहीं पाया जाता, वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। परंतु आप कहेंगे कि प्रभु मैंने ये किया, वह किया, प्रभु मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, वचन का प्रचार किया। लेकिन परमेश्वर कहेगा, एक हुक्म करने वालों मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वह तो बस चिन्ह पहचानता है। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आमीन कहिए। अभी आप पाए। उस दिन वहाँ उस जंगल में वे लोग आश्चर्य कर रहे थे जिन्होंने दो दिन तक गिलहरी मिलने की प्रतीक्षा करी थी और उन्हें शिकार नहीं मिला था। उन्होंने आश्चर्य से कहा था कि दो दिन में हम एक भी गिलहरी नहीं मार पाए थे, आखिर मामला क्या है? मुझे उसने कहा कि यह तथ्य उनको बताओ, दिखाओ कि तुमने मुझसे गिलहरी मांगी थी और देखो कि गिलहरी अब तुम्हारी गोदी में है। यह करना यानी रचना करना, वचन के द्वारा रचना करना तुम्हारे वश में है। परमेश्वर पवित्र आत्मा की वाचा को छोड़ और किसी चीज को नहीं पहचानेगा।
और आप इसको तब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप बचाए न गए हों, पवित्र न किए गए हों और उसकी देह में आपका बपतिस्मा ना हुआ हो, तब तक आपको वह वाचा नहीं मिलेगी। भले ही आपने किसी प्रकार की नकल करी हो, आत्मा में नृत्य किया हो, उछले हो, कूदे हो, अन्य भाषाएं बोली हो, इससे रत्ती भर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी बात को सुनिए, प्रभु के नाम के वास्ते सुनिए। परमेश्वर इन बातों को नहीं पहचानता, क्योंकि नास्तिक और जंत्र मंत्र तंत्र ज्ञाता भी ऐसा ही करते हैं। आप कहेंगे कि मैं तो पवित्र शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और ये वे जाने क्या क्या करता हूँ। परमेश्वर परवाह नहीं करता कि आप कितने बड़े अध्ययन करता है, शैतान भी है। परमेश्वर केवल चिन्ह पहचानता है, वो चिन्ह पहचानता है। इस समय का यही सुसमाचार है, आज के दिन और आज के समय का यही संदेश है। यीशु मसीह के नाम में इसे ग्रहण कीजिए। कहने चलेगा कि शैतान इसके विकल्प में या बदले में कुछ और आपको दे दे। जैसा कि एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए जो प्रेम दूसरी औरत को दे देता है, या कोई पत्नी किसी और को प्रेम देती है, या इसी प्रकार की कोई और नकली बात जो अशोभनीय हो, बिल्कुल नहीं चल पाएगी। ये वास्तविक प्रेम नहीं होगा, ये शैतान की ओर से है, ये उसके दुष्ट कार्य हैं। ये वह है जो असली के बदले उसने आपको समझाए हैं। जैसे कि शैतान विचार देता है कि थोड़ी सी शराब पीकर मैं खुश व भला अच्छा अनुभव करूंगा, मैं बाहर कलम में जाकर थोड़ी शराब की चुस्की लूंगा तो सब कुछ भूल जाऊंगा। ये सब शैतानी विचार हैं जो वह आपको देता है, और वह मृत्यु है। परमेश्वर आपकी सामर्थ और आपका परमेश्वर ही आनंद है। सुसमाचार व सच्चाई को जानने में ही हमारी तसल्ली है, और परमेश्वर ही हमारी पूर्ण संतुष्टि है। जो भी मेरी आवश्यकता है वह उसी में पूरी होती है, वही मेरी शक्ति और सामर्थ्य है, मुझे सहायता प्रभु से मिलती है। आप मसीही लोगों अपनी खुशी के लिए प्रभु की ओर देखो, अपनी सामर्थ्य व आनंद के लिए प्रभु की ओर ताकते रहो। वही मेरी शांति है, वही मेरा आनंद है, वही मेरा प्रेम है, वही मेरा जीवन है। यही वाचा है जो चिन्ह द्वार पर लगा। परमेश्वर एक भी जन के लिए जिम्मेदार ना होगा जो उस चिन्ह से बाहर पाए जाएंगे। याद रखिए कि उनके सारे घराने एक साथ वहाँ जमा हुए थे।
वो
याद रखिए, आप कहेंगे मेरे पापा प्रचारक थे, मेरे भाई पादरी थे। ठीक है, मगर आप क्या हैं? याद रखिए कि सुरक्षा केवल उस चिन्ह को लेने में थी। यदि एक मनुष्य यहाँ सुरक्षित खड़ा हो और उसका पुत्र वहाँ सड़क के बीचों बीच हो, तो वो खतरे में ही है, वह नाश हो जाएगा और उसके पिता बच जाएंगे। यदि वह इधर है और उसका पिता उधर सड़क पर है, तो वह बच जाएगा जबकि उसका पिता नाश हो जाएगा। केवल चिन्ह ही से सुरक्षा है। जब मैं उस चिन्ह को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा, यही कहा गया था। यही एक बात है, माताएं कहती हैं, भाई मेरा बेटा प्रचारक है, मेरा बेटा, मेरी बेटी सारे नगर में सबसे बढ़िया बच्चे हैं। ठीक है, आपके बच्चे बड़े बड़े प्यारे हैं, वे पवित्र आत्मा से भरे हैं, उनके प्रेम से भरे हैं, वे आज्ञाकारी हैं, मैंने उनकी तरह के बच्चे और कहीं नहीं देखे। लेकिन मामा जी आपका क्या होगा? आप कहती हैं मेरी माँ बड़ी प्यारी है, मैं जानती हूँ जब मरेगी तो स्वर्ग में जाएंगी, क्योंकि उसके पास चिन्ह है भाई ब्रहणम। ठीक है, परंतु बहन आपका क्या है? पूरे परिवार को इस चिन्ह के तले आना है। क्या आप लोग थक गए? मैं बस कुछ क्षणों में बंद करता हूँ, मैं अब यहीं छोड़कर आज रात फिर से इसी विषय को ले सकता हूँ, लेकिन आप अगर थोड़ा सा थोड़ी सी प्रतीक्षा कर सकें, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि पूरी बात अभी ही कह लूँ, क्योंकि इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य छाया से आप लोग अभिषिक्त हैं। ये अच्छा होगा कि इस बात को आप लोग अभी ही ग्रहण कर लें। जब उस चिन्ह को द्वार पर लगाया गया, लहू को लगाया गया, तो पूरे परिवार को उस चिन्ह के तले होना था। पापा मामा जी, मैं जानता हूँ कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, मेरे पास भी बच्चे हैं, मैं आज रात स्वयं से भी यही कह रहा हूँ, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे बचाए जाएं, उद्धार पाएं। मेरे भाई हैं, बहन हैं, प्यारे पारिवारिक जन हैं, मैं उन्हें भी बचते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन याद रखिए कि चिन्ह को प्रदर्शित किए बिना वे सभी नाश हो जाएंगे, उनके लिए कोई जीवन नहीं रहेगा। ये सच है कि चिन्ह के बिना वे समझो हमेशा के लिए चले गए। केवल चिन्ह को प्रदर्शित करके ही उद्धार है। देखिए यहोशू का दूसरा अध्याय, जिसमें राहब या वेश्या जो अन्य जातियों में से विश्वसनीय थी, उसका जिक्र है। मैं चाहता था कि काश समय होता तो इस पर प्रकाश डालता, इसे आप नोट कर लीजिए। ओ, अभी 9 बज रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में बताऊँ कि कैसे किस प्रकार वह घराने समेत बचाई गई, समझे आप? इस वेश्या और इसके परिवार पर ध्यान दीजिए, ये अन्य जाति की थी और विश्वासी थी। उसके सारे परिवार को उस लाल रंग के डोरे के तले, यानी उस चिन्ह के तले आना था। या तो उन्हें उस चिन्ह के तले आना था या नाश होना था। उन्होंने परमेश्वर के प्रकोप के बारे में सुन लिया था। उन्होंने परमेश्वर के उन चिन्हों, अद्भुत कामों व आश्चर्य कर्मों के बारे में सुन लिया था जो उसने अपने लोगों के मध्य किए थे, और उन्हें उन पर विश्वास करके उन्हें ग्रहण करना था। और परमेश्वर का स्वर्गदूत जो उस नगर में मृत्यु लेकर आने वाला था, उसके बारे में उन्हें पता था, और यहोशु ही वह स्वर्गदूत था। वे लोग वैसे ही परमेश्वर की न्याय की पंक्ति में खड़े थे, जिस प्रकार प्रत्येक देश, पूरी दुनिया परमेश्वर के न्याय की सीमा के घेरे में खड़ी होती है। बूढ़ी वैश्या रहाब ने सब कुछ सुन रखा था, और विश्वास सुनने से आता है। उसने यही कहा था कि पूरा नगर तुम लोगों के कारण घबराया हुआ है, ये ठीक है। अब देखिए कि वे खोजिए जो उस नगर की टोली ने भेजे गए थे, इस वैश्या ने उन्हें ग्रहण किया था क्योंकि यह बचना चाहती थी। उसने कहा था कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और मैंने उसके महान अद्भुत कार्यों के बारे में सुन रखा है। मुझे पता है कि उसने विभिन्न नगरों में क्या क्या किया है,
और मैंने देखा है कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया है वे बचे हैं, और जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया वे सब नाश कर दिए गए हैं।
और उसने कहा कि मैं जीना चाहती हूँ हे प्रभु। यही वह बात है कि वह मैं जीना चाहती हूँ। उस नगर यरूहू में लोगों ने भी यही सब सुन रखा था, मगर जो कुछ परमेश्वर ने अन्य जगहों पर किया था उससे वे कोई चेतावनी नहीं लेना चाहते थे। और आज इस देश में कोई भी ऐसा डिनोमिनेशन नहीं है जिसने ये न सुन रखा हो कि आज परमेश्वर क्या क्या कर रहा है, मगर वे लोग चेतावनी को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। परमेश्वर की बड़ी सामर्थ व चिन्हों को वहाँ दिखाया जा चुका था कि उसने क्या किया है। उन्होंने उन लोगों को लाल सागर से उसने इस तरह पार उतार दिया था मानो वे सूखी भूमि पर चलकर आए हों। परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा वचन से कुटकियों, पिस्तों, मेंढकों आदि की सृष्टि करी थी, और बड़े बड़े अद्भुत काम किए थे। ये कोई गुप्त बातें न थी, और वे सब इन बातों के बारे में जानते थे। और राहब ने कहा था, मैंने इन सब बातों के बारे में सुना है, और मैं इन अविश्वासियों के साथ नाश नहीं होना चाहती, नहीं श्रीमान। उसको पता था कि परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा है, और सभी लोग उसके घेरे में खड़े हैं। इसीलिए उन खोजियों ने उस वैश्या को बचाने के लिए एक मार्ग खोज लिया। यरूहू के लोगों ने सोचा होगा कि उनके बड़े बड़े ऊंचे डिनोमिनेशंस परमेश्वर के प्रकोप का सामना कर पाएंगे। देखा आपने, उनके बनाए अपने बड़े बड़े नामधारी गिरजे शायद उन्हें बचा पाएंगे। बहुत से लोग आज भी ठीक वैसा ही सोच रहे हैं। शैतान ने हव्वा से कहा था, वास्तव में तुम न मरोगे, खुदा वैसा न करेगा। परमेश्वर वास्तव में ऐसा ही करेगा क्योंकि यह उसका वचन है। जी हाँ श्रीमान, यही कहा गया था कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले और उनमें यह चिन्ह न हो, ऐसा कहा था, समझ गया, तब सभी लोग जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो वगैरह वगैरह। देखा आपने, लोग चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो। फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए, और वो कहते हैं कि अब यहाँ कोई बेदारी नहीं आएगी। हमारा नामधारी गिरजा ऐसी किसी बेदारी को समर्थन नहीं देगा। हमें ऐसी किसी मूर्तापूर्ण बातों को नहीं सुनना है, नहीं समझना है। ऐसी वैसी किसी भी सभा में जाने की अनुमति नहीं है। यरूहू में ऐसा ही सोचा गया था, और वह ठीक दंडित होने वालों की कतार में खड़ा था। लेकिन उस रहब वैश्या के घर पर मानो कुछ लोग वचन के टेप लेकर पहुंच गए, क्योंकि वे पहले से चुने लोग थे, और उसने अपने घर को कलीसिया बना लिया कि सुसमाचार ग्रहण कर सके। आज भी ऐसा ही हो रहा है कि आपको पता है, कुछ भी हो, आज का सुसमाचार चुने हुए जन तक किसी न किसी तरह पहुंच ही रहा है। हमें नहीं पता कि किस प्रकार चुने हुए लोगों तक ये पहुंचता है, परंतु ऐसा हो रहा है ताकि भला व्यक्ति बुरे के संग नाश न हो। इस बात को आज परमेश्वर खुद देख रहा है कि ऐसा न हो। जी हाँ, किसी भी तरह से सुसमाचार उन तक पहुंच ही जाता है। हमें नहीं मालूम कि यह सब कैसे होता है। नामधारी गिरजे भले ही सुसमाचार को न माने, मगर उनके बीच कुछ चुने हुए बीज हैं जो पहले से चुने गए हैं। जो पवित्र शास्त्र के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं वे मानते हैं कि रहब वैश्या पहले से चुनी हुई थी। वास्तव में ऐसा ही था। पवित्र शास्त्र बताता है कि उसने उस सुसमाचार पर विश्वास किया और अविश्वासियों के संग नाश ना की गई। यह सत्य है कि उसने अपने समय के वचन को ग्रहण किया, और परमेश्वर ने अपने सुसमाचार देने वालों के द्वारा उसे एक चिन्ह दिया। उससे कहा गया कि लाल रंग का एक डोरा वो अपने घर पर लटकाए। अगर तू लाल रंग का डोरा अपने घर पर नहीं लगाएगी तो हम अपनी प्रतिज्ञा से छूट जाएंगे, क्योंकि उसी को देखकर हम तुझे नाश न करेंगे। उससे कहा गया, अगर तू बाहर पाई गई तो फिर हम जिम्मेदार न होंगे। राहब सुन, इस नगर में जितने भी पहले से चुने बीज हैं उनकी तलाश कर, अपने माँ बाप को ले आ, क्योंकि मिस्र में हमने देखा था कि जो भी उस चिन्ह से बाहर रहा था नाश हो गया था। राहाब, मैं तुझे एक चिन्ह दे रहा हूँ, यह एक टोकन है, और मैं प्रभु के नाम में तुझसे कहता हूँ, यदि तू वह चिन्ह लगाएगी तो मैं उस चिन्ह को पहचान लूंगा। सुसमाचार प्रचार करने वाला इस चिन्ह से परिचित है, और प्रचारक यहोशू ही परमेश्वर का दूत है जो इस नगर को नाश करेगा। मैं उसे जानता हूँ और उसे पता है कि एक चिन्ह इस प्रकार से दिया गया है। तू इस चिन्ह को वहाँ लटका देना, और मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू बची रहेगी, जितने तेरे साथ होंगे नाश न होंगे। और परमेश्वर ने भी शपथ खाई है कि जितने इस चिन्ह के बाहर रहेंगे सब नाश कर दिए जाएंगे, और जितने इसके तले रहेंगे सभी बचा लिए जाएंगे। आज भी वही शपथ है कि यदि तुम विश्वास करो तो मैं तुम्हें अविश्वासियों के साथ नाश न होने दूंगा। राहाब ने परमेश्वर के द्वारा किए गए कामों के बारे में सुना था और उसने विश्वास किया था, लेकिन उसके माता पिता, कुछ भाइयों और कुछ थोड़े से अन्य लोगों को छोड़ नगर में और किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था। देखिए कि विश्वास करने वाले कितने थोड़े से हैं। एक यहाँ एक वहाँ पूरे राज्य से एक छोटा सा परिवार ही विश्वास कर पाता है, ये सच है। अभी हम ठीक ठीक तथ्यों को समझ रहे हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि पुराने नमूने पर आज का प्रति नमूना कैसा है तो पिछले नमूने पर ध्यान दीजिए। आप देखिए कि प्रतिछाया में क्या था, तभी वास्तविक स्थिति को ठीक से देख पाएंगे, समझे आप।
परमेश्वर की सामर्थ प्रकट करी जा चुकी थी, न्याय तैयार खड़ा था, और बचने के लिए उनको विश्वास करना जरूरी था। जी हाँ श्रीमान। और ये थोड़े से प्रचारक खोज करने वाले जन वहाँ गए ताकि पहले से चुने हुए लोगों को जिन्होंने विश्वास किया बचा सकें। उस स्त्री ने अपने घर को गिरजा बनाया ताकि सुसमाचार प्रचारक को ग्रहण कर सकें, क्योंकि उन्हें वहाँ के गिरजों में नहीं जाना था, नहीं श्रीमान। फिर वे बड़े नामदारी गिरजे आपको वहाँ ठहरने भी नहीं देंगे, वे ठोकर मार कर आपको बाहर निकाल देंगे यदि इस बारे में आपने कुछ कहा। उन लोगों ने उस नगर में सभी विश्वास करने वालों को एक चिन्ह के तले आने का अवसर दिया। एक ऐसा ही आज हमको भी करना चाहिए। यदि आप किसी को बचाना चाहते हैं तो उसे ठीक वचन में ले आइए, अभी ले आइए, समझ गए। जब परमेश्वर के प्रकोप से वे पूरा नगर तबाह हुआ तो उस लाल डोरे के चिन्ह ने उस घर को नाश होने से बचा लिया, आमीन। कैसे हुआ ये? जब सारा शहर धरती में मिलाया गया तो वो चिन्ह उसके घर पर टंगा था। ये क्या था? क्या था? यहोशू परमेश्वर का संदेश वाहक था और उस चिन्ह को पहचानता था। परमेश्वर स्वयं अपने दूत के संदेश को मान्यता दे रहा था। ये साबित हो गया था, प्रमाणित हो गया था कि उस घर के लोगों ने वचन पर विश्वास किया है और परमेश्वर अपने दूत के संदेश को मान्यता दे रहा है। और जबकि सारा नगर थरथरा कर गिर पड़ा था, राहाब का घर उस लाल चिन्ह सहित खड़ा था जो द्वार पर टंगा था, और उस घर के लोगों को छोड़ सभी नाश हो चुके थे। तब नाश करने वाले दूत सीधे आगे बढ़े और उस नगर का सब कुछ माल असबाब सहित नष्ट कर दिया, एक टुकड़ा भी सामान का नहीं बचा। उस नगर रूपी डिनोमिनेशन में से एक टुकड़ा भी बचा कर रखने वाला नाश हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। वे श्रापित हो जो कभी इस नगर को बनाने की कोशिश करे, यदि करेगा तो उसके पहलौटे मारे जाएंगे। परमेश्वर ने उन लोगों को श्रापित ठहराया और इस प्रकार से कहा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे परमेश्वर के अनुग्रह, करुणा, दया, अनुग्रह के सुसमाचार को ठुकरा कर भी सुरक्षित बने रहेंगे। बहुत से लोग आज भी यही सोचते हैं कि वे अमुक गिरजे के सदस्य हैं तो सुरक्षित रहेंगे। आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास मत कीजिए। पहले कहा था कि लहू तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, अब पवित्र आत्मा जो कि यीशु के लहू का जीवन है वही आपके लिए चिन्ह ठहराया गया है। आइए थोड़ा सा विचार कीजिए कि वही चिन्ह जो मिस्र में प्रयोग किया गया, परमेश्वर ने उसी चिन्ह को यहाँ इस नगर में भी प्रयोग किया। यहोशू ने उस चिन्ह को पहचाना और अपने प्रचारकों द्वारा दिए गए चिन्ह को देखकर उसे छोड़ दिया, क्योंकि यहोशू यीशु का सिद्ध प्रतिरूप था। यहोशू ने इसके बारे में कह दिया था कि उस घर को या उसमें से जो कुछ है मत छूना, क्योंकि वह प्रभु के लिए चुना गया है, आमीन। राहाब जो एक सड़क छाप वैश्या थी, लेकिन उसने वचन को सुना, उस पर विश्वास किया और चिन्ह ग्रहण किया और बच गई। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है और आपने पाप किस सीमा तक आप पाप में डूबे हुए हैं। आप विश्वास करिए और चिन्ह लीजिए। चिन्ह आपके लिए है, आप इसे लगाइए। अगर आप अपने हृदय में कुछ भी खिंचाव अनुभव कर रहे हैं तो ये आपके लिए है, आप चिन्ह ग्रहण कीजिए। यहोशू शब्द का अर्थ है यहोवा बचाने वाला, इसी प्रकार यीशु का अर्थ है बचाने वाला, उद्धार करने वाला। और जब यहोशू के लोग वापस आए तो उन्होंने यहोशू से कहा कि हमने आपकी आज्ञा अनुसार उस नगर में सुसमाचार के टेप चलाए, वचन सुनाया, और हमें वहाँ एक स्त्री मिली जिसने इन टेपों के वचनों व सुसमाचार पर विश्वास किया। हमने उससे कह दिया है कि जो कुछ भी उस लाल डोरे के चिन्ह के तले होगा वह नाश नहीं किया जाएगा। हमने ऐसा कह दिया, यहोशू क्या तू हमारी बात को सम्मान देगा? मैंने तुमको भेजा ही इसलिए था, आमीन। और जब परमेश्वर ने उस चिन्ह के द्वारा उस घर को मान्यता दी तो फिर वह कभी नहीं गिराया गया। और जब यहोशू वहाँ खड़ा हुआ और उसने उस नगर में सब कुछ नष्ट करने के आदेश दिए तो वैसा ही किया गया। परंतु रहाब और उस घर का सभी कुछ जो उसमें था ठीक ठीक सुरक्षित रहा, आमीन। सभी कुछ जो वहाँ था पूरी रीति से सुरक्षित रहा, आमीन। वे लोग जो रहाब के घर में थे उनको घर के अंदर ही रहना था, खिड़की से बाहर नहीं देखना था। बाहर जबकि घमासान लड़ाई चल रही थी, वे लोग भीतर पवित्र शास्त्र पढ़ सकते थे। इजरायली लोगों के पीछे पीछे वह भी वहाँ से बाहर आ गई, वह उनके बीच में रहने लगी। उसका विवाह एक सेनापति से हुआ और उनके संग उसे भी बैतलहम में स्थान मिला और उसके द्वारा एक मशहूर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के द्वारा एक और यशस्वी पुत्र हुआ, उस पुत्र के द्वारा एक और पुत्र, उस पुत्र के द्वारा एक और पुत्र, और अंत में महान पुत्र उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह। आप पीछे से देखिए तो पाएंगे कि रहाब से बोअज, बोअज से ओबेद, और ओबेद से ईशे, और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ था। ये ठीक है, ये सच है कि वैश्या रहाब दाऊद व यीशु की वंशावली में है, क्योंकि उसने वचन ग्रहण किया और बचाई गई थी। उसने वचन पर विश्वास किया था, वरना वह भी उन नाश होने वालों के साथ नाश हो जाती। आप अब अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनिए, वो क्या आप इसको जान पा रहे हैं? जो भी चिन्ह के तले रहे सभी मिस्र में बचाए गए, यरीहो में बचाए गए, और जो भी चिन्ह के तले आएगा आज भी केवल वही बचाया जाएगा। वो लहू, मेमने का लहू, उसकी छाप, यीशु मसीह का नमूना भर थी। मेरे पास समय नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, वरना मैं पढ़कर सुनाता कि इब्रानियों 13:10-20 में क्या लिखा है। वहाँ इसे सनातन वाचा कहा गया है। यीशु मसीह के लहू को सनातन वाचा की संज्ञा दी गई है। जी हाँ, सनातन वाचा। इसको अनंत वाचा क्यों न कहा जाए? इसे सनातन वाचा कहा गया, अनंत वाचा नहीं, क्योंकि जब हमारा उद्धार हो जाएगा तो सभी मामले समाप्त हो जाएंगे। इसे सनातन इसीलिए कहा गया कि ये समय से बंधा है। जब हम उसके साथ अनंतता में जाएंगे तो समय व यह समाप्त हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं होगी। तब कोई वाचा नहीं होगी, हमें उसकी जरूरत नहीं होगी, परंतु जब तक समय है हमें इसकी जरूरत है। अब याद कीजिए, इब्रानियों 13:10-20 में इसे सनातन वाचा कहा गया है। परमेश्वर की लहू से बंधी वाचा हमें पापों से आजाद करती है, आमीन, क्योंकि उसमें कोई मांस, शरीर व पाप नहीं है। उसकी आराधना कीजिए और उसकी प्रतिज्ञा करी हुई सामर्थ पाकर उसे प्रकट कीजिए। वो लोग जो परमेश्वर के उस लहू की वाचा से चिन्ह से बने हैं, उनमें यीशु मसीह का आत्मा है, और वही इसे पाते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, अर्थात वह उस वाचा को प्रकट करता है। आप समझ गए? इंजील या नए नियम या टेस्टामेंट का अर्थ वाचा होता है, ठीक है ना डॉक्टर वेले? टेस्टामेंट का अर्थ है वाचा, और न्यू टेस्टामेंट का अर्थ है नई वाचा। पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब पुरानी वाचा जिसमें मेमने का लहू था और उसका जीवन विश्वासी को मिल नहीं पाता था। नए नियम में परमेश्वर के मेमने का जीवन है जो वापस हम विश्वासियों को मिल जाता है। लहू में जीवन है, नई वाचा में उसके लहू में जीवन है। आप समझे? मेमने के यानी यीशु के लहू में जीवन है और उसी का जीवन हमें मिल जाता है, जिसका अर्थ है न्यू टेस्टामेंट या नई वाचा। परमेश्वर ने कहा था कि उन दिनों के बाद मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदयों पर लिखूंगा, सर की पटिया या मेमने के लहू पर नहीं, हृदयों की पटिया पर लिखूंगा। और इसके बारे में आप कहते हैं कि यहाँ मेरे पास लहू तो है और क्या करना है, लेकिन वो कहता है कि हृदयों की पटिया पर व्यवस्था लिखी जाएगी और आत्मिक वाचा लोगों से बांधी जाएगी। और जो इस वाचा में होगा, यूहन्ना 14:12 कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा। नई वाचा नया जीवन है, नई वाचा नया जीवन है। ये बताता है कि परमेश्वर जो कुछ हमसे चाहता था वो सब यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, ताकि हम फिर से परमेश्वर के वास्तविक सच्चे पुत्र पुत्रियां बन सकें और उस लहू के तले आ सकें जहां हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियों 8:1 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर नहीं जो केवल विश्वास करते हैं, परंतु लिखा है कि क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं और मेरी बातें आत्मा व जीवन है। देखा हो, मैं इसमें से एक विषय लेकर कुछ घंटों तक और बोलना चाह रहा हूँ, मगर आइए अब शीघ्रता से इसे समाप्त करें। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, पापों से स्वतंत्र, दुनिया के बंधनों से आजाद हो जाएंगे। क्यों? उन लोगों के साथ ऐसा होगा जो एक आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा पाते हैं। वहाँ मेमने का लहू उन पर लगाया गया है। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया है, अब उसका जीवन आप में है और आप परमेश्वर के पुत्र व पुत्रियाँ बन जाते हैं। अब आपका चरित्र परमेश्वर का अपना चरित्र है। अब इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं चलेगा। नहीं श्रीमान, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वह सही ठीक काम करने वाला है। एकदम पूरी तरह से उसी के अनुसार चलना है, जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि आप में आपके पिता का चरित्र है। समझे? पहले क्या होता था, देखिए कि लहू के लिए एक पशु का जीवन दिया जाता था। देखा आपने कि ये लहू के लिए एक जीवन समाप्त होता था और उस लहू को लगाया जाता था, परंतु वह जीवन विश्वासी को अपने पापी जीवन के बदले मिल नहीं पाता था क्योंकि वह पशु का जीवन था। परंतु देखिए कि यीशु का जीवन तो मनुष्यों के जीवन से सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम है। समझ गए आप? और वही जीवन अब हमारे लिए वापस आता है और हमें एक मनुष्य ही नहीं वरन परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाता है। उसके सर्वोत्तम 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 जीवन को हम पाते हैं, जो उसका अपना जीवन है, जो कि हमें एक पापी से, दुनिया की लालसा करने वाले से, वे नामधारी गिरजों की सदस्यता से बाहर लाकर बदल डालता है और हमें नया जन्म प्राप्त मसीही बना देता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण परमेश्वर का अपना जीवन प्राप्त विश्वासी बन जाता है और जिसके अंदर से परमेश्वर की महिमा का प्रकाश झलकता रहता है। जब आप चलते फिरते हैं तो सद्गुणों से भरे, प्रेम वे सज्जनता से ओतप्रोत होते हैं और पवित्र आत्मा आप में वासा करता है, बातचीत करता है। हे प्रभु, यही गहन बात है। और वचन को सुनकर, आग के सतून को देखकर और इस आशीषित आश्वासन को जानकर आप कह उठते हैं कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गया हूँ, इसलिए मेरे लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है। अगर हमारा हृदय हमें दोषी नहीं ठहराता तो हम अपनी याचनाएं उसके पास आजादी से ला सकते हैं, लेकिन अगर पाप हमारे हृदय में छिपा हो तो वो हमें दोषी ठहराता है और हम अपनी बात शुरू ही नहीं कर पाते। आप समझ गए? आपको पाप से स्वतंत्र होना है और उससे स्वतंत्र होने का एक ही तरीका है कि आप मसीह में आ जाइए। आपके लिए एक ही चीज है जो उसे ढांप सकती है और वह मसीह है। याद रखिए कि लहू की वाचा बिना चिन्ह के मान्य नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि मुझे बुरी बातों से पवित्र किया गया है, ठीक है, परंतु ये चिन्ह नहीं है। पवित्र आत्मा ही चिन्ह है। मसीह का आत्मा जो आपके ऊपर छाप देता है वही चिन्ह है, इस बात का विश्वास करिए। अब देखिए कि वचन परमेश्वर की वाचा का आश्वासन देता है। देखिए यहाँ मेरे पास कितने सारे पवित्र शास्त्र के संदर्भ हैं। लगता है मैं सारे दिन ही वचन प्रचार करता रहूँ। वचन हमें प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का आश्वासन देता है क्योंकि वचन स्वयं वाचा है, प्रतिज्ञा है। वचन ही प्रतिज्ञा है, वही परमेश्वर है और यही वचन हमारा है। हम वचन में और वचन हम में ढलते हैं। यदि मैं तुम में रहूं और तुम मुझ में, इस कथन के आधार पर हमारा एक बड़ा परिवार बन जाता है। उससे हमें आश्वासन मिलता है क्योंकि वह हमारा ही एक भाग बन जाता है। समझे? समझे? समझ गए आप? वो हमारा ही एक भाग बन जाता है। क्या ही उम्दा बात है। ठीक है, हमारे लिए दी गई प्रतिज्ञाओं का यही आश्वासन है। चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि यीशु ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है और परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया है। अब देखिए कि रेलवे से बिना मूल्य दिए, किराया दिए, आप यात्रा करने का टोकन नहीं पा सकते। और भुगतान करने का तरीका यही है कि आप उन्हें रुपया दें, विश्वास करें और उस टोकन को स्वीकार करें। परमेश्वर के वचन के प्रति पूरी आज्ञाकारिता ही आपको टोकन या चिन्ह का अधिकारी बनाती है। ये नहीं कि आपका डिनोमिनेशन कुछ बातों को मानता है और कुछ को नहीं मानता, वरन पूरे वचन को आज्ञाकारी की तरह मानना है। वचन के प्रति पूरी आज्ञाकारिता होनी है और वचन ही मसीह है। इसी रीति से आप मसीह में आ पाते हैं। अब क्या होगा अगर आप मसीह में हो मगर आपके कदम उससे बाहर लटक रहे हों? यदि आप उसमें तो हो मगर हाथ बाहर झूल रहे हों? हम सारे मसीह में तो हो मगर हमारे हृदय बाहर हों? समझे आप? समझ गए? दिल दुनियावी बातों में फंसे हों अभी तक, मगर हमको ऐसा नहीं करना है। पूरी आज्ञाकारिता आपको वचन को एक बनाती है। आप वचन पर, उसके प्रत्येक बिंदु पर विश्वास कीजिए और वह पूरा आप में आकर आपके द्वारा काम करेगा। आप मसीह हैं और ऐसे लोगों के पीछे मत चलिए जो समझौते करते चलते हैं। परवाह मत कीजिए कि और लोग क्या कहते हैं, वे आपको कभी छू भी नहीं पाएंगे क्योंकि जहाँ तक संभव है आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप मसीह में हैं। जब मृत्यु द्वार खटखटाएगी तो वह आप पर कुछ प्रभाव न डाल पाएगी, कुछ भी नहीं, और उसका आना आपके लिए मात्र यहाँ से निकल कर वहाँ ऊपर जाना ही रह जाएगा। उम्र अब अर्थहीन चीज है। आप आयु की परिधि से बाहर हैं।
आप अनंतता में हैं, आप परमेश्वर में हैं और वह अनंत है। आयु से कुछ मतलब नहीं, चाहे आप जवान, बूढ़े, बच्चे, अधेड़, कुछ भी क्यों ना हो, सुंदर, असुंदर, मोटे, पतले, नाटे, लंबे, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं है। अब आप अपने आसपास की बातों और चीजों से बेखबर हो जाइए, क्योंकि आप इन सब के लिए मर चुके हैं। आपका जीवन अब मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा है। वहाँ आपको पवित्र आत्मा की छाप के द्वारा उसमें बंद किया गया है और आप मसीह में चल रहे हैं। अब आप के सामने देखने के लिए बस एक लक्ष्य है और वह मसीह है, उसी में आप चल फिर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम वह गीत गाते रहे हैं कि जबकि मैं उस स्वर्गीय कबूतर के संग चल रहा हूँ, मेरे पथ को अपने प्रेम से भर दीजिए, पूरे सफर भर में मुस्कुराता गीत गाता चला जाऊँ, मुझे अपने प्रेम से भरे रखिए, मैं एक मसीही भाई की तरह से जीऊँ और उस मनुष्य की तरह बनूँ जिसकी मिसाल यीशु मसीह ने दी है, मैं एक भाई का मसीही भाई और बहन का सच्चा मसीही भाई बन जाऊँ, मैं सेवकों का सेवक बनकर मिसालों की मिसाल बन सकूँ, कि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि ये वचन ही मसीह है। इस प्रकार कर पाने का यही उपाय है कि मैं उसके पास आऊं, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो सकता, आपसे भी नहीं हो सकता, लेकिन आप और वचन एक हो जाइए तो ये अपने आप जीवन से प्रकट होगा। जब वह पूरी तरह से पूर्ण रीति से आप पर राज्य करने लगेगा तो आप मसीह की चलती फिरती पत्नियां बन जाएंगे। यदि यीशु मसीह कहे कि मैं ये करना चाहता हूँ और आप कहें कि नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, तो जान लीजिए कि आप अभी तक वचन में पूरी तरह से नहीं है, समझे। देखिए, अब ध्यान पूर्वक सुनिए कि वचन के प्रति पूरी निष्ठा व आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन के प्रति पूरा समर्पण ही हमें उसका चिन्ह पाने का अधिकारी बनाता है। तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपना चिन्ह प्रार्थना के साथ परमेश्वर को दिखा पाते हैं। अगर आप कहें कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास चिन्ह नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। भला होगा कि आप पहले जाकर वो चिन्ह पाइए, क्योंकि परमेश्वर उस चिन्ह ही को पहचानता और मान्यता देता है। श्रीमान, ऐसा ही है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपना चिन्ह प्रस्तुत करना चाहिए। कहना है, प्रभु मैंने पूरी तरह आपका वचन माना है, पश्चाताप पापों से प्रायश्चित कर लिया है और मैं अनुभव करता हूँ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर साया किए है। आपकी महिमा के लिए मुझे अमुक वस्तु चाहिए, प्रभु मुझे दीजिए, यह अब मेरी है। इसके बाद आपको कुछ व्यू किसी आंतरिक आवाज सुनाई देगी कि आपको मांगी गई चीज मिली है। ऐसा ही होता है, तब सब कुछ ठीक हो जाता है और आप संतुष्ट हो जाते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो मिलना ही चाहिए, समझे आप, समझे आप। महिमा के लिए मांग रहा हूँ तब वह चीज प्रभु आपको दे देता है, तभी आपको पता चल जाता है कि बात ग्रहण कर ली गई है। बात ऐसी ही है, हम लहू में होकर उसके सम्मुख आते हैं, विश्वास करते हैं और हमारी इच्छा अनुसार परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कर देता है। ठीक है, तब उसके बाद प्रभु क्या करता है? जब आप अपनी प्रार्थना के साथ अपना चिन्ह प्रस्तुत कर पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप पूरे परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं। जब आपके पास चिन्ह होता है तो इसका मतलब है आपने संपूर्ण वचन को मान लिया है, तभी आप और वचन एक हो जाते हैं और एक प्रकार से आप अपने से ही कुछ मांग रहे होते हैं, समझे आप। यही वजह है कि आप जान लेते हैं कि वह मिल गई। जैसे कि मैं अपने ही हाथ से कहूं कि हाथ बाहर को चलो और उस रूमाल को उठा लो, वह वैसा ही करता है, समझे आप। देखा कि मेरे हाथ ने मेरी आज्ञा मानी, क्योंकि वो मेरा ही एक भाग है, समझे आप। इसी प्रकार जब आप और वचन एक हो जाते हैं, परमेश्वर की महिमा होवे कि तब प्रत्येक प्रतिज्ञा आपके लिए पूरी होती है, आपकी आज्ञा मानती है। तभी आप मांगने से पहले ये भली बात देख पाते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं। आप किसी आग में अपना हाथ डालकर ये नहीं कहेंगे कि जरा मुझे इसे देख लेने दो, नहीं नहीं नहीं। लेकिन अगर उस आग में ऐसा कुछ है जिसे आपको पाना है, उठाना है, तो हाथ आपका हुक्म मानेगा, समझ गए आप। देखिए कि तब आप ये जांचना व देखना चाहेंगे कि आप प्रार्थना में क्या मांगने जा रहे हैं। यही वजह है कि पवित्र आत्मा आपको चीजें अत्यंत किफायतशाली से देता जाता है। आप समझे मेरा क्या मतलब है? क्योंकि परमेश्वर का सच्चा सेवक उन उपलब्धियों से दिखावटी बातें नहीं करना पसंद करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपना चिन्ह साथ ही प्रस्तुत करें, इससे प्रकट होगा कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन पूरी तरह से कर रहे हैं। पौलुस हमें बताता है कि लहू पुकारता है। हर कोई जानता है कि लहू वास्तव में बोल नहीं सकता, वह तो रासायनिक प्रक्रिया है। क्या ये बात सत्य है? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि लहू पुकारता है? यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो करिए, उत्पत्ति 4:10। परमेश्वर ने केन से पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? उसका लहू धरती में से तेरे विरुद्ध पुकार रहा है। आमीन। क्या ये सच है? उसका लहू बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा तो कहाँ है? उसने उत्तर दिया कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कहा उसका लहू पुकार रहा है, उसका लहू पुकार रहा है। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है
कि उसको मार डाला गया है और उसका लहू कातिल के विरुद्ध पुकार रहा है।
अब उत्पत्ति 4:10 में से निकालने के बाद आप इसे इब्रानियों 12:24 में से पढ़िए।
कहता है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। देखिए कि हाबिल एक धार्मिक और भला जन था, लेकिन वह भोला मनुष्य इसलिए मारा गया कि कैन के मार्ग में बाधक था। उसके पास अच्छा प्रकाशन था जिसे लेकर वो परमेश्वर के सामने आया था।
हाबिल का सच्चा सीधा लहू कैन के विरुद्ध पुकार उठा था,
लेकिन यीशु मसीह का लहू न केवल पुकार उठा मगर उसने हमें उद्धार भी दिया है। आमीन। वो उत्तम बातें कहता है, वह हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बनाता और उसके क्रोध व प्रकोप से छुपा कर रखता है। देखिए कि हाबिल का लहू कैन को परमेश्वर के दंड से छिपा न सका, लेकिन यीशु का लहू ऐसा कर सकता है, करता है। आमीन। अतः भाई पुराना कैन जो आज फिर बाहर निकल आया है, तू वचन को ही घात करता रहा है। कैन तू तो यही कहता है कि ये बात बकवास है, यह चीज, ये आश्चर्य कर्म धोखा है। आश्चर्य कर्मों के दिन बीत चुके हैं। यीशु मसीह का लहू पुकार रहा है, आज लहू की पुकार जारी है, परंतु उसमें क्षमा देने की क्षमता है यदि आप उसे ग्रहण कर लें। मैं चाहता तो था कि इस बात पर कुछ देर ठहरा रहता और वचन प्रचार करता कि यीशु का लहू उत्तम बातें कहता है। अपनी सुरक्षा के लिए उस पर विश्वास कीजिए, फिर उसी लहू को अपना लीजिए, विश्वास रखिए। इन्हीं कारणों से तो आप विश्वास करना चाहते हैं। आप अपनी सुरक्षा के लिए, जीवन के लिए विश्वास कीजिए, फिर अपने परिवार के उद्धार के लिए इस चिन्ह का उपयोग कीजिए। समझे आप कहेंगे कि मैं ऐसा कैसे करूं? अरे दावा कीजिए, परमेश्वर के सामने चिन्ह सहित प्रार्थना रखिए। यदि आपके को चिन्ह मिल जाता है तो आप और वचन एक हैं। आमीन, आमीन। समझे आप?
देखिए, आपके व आपके परिवार दोनों के लिए ये काम कर जाएगा, क्योंकि आप और वचन एक हैं। इसे बच्चों के लिए, प्रियजनों के लिए प्रयोग में लाइए।
राहब की तरह से जिसने इस चिन्ह को अपने माँ बाप, भाइयों बहनों और सभी प्रियजनों के लिए प्रयोग किया और सभी को अपने घर में सुरक्षित रखा। आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए कहिए कि प्रभु, मैं अपने पुत्र और पुत्रियों को बुलाने जा रहा हूँ कि आपके पास ला सकूं। शैतान, मैं उनको मांगता हूँ, तू उन्हें छोड़ दे। मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ और मैं अपने पवित्र आत्मा के चिन्ह के तले उनको मांग रहा हूँ। हे पवित्र आत्मा, तू जो मुझ में रहता है, मेरी पुत्री को खींच ले जिसे लेने मैं जा रहा हूँ, और तेरी ओर से मैं इसके लिए जा रहा हूँ, तेरा साया मेरे ऊपर है। और वो ऐसा ही कर देगा। आमीन। ठीक ऐसा ही उन्होंने मिस्र में किया था, ठीक ऐसा ही यरूशलेम में किया गया था। अगर आप एक और जगह से पवित्र शास्त्र में पढ़ना चाहें तो देखिए प्रेरितों के काम 16:31। पौलुस ने उस दरोगा से कहा था, विश्वास कर कि मैं इस समय का सुसमाचार दूत हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। ये सच है। अपने परिवार के लिए भी विश्वास कीजिए और उसे चिन्ह के तले ले आइए। अब आपने देख लिया है कि स्वर्ग का परमेश्वर न्याय से पूर्व आश्चर्य कर्म दिखाता है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं?
जी हाँ, मैं और क्या कर सकता हूँ?
उसने कहा, उठ और बपतिस्मा ले। और उसने बाहर ले जाकर उसको बपतिस्मा दिया और कहा कि अब प्रभु यीशु पर विश्वास रख, तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो हमारे परिवार का उद्धार करेगा और घर के लिए चिन्ह का उपयोग करना है। तब जब आप उसे उस चिन्ह को घर के लिए उपयोग करें तो आपको क्या करना है? सभी कूड़ा करकट बाहर निकाल देना है, सभी भद्दे और अशोभनीय वस्त्र, सिगरेट, बीड़ी, दूरदर्शन और ऐसी वैसी सभी चीजें द्वार से बाहर फेंक देनी है। जब आप जाएं उस चिन्ह को परिवार के लिए प्रयोग में लाएं तो खामोश खड़े न रहें। जी हाँ, इन सभी गंदी चीजों को वहाँ से बाहर निकाल दें। सभी नाच, नृत्य, पार्टी कार्यक्रम, पुरानी गंदी पुस्तकें, अखबार और सभी ऐसी दुनियावी चीजों को द्वार से बाहर ठोकर मार कर निकाल दें और कहें, हम परमेश्वर के लिए इस स्थान को शैतान से छीन रहे हैं।
जैसा कि याकूब ने किया था, उसने अपने घर वालों व पत्नी से कहा था कि अपने इन देवी देवताओं को दूर करो और अपने वस्त्र इत्यादि धो।
आमीन।
आप जानते हैं कि यहोशु ने यरदन नदी पार करने से पूर्व क्या कहा था?
उसने कहा था, अपने वस्त्र शुद्ध करो और अपनी स्त्रियों से दूर रहो और तैयार हो जाओ, क्योंकि 3 दिन के भीतर हमें यरदन नदी पार करनी है।
आमीन। वह तैयारी कर रहा था, चिन्ह का प्रयोग कर रहा था। आमीन। यही बात है,
तैयार हो जाओ, चिन्ह लगाओ, विश्वास करो, अपने को पूर्ण शुद्ध करो। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को इस चिन्ह को अपने अंदर दिखाइए। ये ठीक है, इसका प्रभाव होगा, अच्छा होगा। जी हाँ,
तब उस चिन्ह को प्रार्थना के साथ विचारपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाइए और विश्वास कीजिए। इसको इतने अधिक प्रेम के साथ इस्तेमाल कीजिए कि आप जान लें कि आपकी प्रार्थना स्वीकार होकर फलवती होगी। पूरे आत्मविश्वास के साथ इस चिन्ह का प्रयोग ये सोचते हुए कीजिए कि इससे उस व्यक्ति को मदद मिलेगी। जब आप अपने बच्चे, पति, पत्नी या उस प्रियजन से बातचीत करें तो ये विश्वास करते रहिए कि इससे उसे सहायता मिलेगी। अपने में मजबूत खड़े रहकर ये कहिए कि प्रभु, मैं इनको मांग रहा हूँ, ये मेरे हैं और मैं इन्हें आपके लिए, आपके पास लाने के लिए ले रहा हूँ। इस विधि का प्रयोग कीजिए और चारों तरफ ऐसा माहौल तैयार करिए कि वे लोग उस आत्मिक वातावरण में खो जाएं। यदि आपके पास वो चिन्ह होगा तो आपके चारों ओर एक आत्मिक सामर्थी वातावरण बन जाएगा और जब आप चलेंगे फिरेंगे और बातचीत करेंगे तो लोग जान लेंगे कि आप मसीह हैं। वे चाहेंगे कि आप उनसे कुछ न कुछ वचन की बातें करें। वे उन बातों पर जो आप कहेंगे विश्वास करेंगे और उनको मानेंगे। समझे, ऐसा ही है। जिनका प्रयोग कीजिए, उसी के संग चलिए और उसी के द्वारा अपने परिवार के लोगों पर अपना दावा पेश कीजिए। ये शांत का समय है, आपको ऐसा करना ही चाहिए। अब काफी समय से आप वचन सुनते चले आ रहे हैं। ये शांत का समय है, ये चिन्ह लगाने का समय है। आजकल में परमेश्वर का क्रोध आ पड़ेगा तब शायद बहुत देर हो जाए। समझे, आप चिन्ह को पूरे आत्मविश्वास सहित प्रयोग में लाइए। यदि आप वचन में से इसे पढ़ना चाहें तो मैंने यही कहीं लिख रखा है, इसे एफिसियों 2:12 में से पढ़ लीजिए और अगर आप लिखना चाहें तो लिख कर रख लीजिए। एफिसियों 2:12 में इस प्रकार लिखा है, ध्यान दीजिए, हम मरे हुए कामों के नहीं वरन जीवित परमेश्वर की जीवित कामों के सेवक हैं। आमीन। हे प्रभु, जीवित चिन्ह, जीवित काम, आप जीवित चिन्हों के विश्वासी हैं। आप चाहें तो इब्रानियों 9:11-14 भी नोट कर लें। जीवन चिन्ह, जीवंत काम, इनको ही प्रयोग में लाइए। मरी हुई प्रथाएं नहीं, मान्यता नहीं कि मैं अपने बच्चों को गिरजों का सदस्य बनाना चाहता हूँ। यहाँ कुछ अच्छे भले सच्चे मसीही युवक थे जो अच्छे मित्र और अच्छे मसीह हैं। उनमें से एक का जब यहाँ बपतिस्मा हुआ तो उसकी माँ ने कहा था कि मैं चाहती थी कि तुम्हारा बपतिस्मा किसी बड़े भव्य गिरजे में होता। आप समझ गए, लेकिन वो मसीह युवक उन पुरानी मान्यताओं, प्रथाओं व मतों का जरा भी पसंद नहीं करता था। आप समझे, हम मरे हुए कामों व मतों व ईश्वरों की उपासक नहीं है। हम जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिसने अपना लहू हमारे लिए बहाया और वह चिन्ह हमें दिया है ताकि हम भी हमेशा तक उसके संग जीवित रहें। आमीन। जी हाँ, मरी हुई प्रथाओं और मतों को मत मानिए क्योंकि वे तो चिन्ह जैसी बातों का इनकार ही करती हैं। वे कहते हैं कि आचार्य कर्म जब होते थे वे दिन बीत गए और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे जैसी कोई बात अब नहीं होती। इस प्रकार की विचारधारा में क्यों हम शामिल हों? ऐसा कभी मत कीजिए। चिन्ह को अपनाइए, फिर जीवते परमेश्वर की सेवा कीजिए व जीवंत काम, जीवंत चिन्ह प्रकट कीजिए। ऐसे चिन्ह जो मुर्दों को जीवित करते हैं, भविष्यवाणी करते, अन्य भाषाएं बोलते, अनुवाद करते और चंगाई देते हैं। सिद्ध वचन आप में हो, जो जैसा कहे वैसा ही हो जाए। आकाश और पृथ्वी पर आपके द्वारा वो चिन्ह प्रकट हो, आश्चर्य कर्म हो, जिनके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वैसा वैसा होगा। जीवते परमेश्वर की उपासना कीजिए, चिन्ह प्रकट कीजिए। उन मुर्दा गिरजाघरों में जाकर उनके मुर्दा कामों में भागीदार न होइए, क्योंकि वे तो चिन्ह जैसी बातों में ही विश्वास नहीं करते। किंतु हम जो उन बातों पर विश्वास करते हैं, ये जानते हैं कि ये बातें सत्य हैं। आमीन। वे कहते हैं कि चिन्ह या पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। ओह, ये एक मूर्खता है। ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं, दकियानूसी हैं। कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि विश्वासी औरतें कैसे पुरानी चाल के से वस्त्र पहनती हैं और इनके बाल आधुनिक नहीं हैं। ऐसा ही है, पवित्र शास्त्र में ऐसा ही करने को कहा गया है। आपके बालों में फैशन? जी हाँ, पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है। हम में और उनमें ठीक यही अंतर है। परमेश्वर कहता है, छूकर देखकर चक्कर नहीं, विश्वास करो कि है। समझे आप, हमारे लिए परमेश्वर की बातें अर्थपूर्ण है। अब लोग सोचते हैं कि हम सनकी हैं, परंतु हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए ये सत्य बातें हैं और हम उसको जीवित उपस्थिति को हमेशा अनुभव करते रहते हैं कि वह हमारे मध्य में वही काम फिर से कर रहा है जो उसने तब किए थे जब वह स्वयं धरती पर देहधारी हुआ था। आमीन। तो वो कहते हैं कि हमने पिलर ऑफ फायर, आग का सतून वास्तव में नहीं देखा, परंतु वह हमारी कल्पना है। ओ नहीं नहीं, हमने ऐसी कोई कल्पना नहीं की है, मगर उसे वास्तव में देखा है। उन्होंने सोचा था कि पौलुस ने भी कल्पना करी थी। मिस्रवासियों ने भी यही सोचा था कि ये इजरायली लोगों की कल्पना है, परंतु आग का सतून उन्हें प्रतिज्ञा किए देश में ले गया। जी हाँ, इब्रानियों 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अगर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो ऐसा ही है। समझे, ये कोई कल्पना करने की बात नहीं है। जब मैं यहाँ वचन में के संदर्भ लिख कर लाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि पवित्र शास्त्र में वहाँ ऐसा ही लिखा है, तभी तो मैं उस पद को निश्चित रूप से आपको बता पाता हूँ। और हम जानते हैं कि वह जीवित रूप से हमारे मध्य उपस्थित है, क्योंकि पवित्र आत्मा वैसे ही काम अब भी कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा हमें किन्हीं मतों, डिनोमिनेशन आदि की बातें सिखाए तो हम कह सकते हैं कि ये मसीह नहीं है। क्या ये बात ठीक है? अगर मैं आपको कुछ मतों सिद्धांतों की बातें बताऊं तो फिर मैं किसी डिनोमिनेशन के द्वारा भेजा हुआ गिना जाऊंगा। लेकिन मैं आपको कोई मत या डिनोमिनेशन का सिद्धांत आदि नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर का वचन बताता हूं, जो कि जीवित यीशु मसीह की सामर्थ है जो प्रकट करी जा रही है, और यह केवल मेरे लिए ही नहीं वरन उन सभी के लिए है जो इसे सुनते और इस पर विश्वास करते हैं। आप समझ गए? आप मेरे भाई हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटे और मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूँ। हम परमेश्वर में सभी लोग छोटे व्यक्ति हैं, समझे? हम उसकी संतान हैं और अभी भी उसके बारे में उतना नहीं जानते जितना कि हमें जानना चाहिए। जब वो चाहेगा तो और अधिक जानेंगे, परंतु जो पहचान उसने अपने बारे में अभी दे दी है, उन आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, और उसकी आशीषों को जो उसने दी है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आप समझ गए? मेरी इच्छा है कि आप भी उस अनंत परमेश्वर में आ जाएं और पवित्र आत्मा का चिन्ह पाएं। आप में से अनेक लोग ऐसा कर चुके हैं, परंतु जिन्होंने अभी चिन्ह नहीं पाया है वे अवश्य पाएं। मेरी आवाज टेप पर भी और दूसरे स्थानों पर पहुंच रही है, इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जिन्होंने अभी तक चिन्ह नहीं पाया है वे इसे पा लें। मेरा मतलब यहां की कलीसिया से नहीं है। अगर मान लें कि आपको ये मिल गया है तो अभी हजारों लोग बाकी हैं। इन टेपों के द्वारा हजारों लाखों लोग इस सुसमाचार को सुनेंगे। यह एक सेवकाई है। हो सकता है कि यरहो में कोई टेप लेकर वहां पहुंचे और किसी पहले से चुने जन को सुनाए। हम भी इन टेपों के द्वारा ऐसी चुनी आत्माओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध व न्याय आ रहा है। जीवते परमेश्वर की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उसने अपने प्रतिज्ञा किए हुए वचन अनुसार फिर से जीवित कर दिया है। कुछ समय बाद ये दुनिया मुझे फिर न देखेगी, यरहो मिस्र मुझे फिर न देख सकेंगे, मगर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर मैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, समझे? मैं ही चिन्ह हूँ, मेरा जीवित होना ही चिन्ह है। ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम ही जब तुम करोगे तो ये ही मुझे तुम्हारे अंदर प्रमाणित करेंगे। जैसा लूत के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा, जबकि सांझ के समय का सुसमाचार प्रचारा जाएगा, क्योंकि सांझ के समय उजियारा होगा। जो ही सांझ का समय आएगा, उजियारा चमकने लगेगा। ओह, परमेश्वर की महिमा होवे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं दौड़कर खुशी से परेड करने लगूं और दीवारों को फांदता दौड़ता फिरूं। आप समझे? समझ गए आप? सांझ के समय उजियारा होगा। ये बात सच है, भविष्यवक्ता ने ऐसा ही कहा है। मैं तुम्हारे साथ हूंगा, मैं लूथर काल में हूंगा, मैं वेस्ली और पेंतेकोस्तल काल में हूंगा, मगर ठीक सांझ के समय वचन का प्रकाश आएगा। सभी डिनोमिनेशन ठीक है धीमे पड़ जाएंगे और तभी चिन्ह दिया जाएगा, और वे सभी लोग जो पिछले कालों में हृदय से पूरी तरह सच्चे व वचन के प्रति निष्ठावान रहे हैं, हमारे बिना वो सिद्धता तक ना पहुंचेंगे। ये ठीक वैसा ही है कि सिर ने जाकर देह के लिए पांवों को लिया, फिर उसने हाथों को लिया, फिर उसने जाकर दिल को लिया, फिर सिर को जाकर मुंह को लाना पड़ा। समझे आप? सिर को जाकर ये सब देह के अंगों को जमा करना था, और अब हम ऐसे समय में आ पहुंचे हैं जबकि हमें वह चिन्ह द्वार पर और चौखट पर लगाना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब मैं उस लहू के चिन्ह को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा और नाश न करूंगा। अब मैं अति शीघ्र अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, केवल 5 या 10 मिनट और लूंगा बस। परमेश्वर ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उसने यीशु को मुर्दों में से उठाकर खड़ा कर दिया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? वो आज हमारे मध्य में जीवित है और रह रहा है, और उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा। वही मैं जो कि मसीह है, वो यही कहता है कि वह जगत के अंत तक, यानी जब तक जगत समाप्त न हो जाए, हमारे साथ है। उसने वादा किया है कि वह दुनिया के अंत तक हमारे साथ है, और ये कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, ये हमारे निकट मूर्खता नहीं है वरन चिन्ह है, यही टोकन है। हम इस पवित्र लहू की कुर्बानी को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें जीवन मिलता है, चिन्ह मिलता है, जो कि उसकी वाचाओं की मोहर है। इफिसियों 4:30 में कहा गया है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे आप पर छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर दी गई है, वाचा दी गई है, मोहर दी गई है, आपके साथ वाचा बांधी गई है, एक चिन्ह दिया गया है जो कि पवित्र आत्मा है, वही मोहर है और छाप है। जब कोई चीज मोहर लगाकर बंद कर दी गई है तो अच्छा हो कि आप उस मोहर को न तोड़ें। आप इसे तोड़ नहीं सकते, समझे आप? ये परमेश्वर की मोहर है, नहीं श्रीमान। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए, जबकि तुम जीवित हो उठोगे, छाप कर दी गई है। ये चिन्ह है कि बीज को अनंत जीवन के साथ मिला दिया गया है। यीशु ने कहा था, मेरा अपना जीवन यानी जू ZOE मैं तुम्हें देता हूँ, और अंतिम दिन मैं तुम्हें फिर जिला उठाऊंगा। और अब चलते फिरते आपको ये विश्वास रहता है कि मसीह का अपना जीवन आपके अंदर है और आप उसमें हैं। एक ही आत्मा के द्वारा हमने एक देह में बपतिस्मा पाया है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छाप दी गई है और हम उन विश्वासियों में शामिल हैं जिनके लिए यीशु ने कहा था कि वो अंतिम दिन फिर जिला उठाएगा। ओह, आप चिन्ह का प्रयोग कीजिए, हमारे लिए वही सब कुछ है। हमारी आशा है कि यीशु के बलिदान से हमें जीवन मिलता है और ऐसा ही हो रहा है और उससे हमें चिन्ह मिलता है और हम उसका उपयोग करते हैं। वही चिन्ह हमारी मोहर है। इसके साथ ही हम यीशु की उस स्वर्गीय महिमा युक्त देह के संभागी हो जाते हैं। एक ही आत्मा के द्वारा उस महिमा में देह में हमारा बपतिस्मा हुआ है। क्या मैंने जो यीशु की देह के लिए ये शब्द मिथिकल प्रयोग किया है सही है? नहीं, मिस्टिक बॉडी होना चाहिए था। यीशु मसीह की दिव्य महिमा से भरी देह, मिस्टिक बॉडी। देखिए कि अभी पवित्र आत्मा ने मुझे अभी बताया कि मैं कुछ गलत कह गया हूँ। मैं तो एक दुख सरीका हूँ और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं देह के बारे में गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूँ और मैंने मिथिकल कहा है जबकि ये मिस्टिक बॉडी है। यीशु की महिमा में दिव्य देह, हमें शिक्षा की नहीं वरन पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, वो हमें सिखाए। इसके लिए एक वही है जो हमारा मार्गदर्शक है। मेरे द्वारा गलत शब्द का प्रयोग किसी ज्ञानी व्यक्ति के लिए ठोकर या भ्रम का कारण बन सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने अब ठीक कर दिया है। दिव्य महिमा में देह, इसका विशेष अर्थ है, वरना उसने इस तरह मुझे न रोका होता। समझे, वो ठीक यहीं उपस्थित है, वह ठीक यहाँ मंच पर है, वह ठीक यहाँ वहाँ वहाँ उपस्थित है। ये वही है, समझे आप, वही। और उसमें रहते हुए ना मृत्यु है ना कोई दुख है, उसमें कोई थकान नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, हम उसमें जा छिपे हैं। अगर शैतान आपको बीमारी जैसी कोई चीज देना चाहे तो अपना चिन्ह उसे दिखाइए, अपना चिन्ह प्रयोग में लाइए और बताइए कि आप यीशु के लिए मोल खरीद लिए गए हैं। ये चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि मूल्य अदा किया जा चुका है। शैतान कहेगा कि जब तुम मर जाओगे तो नाश हो जाओगे। आप कहिए कि तू गलत कहता है, मैं खरीदी गई चीज हूँ, मेरे पास चिन्ह है। चिन्ह क्या होता है? जिसके पास चिन्ह है वो जानता है कि चिन्ह क्या है, उसको बहकाने की कोशिश बेकार रहेगी। अब आप कुछ प्रचारकों से बात करके देखिए और वे आपसे तर्क वितर्क करने लगेंगे, जबकि शैतान ऐसा नहीं करेगा, वो ज्यादा ठीक समझता है। समझ गए आप? जी हाँ, वो दो या तीन बार आकर आपको आजमाइश में डालने की कोशिश करेगा या गलती करने को उकसाएगा और फिर चिन्ह देखकर आपकी बात बाखूबी समझ लेगा और फिर भाग जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आप पर मोहर दी गई है। शैतान उस मोहर को तोड़कर आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ा सकता जो सही ना हो। आप उससे कह दीजिए कि मुझसे शैतान दूर रहे, मुझ पर छाप दी जा चुकी है। हे प्रभु, आपको खरीदा जा चुका है और आप पर मोहर लगा दी गई है। जी हाँ, परमेश्वर के वायदे में रहते हुए अपने अडिग विश्वास के साथ उस चिन्ह को थामे रहिए और आप शैतान को लौट कर जाता हुआ देखेंगे। एक धार्मिक जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, समझे आप? समझ गए? उस चिन्ह को ग्रहण कीजिए, वो इसी के लिए आपको दिया जाता है, क्योंकि शैतान आजमाइश लाने को तैयार खड़ा है। वो मिस्र में भी उनको आजमाने के लिए मौजूद था। क्यों? आप जानिए कि उस दिन जब रहा वैश्या ने अपने घर पर वो लाल डोरा लटकाया था, तो मैं कल्पना करता हूँ कि रहू के सिपाहियों ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा होगा कि देखो वो सन की बूढ़ी औरत ऊपर से क्या लटका रही है, उसका दिमाग चल गया है, देखो क्या कर रही है। क्या आपने कभी इस तरह से होते देखा है? यहाँ पर डॉक्टर जोन्स ने बताया है कि इस तरह की बातों से कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन उसमें सच्चाई थी, सत्य था, क्योंकि परमेश्वर के एक दूत ने उसे सुसमाचार दिया था और लाल डोरा लटकाने को कहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन मिस्री लोगों ने इजरायली लोगों को देखकर ये कहा होगा, इन होली रोलर्स को देखो, द्वार पर खून लगा रहे हैं। क्या उनके पास सफाई करने का पर्याप्त साधन नहीं है? जो लहू को यहाँ लगा रहे हैं, ओ कितनी बदबू आ रही है, मैं शक लगाता हूँ कि कुछ दिनों में ही भयंकर दुर्गंध फैलने लगेगी। ये जो कर रहे हैं सब अर्थहीन बात है। वे ऐसा क्यों कह रहे थे आप जानते हैं? क्योंकि होली फादर फला फला ने यही कहा था, लेकिन उसका मतलब था लहू लगाना, अर्थहीन नहीं था। उसका मतलब था, वही महत्वपूर्ण था, उसका विशेष मतलब था। हम जो विश्वास है, हमारे लिए इन बातों का मतलब होता है, समझे आप? केवल वचन के प्रति अपने अडिग विश्वास को याद रखिए। अब आप हव्वा नहीं है, और ना ही उनमें से एक हैं जो अविश्वास करते हैं और शैतान के साथ समझौते कर लेते हैं। आप प्रत्येक वचन को अपने अंदर विश्वास सहित संजोए हैं। भगवान ने कहा था कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और शैतान ने कहा था कि परमेश्वर निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे भले लोगों के साथ ऐसा वैसा न करेगा। तो तुम कितनी सुंदर हो, प्यारी हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार नहीं करेगा, तुम ये फल खा लो। जी हाँ, वो ऐसा ही करेगा, उसने कहा है कि वो ऐसा ही करेगा। आप कहेंगे मेरे पिता पादरी थे, मैं स्वयं पादरी हूँ, आप होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस चिन्ह के बिना आप नाश हो जाएंगे। चिन्ह के बिना परमेश्वर का क्रोध आप पर आ पड़ेगा, समझे। उसने कहा है कि वो ऐसा ही करेगा और वो अवश्य सबको नाश करेगा जिनके पास चिन्ह होगा। उसने यही कहा है, बस बस बात खत्म हुई, वो वैसा ही करेगा। आप कहते हैं ओ मैं सोचता हूँ कि वो दिन लग गए जब आश्चर्य कर्म हुआ करते थे। जी हाँ, मगर यीशु ने कहा है कि मैं कल आज और युगानुयुग एक सा हूँ। देखिए कि उसने ऐसा साबित कर दिया है, समझ गए आप। अब हमारे लिए तो ये सत्य है, हम जानते हैं, परंतु वे इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि ये बात सच है। अब उसमें होते हुए हम वचन का एक हिस्सा बन जाते हैं और फिर पवित्र आत्मा का चिन्ह पाते हैं जिसका वादा है कि मैं ही यहोवा हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। अब आज रात बीमारों के लिए प्रार्थना सभा होगी और आप तैयार रहिए, समझ गए। चिन्ह लीजिए और अपने अडिग विश्वास पर जो वचन के प्रति है उसे टांग दीजिए और शैतान भाग जाएगा। अब यही एक चीज है जिससे शैतान को दूर किया जाता है, क्योंकि प्रभु में जब आप हैं तो वो टिक नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि काश मैं कुछ बातों के बारे में गवाही दे सकता जो मैंने पिछले कुछ सप्ताहों में घटित होते देखी है, समझे, समझ गए। ओह, लेकिन मैं किन किन बातों की गवाही दूं? आप जानते हैं कि लूका ने कहा है कि अगर उन सारे कामों का वर्णन जो यीशु ने किए लिखा जाता तो पुस्तकें जो लिखी जाती सारे जगत में भी ना समाती। मैंने अपनी सेवकाई की अवधि में परमेश्वर को जो कुछ करते देखा है उनका जिक्र अगर पुस्तकों में किया जाए तो वो पुस्तकें इस मंच पर नहीं समा पाएंगी। और मैं खुलासा देकर अगर अपनी सेवकाई काल में किए गए उनके कामों को लिखूं, उसके कामों को लिखूं, तो पुस्तकों के खंड बन जाएंगे जो यहाँ ना समा सकेंगे। आप समझ गए। यीशु मसीह ने जितने अधिक काम मेरी सेवकाई में किए हैं उतने उसने अपनी सेवकाई में भी नहीं किए थे। याद रखिए कि ये सफलता मेरी नहीं है वरन उसकी है, उसी की है, महिमा हो, हालेलुया। उसने नासरत से अधिक काम इस शहर जेफरसनविले में किए हैं। उसने उस बुरे शहर में आश्चर्य कर्म किए थे और अब इस दुष्ट शहर में कर रहा है। आमीन, महिमा। उस बुरे शहर में वो अधिक काम नहीं कर पाया था, लेकिन उसने इस शहर में असंख्य काम कर दिखाए हैं। उसने अंत में यहाँ सभी कुछ जो वहाँ नहीं कर पाया था किया है। जितने काम दिखाने ही थे और लोगों को कहीं पर भी बुलाना ही था और किसी भी तरह से उसने लोगों को इस शहर में एकत्रित किया है। इस शहर में अद्भुत कामों को करने की दृष्टि से देखा जाए तो वह अधिक सफल रहा है, इतना कि वो कफरनहूम या नासरत में भी नहीं रहा था। उसने हमारे टैबरनिकल में जितने आश्चर्य कर्म किए हैं उतने अपनी पूरी सेवकाई में भी नहीं किए थे जब वह धरती पर था। ये सच है, उसने ऐसा ही किया है। ओ, अब बाकी दुनिया का क्या होगा। हे प्रभु, कैसा अनुग्रह है कि आपने हमारे मध्य में स्वयं को पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया है। आप हमेशा ये याद रखिए, यह सब काम उसी यीशु मसीह ने किए हैं। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि यह है मैंने किए हैं, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने नहीं किए, मैंने केवल उससे प्रेम किया है और पूरी तरह से स्वयं को उसे समर्पित किया है और वही कहा है जो उससे सुना है। और पवित्र आत्मा दूसरे लोगों के पास गया और उसके कहे वचन पर लोगों ने विश्वास किया और तभी पवित्र आत्मा ने यानी यीशु ने उनके मध्य अद्भुत काम किए हैं। बस यही बात है। अगर हम सब एक साथ अभी उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लें तो जानते हैं कि क्या होगा, पूरे शहर में एक भी बीमार व्यक्ति नहीं मिलेगा। यदि सभी उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लें तो ये सच है कि सारी बीमारियां दुर्बलताएं समाप्त हो जाएंगी। आप समझ गए। उसके प्रतिज्ञा किए वचन के ऊपर अपने अडिग विश्वास के द्वारा उस चिन्ह को थामे रहिए, शैतान भाग जाएगा। अब मैं इसको बंद करना यानी उपदेश समाप्त करने जा रहा हूँ। क्या आपको याद है कि परमेश्वर ने एक बार दुनिया को बादलों में धनुष का चिन्ह दिया था? वह हमेशा उस वाचा के प्रति सच्चा साबित हुआ है क्योंकि वो चिन्ह उसने दिया था। इतने हजारों वर्ष बीतने के बाद भी और पिछले हजारों वर्षों में वह उस चिन्ह को आकाश में दिखाने से एक बार भी नहीं चूका है। क्या ये सच है? क्यों? क्योंकि ये उसी का दिया चिन्ह है और वह अपने चिन्ह को टालता नहीं। उसने दुनिया को चिन्ह दिया था कि वह इसको फिर कभी जल पड़ले से नष्ट न करेगा और तभी से आज तक वह चिन्ह बराबर दिखाया जा रहा है। हवा में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा वो धनुष बनता है। बारिश पड़ती है और सूरज चमकता है तब वह चिन्ह यानी धनुष बादलों में बनता है। सूरज वर्षा के जल को सुखाता है और परमेश्वर उस चिन्ह को प्रकट करता है जिसका अर्थ है कि पृथ्वी जल पड़ने से नाश नहीं करी जाएगी, इतना जल पृथ्वी पर कभी नहीं जमा हो पाएगा कि वो नाश हो जाए। ये उसकी वाचा है, ये उसका चिन्ह है, क्योंकि उसने वाचा बांध कर कहा था कि मैं तुम्हें धनुष का चिन्ह देता हूँ जो मेरी वाचा को स्मरण कराएगा। उसने अपने चिन्ह को सम्मान दिया, उसने नूह के समय में दिए गए चिन्ह को प्रतिष्ठा दी। वही चिन्ह आज आकाश में प्रकट किया जाता है। उसने मिस्र में अपने दिए चिन्ह को पहचाना और उसे सम्मान दिया। उसने अपने दिए चिन्ह को यरो में भी सम्मान दिया, वो आज भी अपने चिन्ह को आदर और सम्मान देता है। उसने हमेशा ही अपने दिए चिन्ह को पहचाना है और जब वो दिखाया जाता है तो उसे आदर सम्मान और मान्यता देता है। पिछले कई हजार वर्षों में उसने इस बात को पसंद किया कि वह अपने चिन्ह को बराबर दिखाए, वह उसे भूला नहीं। उसने अपने चिन्ह को दिखाने में कभी कोई चूक नहीं करी। अब देखिए कि चाहे दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल गई हो, कोई बात नहीं, वो अपना धनुष अपना चिन्ह आज तक इन बादलों में दिखाता चला आ रहा है। देखिए कि वो अपने चिन्ह को सम्मान देता है, इसी तरह से वो आज के लिए दिए गए चिन्ह को भी पहचानता है और उसे सम्मान देता है। कोई बात नहीं कि गिरजों के कार्यकलाप कितने बदल गए हैं, वे कितना इधर या उधर चल रहे हैं, परमेश्वर आज भी अपने चिन्ह केवल चिन्ह को सम्मान और मान्यता देता है। वही हमें बताता है कि वह अपने कहे वचन और जो कुछ उसने करने को कहा है उसको पूरी तरह से वैसे ही करता है, उसमें कभी नहीं चूकता। हम उसे आदर और सम्मान देते हैं और कहे वचन को ग्रहण करते हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ। वह हमसे आशा करता है कि हम शैतान के मतों, सिद्धांतों और डिनोमिनेशन की बातों व अविश्वास के विरुद्ध अपने विश्वास को उसके चिन्ह सहित दिखाएं, ताकि ये कहा जा सके कि हम विश्वास करते हैं कि उसके वायदे सच्चे हैं और वो वही करेगा जो उसने कहा है। ऐसा करके ही हम उसकी वास्तविक कलीसिया बन पाएंगे। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि लोग इन बातों की आधारभूत बातों पर ही नहीं टिक पाते। मेरे इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। इसमें आश्चर्य नहीं कि लोग सच्चाई पर विश्वास न करके कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं और फिर से डिनोमिनेशन बना लेते हैं जिसमें सुसंस्कृत, सुशील, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, दुनियावी बातों में सुलझे हुए लोगों की भीड़ पाई जाती है। वे लोग सच्चाई के आसपास भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे चिन्ह के बजाय यही दिखाते हैं कि मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ। ठीक है, यही तो है वो बस। लेकिन विश्वासी जन चिन्ह ग्रहण करते हैं और यीशु ने जो कुछ गलील में शुरू किया था वह उसी क्रम को आज जारी रखे हुए है और अपने चिन्ह यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वही सब अद्भुत कार्य इस कलीसिया में कर रहा है। उसका आत्मा कलीसिया पर साया किए है, क्योंकि तब वे प्रेरितों के काम नहीं थे, वे तो पवित्र आत्मा के काम थे जो उसने प्रेरितों के द्वारा किए थे और वही एकमात्र चिन्ह था। वहाँ उस समय पतरस और यूहन्ना के बारे में लोगों ने यही कहा था कि हम उनकी ओर ध्यान दें और उनकी बातें सुनें, जबकि उन्होंने सुंदर द्वार पर आश्चर्यकर्म दिखाया था, क्योंकि लोग जानते थे कि वे दोनों पढ़े लिखे मनुष्य नहीं है। लोग उनसे इस तरह के प्रश्न कर सकते थे, ऐसे ऐसे शब्द पूछ सकते थे जिनका उन्हें पता न था, उनसे व्याकरण और भाषा विज्ञान की बातें पूछ सकते थे जिनसे वे दोनों पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। उन दोनों को पवित्र शास्त्र के आंकड़े व हिसाब किताब का कुछ भी पता न था, लेकिन लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया और यही कहा कि वे दोनों यीशु के संग रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने चिन्ह को लोगों को दिखाया था और सलीब पर चढ़ाए जाने से पूर्व जो आत्मा यीशु मसीह में था वही अब यीशु के जी उठने के बाद उनमें था। आमीन। और इस प्रकार से इब्रानियों 13:8 में कहा गया वचन सत्य हुआ है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और इसी प्रकार से हम जान पाते हैं कि वह जीवता है। क्यों? कैसे? हम कैसे पता चला सकते हैं कि हम जीवते हैं? क्योंकि वह जीवता है। और चूंकि हम जानते हैं कि हम जीवते हैं तो हम उसी के स्वरूप में हैं, उसी में हैं। उसने कहा था कि मैं जीवता हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। प्रकाशित वाक्य में वो कहता है, मैं जो मर गया था अब युगानुयुग जीवता हूँ। और अगर हम अपने लिए मर जाएं और उसमें जीवित हो जाएं तो युगानुयुग जीवित रहेंगे। तब जैसा कि स्वाभाविक है हमारे अंदर रहकर उसका जीवन ठीक वैसा ही जीवन प्रकट करता है जो उसमें पाया जाता था जब वो देहधारी हुआ था। और यही बात उसे कल, आज और युगानुयुग एक सा बना देती है। अब अगर लोग उसका इनकार करें तो या इन बातों पर विश्वास न करें तो क्या कर पाएंगे? क्या आप उन लोगों के मरे हुए काम नहीं देख पा रहे हैं? उस अनंत काल नहीं, मेरा मतलब है उस सदा काल की वाचा जिससे मसीह यीशु के लहू का जीवन हमें प्राप्त होता है। उस जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। अब इसे खत्म करने से पहले क्षण भर को एक बार रुककर हम देखेंगे कि उसके अनुग्रह और प्रेम का ये चिन्ह कैसा है जो हमें दिखाया है, जो हमें दिखाना है। अब अगर यह चिन्ह न प्रयोग में लाया जाए, देखिए कि यह चिन्ह है, टोकन है। टोकन या चिन्ह का क्या अर्थ है? टोकन वो चिन्ह है जो यह बताता है कि इसका जो मूल्य था वो चुका दिया गया है, जो मांग थी उसका भुगतान हो चुका है। हमारे उद्धार का मूल्य मृत्यु थी। और मसीह के अलावा उसे कोई दूसरा चुका ही नहीं सकता था। ना तो डिनोमिनेशन, ना पोप, ना कोई संत, किसी की भी आत्मा या मनुष्य आदि के द्वारा ये संभव नहीं था। परंतु मसीह यीशु का आत्मा जो कलीसिया के ऊपर है, वही एक चिन्ह है कि हमारा कर्ज चुका दिया गया है तथा परमेश्वर की जो मांग थी वह पूरी करी जा चुकी है और अब हम और वह एक ही हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में होगे। उसके जी उठने, फिर से जीवित होने के चिन्ह को पाएं और उसे प्रयोग में लाएं, क्योंकि वो हमें न्यायोचित ठहराने के लिए जी उठा, उसने अपने साथ हमें भी जिला उठाया है। और अब हम इस चिन्ह की सहभागिता में मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। जैसे कि इजरायली लोग वहाँ आराम से बैठे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, जबकि बाहर सड़कों पर रोना व चिल्लाना मचा हुआ था। केवल एक बात सुनिश्चित करनी थी कि लहू वहाँ बाहर द्वार पर लगा है। हमें भी ठीक इस समय बस यही चिंता करनी है कि वह चिन्ह दिखाना है। आपको पता है कि मार्ग में मुसीबत है और अनेक तरह का सर्वनाश मिलकर सामने आ रहे हैं और अधिक समय नहीं है जबकि भयंकर कलेश आ जाएगा। इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि चिन्ह आपके पास है जिसे दिखाया जा रहा है और चिन्ह पवित्र आत्मा है, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा हमारा एक ही देह में बपतिस्मा हुआ है और हम उसकी महिमा में सहभागी बनाए गए हैं। हमें हमारे इस स्थान पर ही यह महिमा दी गई है कि हम अपने प्रतिज्ञा किए देश की यात्रा पर चलते चले जाएं। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप चिन्ह पर विश्वास करते हैं? कितने लोग कहना चाहेंगे कि भाई ब्रैनम आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस चिन्ह के तले आ जाऊं? आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। अति महान अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, जब दुनिया पाप में फंसी थी और कोई मदद करने वाला नहीं था, परमेश्वर आपने बड़ी करुणा से प्रतिछाया के रूप में ये बताया कि एक वास्तविक चिन्ह दिया जाएगा जो हमारे गुनाहों को उठा ले जाएगा, उन्हें केवल ढांपेगा नहीं वरन हमारे पापों को दूर कर देगा। और ठीक समय पर यीशु ने आकर अपना लहू हमारे लिए बहाया। उसने हमारे पापों के लिए एक बलिदान चढ़ाया और वही जीवन पवित्र आत्मा के रूप में हमारे पास लौट आया, और प्रभु वही आज का चिन्ह है जो उसके आने के समय तक कलीसिया में प्रकट करना है, लगाना है। और क्योंकि प्रेरित पत्रस ने कहा था कि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों वरन उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिन्हें पिता परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, प्रभु मैं आपकी सहायता, आपके अनुग्रह के द्वारा उन सभी को जो ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर के लिए मांग रहा हूँ कि वे इस चिन्ह को पालें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो आज प्रात यहाँ बैठे इस वचन को सुन रहे हैं और जो इसके टेप को सुनेंगे कि वे आपके लिए जीते जाएं और चिन्ह को पाएं। प्रभु कहीं पर भी अगर पहले से चुना हुआ कोई बीज हो जिसे वचन सुनने के लिए ठहराया गया हो कि वह अंत समय का सुसमाचार सुन सके, होने दीजिए प्रभु कि वे अत्यंत नम्रता दीनता के साथ अपने जीवन रूपी शील्डों को आपकी सलीब के पास ले आएं और आपके अनुग्रह से भरकर आपकी विजय शील्ड बन जाएं, और होने दीजिए कि वे पवित्र आत्मा से भर जाएं, और जब तक इस धरती पर वो रहते हैं मसीह यीशु के जीवित होने के चिन्ह को प्रकट करते रहें। इस प्रार्थना को ग्रहण कर लीजिए प्रभु। प्रभु हो सकता है कि वचन प्रचार करते समय मैंने उचित शब्दों का प्रयोग न किया हो, अगर ऐसा है प्रभु तो मेरी विनती है कि पवित्र आत्मा इन शब्दों को लेकर उस तरह से लोगों तक पहुंचाए जिन शब्दों के द्वारा उन्हें उन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोग इस सुसमाचार को बिना किसी दुर्भावना के समझ सकें और उन्हें ये बात पता चल जाए कि प्रेम सही और ठीक करने वाला होता है, और लोग ये भी जान सकें कि यह इसलिए है कि जिस समय में हम आज हैं वह मसीह के आने के अति निकट पहुंच चुका है, और हम पूरी दुनिया में चेतावनी की लाल बत्तियां चमकती देख पा रहे हैं कि समय द्वार पर है। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि लोग आज पवित्र आत्मा ग्रहण करें। मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें आपको सौंप रहा हूँ, और होने दीजिए कि जैसा आपने कहा था वैसे ही वायदे के अनुसार यह उनके पास चिन्ह बन कर रहे जब तक वे धरा पर रहें। मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होगा क्योंकि यह आपका वायदा है। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब एक मिनट अपने सरों को झुकाए रहिए। मुझे जितना आता है उसी समझ के अनुसार मैंने आपके लिए प्रार्थना करी है। मैंने पूरी निष्ठा, विश्वास व समझ के अनुसार प्रार्थना कर दी है। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि क्या आप समझ रहे हैं, मैं आपके दशमांश, दान आदि के ऊपर गुजारा करता हूँ, यह आपकी सहायता ही है जो मुझे इस कलीसिया में रखे है कि मैं किसी को वचन सुना सकूं। यह आपका प्रेम, आपकी आमीन और आपकी सहभागिता ही है जो परमेश्वर के इस वचन को अन्य प्रांतों में स्थानों पर ले जाती है, जबकि आप दुनिया में दूसरी जगहों पर इस सुसमाचार के विषय में बातें करते हैं। इस मामले में हम मसीह में सहकर्मी हैं, सहभागी हैं, भाई और बहन हैं, और वह हमारा राजा है। और मैं आपको प्रेम करता हूं कि जहां मैं रहूं वहां आप भी हों। मैं देश के दूसरे भागों से यहां आपको मिलने और बातचीत करने आता हूं। रविवार की सुबह आपसे मिलने की बड़ी इच्छा रहती है। मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैंने हमेशा आपसे प्रेम किया है। कभी कभी मुझे बहुत सख्त शब्द कहने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा केवल सुधार के लिए करता हूं। आप समझे, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं और नहीं चाहता कि आप इसके बारे में चूक जाएं। आपको ऐसा कदापि नहीं करना है। आप बड़ी मधुरता व दीनता, नम्रता सहित अपने हृदय की पूरी निष्ठा व गहराई के साथ इस वचन को ग्रहण कीजिए। आप कहिए कि प्रभु यीशु, ठीक अभी इसी समय वह सब जो मुझ में है, जो आपके अनुकूल नहीं है, उसे मुझ में से बाहर निकाल दीजिए। होने दीजिए कि मैं अपना घमंड आदि जो मुझ में भरा है बाहर निकाल सकूं। प्रभु, वो सभी कूड़ा, करकट, कचरा, अविश्वास जो मुझ में है, मैं उसे रद्द करके बाहर ठोकर मार कर फेंक रहा हूं। और होने दीजिए कि परमेश्वर का प्यारा पवित्र आत्मा कबूतर की तरह मेरे हृदय में गहराई तक समा जाए। प्रभु, मैं अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इसके लिए इसी समय आप मुझे सामर्थ और सहायता प्रदान करें। इस प्रार्थना को प्रभु स्वीकार करें। जबकि हम प्रार्थना में हैं, जबकि आप प्रार्थना में झुके हैं, हम अत्यंत धीमे मधुर स्वर में एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे, आई लव हिम। और याद रखिए कि वह प्रेम के द्वारा हमें मिलता है, क्योंकि वह प्रेम है। मैं इस समय अपने हाथ इन वस्त्रों पर रखकर प्रार्थना करूंगा, ताकि आज रात से पहले यह जरूरतमंदों तक पहुंच सके। देखिए कि उसने आपके लिए क्या किया है। उससे प्रेम 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 कीजिए। प्रेम के द्वारा ही संभव है। प्रेम आज्ञाकारी बनाता है। प्रेम एक बंधन में बांधता है। प्रेम ही विवाह तक पहुंचाता है। और ठीक हमारा निशाना वही है, यानी मेमने के विवाह का भोज।
He loves me too.
मैं अपने उद्धारकर्ता की पुकार सुन रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझसे भी प्रेम किया है। बस अपने पूरे हृदय से अनुभव कीजिए। एक मधुर सी वास्तविक कोई चीज आपके भीतर गहराई तक समा रही है, यही पवित्र आत्मा है। मैं अपने हाथ ऊपर उठा रहा हूँ, सभा में भी जिन्होंने कोई पाप किए हैं, हाथ ऊपर मेरी तरह से उठाएं। मैं अपने और आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर मैंने कोई कसूर या पाप किया है, तो मेरे हाथ आपकी ओर उठे हैं प्रभु, जिसका अर्थ है मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार से हाथ उठाने का अर्थ है प्रभु कि मैं उन्हें करना नहीं चाहता था। प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं मर रहा हूँ, मुझे ये दुनिया छोड़कर शारीरिक रीति से ये दुनिया छोड़नी है प्रभु, मुझे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ प्रभु। मेरे हाथ उठे हैं ये प्रार्थना, ये प्रार्थना कि प्रभु मुझे ग्रहण कीजिए और पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझे अपने प्रेम का चिन्ह वह पवित्र आत्मा दीजिए जिसके द्वारा मैं वह जीवन जी सकूं जो मसीह यीशु में था, यानी मधुर निर्मल स्वच्छ जीवन का अधिकारी हो सकूं। और मेरा हृदय दूसरों के लिए बोझ से भर जाए कि मैं दिन रात परिश्रम करके उन्हें जिन्हें मैं आपके पास ला सकता हूं ले आऊं, मैं यरहो में भेजे गए दूतों की तरह से सेवा कर सकूं और प्रत्येक उस जन के पास जाकर उन्हें संदेश सुना सकूं और उन्हें आपके लहू की वाचा के तले ला सकूं, उन्हें मेमने के लहू के साए में ला सकूं ताकि वे आपके चिन्ह को पा सकें। देखिए कि लहू आपको धोकर साफ करता है, पवित्र आत्मा एक चिन्ह है जो ये बताता है कि लहू लगाया जा चुका है, समझे। पवित्र आत्मा इस बात का चिन्ह है कि लहू छिड़का जा चुका है, जब तक लहू ना लगाया जाए पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। परंतु जब लहू को आप अपनाते हैं और उसमें आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा का चिन्ह आपको दिया जाता है जो ये बताता है कि लहू के प्रति आपका विश्वास ग्रहण कर लिया गया है, आपका कर्ज चुका दिया गया है। सारी बातें पूरी कर ली गई हैं और मामला समाप्त कर दिया गया है। अब आप एक मसीह हैं, विश्वासी हैं, मसीह आप में है और आप मसीह में हैं। अब आप अपने दिलों को परमेश्वर के सामने झुकाए रहें। आपके सेवक भाई नेविल अंत में आपसे कुछ कहना चाहते हैं और वही इस सभा को विसर्जित कर देंगे। आज रात बीमारों के लिए चंगाई पाने की प्रार्थना सभा होगी, उसे याद रखिए और जल्दी आइए, उसे 7 बजे शुरू कीजिए और मैं 7:30 बजे यहाँ खड़ा मिलूंगा। क्या ये बात ठीक रहेगी? क्यों भाई नेविल, ये ठीक रहेगा? अब आज रात हम प्रभु भोज लेंगे, आप सभी आइएगा। आज पूरे दोपहर व सांझ तक इस वचन में सुसमाचार के संग रहिए। जो अभी सुना है कभी भी इससे जुदा ना होइए, ये वचन आपसे कभी दूर ना रहे। उसका लहू इस बात का चिन्ह होगा कि आपको उसका अपना जीवन दिया गया है, समझे। उसने कहा था कि जब मैं लहू के चिन्ह को देखूंगा तो तुम्हें छोड़कर आगे गुजर जाऊंगा। कि आप पर वो लहू छिड़का जा चुका है, लहू छिड़का जा चुका है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो चिन्ह नहीं दिया जा सकेगा। आप समझ गए ना? कहिए आमीन। पहले लहू छिड़कना अवश्य है, फिर चिन्ह दिया जाएगा। और चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि उद्धार का लहू आपका छिड़का जा चुका है और पापों का कर्ज चुका दिया गया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। भाई नेविल आइए।